धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ इस प्रातः आराधनालय में आना बहुत अच्छा है। एक अनुग्रहकारी शुभ प्रातः आप सबको हो, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये दिन हम सब के लिए हमारे प्रभु की उपस्थिति में महान होगा। और अब आज प्रातः मुझे एक पाठ मिला, मैं इस पाठ को सीधा सीधा लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मैं सोचता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण है, और ये एक और भीड़ को विचलित होने से रोकने के लिए। आप जानते हैं कि देर तक रुकना पड़ता है और बहुत से खड़े हुए हैं। मैं सीधे सीधे पाठ में जाऊंगा, और अब आज रात्रि मेरे जीवन का मार्गदर्शक विषय पर बोलना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत से जितने भी हो सकते हैं आज रात्रि के समय उपस्थित होंगे। जो कुछ भी हो, यदि आपकी अपनी कलीसिया है, हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप अपनी कलीसिया में हों। वहाँ होना आपका कर्तव्य है, जहाँ आपका कर्तव्य स्थान है, ताकि आपका उजियाला चमके। अब हम आशा बनाए हुए हैं, प्रत्येक बार जब आप वापस आते हैं तो हमारे पास थोड़ा और अधिक स्थान आसपास में होगा, परंतु इसके साथ हमारे पास कठिनाइयां हैं। वो हर कहीं उन ट्रस्टियों के बोर्ड ने निश्चय ही हर स्थान पर खोजा होगा, और वे एक स्थान पर भेजते हैं और उसे हाँ कर देंगे, तब फिर कहीं और भेजते हैं और वे उसे अधिकार से रोक देते हैं, और उसे वापस भेजा और उन्होंने यहाँ उसे हाँ कह दिया और समर्थन किया। ओ, हमारा क्या ही समय रहा है। परंतु आप जानते हैं कि शैतान सदा सही बात के विरोध में लड़ता है। केवल याद रखें, आप सदा इस विषय में ठीक हैं। एंथोनी, जहाँ आप एक बार में थे, मैं वहाँ घूम रहा था, मैं तुम्हारे पिता से मिला और मैंने सभा में देखा, उन्होंने कहा कि तुम वहाँ बैठे थे। तुम्हें और तुम्हारे पिता को यहाँ पाकर हम आनंदित हैं। भाई मिलेनो न्यूयॉर्क से, आशा कर रहा हूँ कि इस बार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मुझे न्यूयॉर्क से बाहर एक और वसंत मिला है, वहाँ बाहर कहीं, यदि प्रभु ने चाहा। और इसलिए हम आप में से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हैं। आपके लिए यहाँ होना अच्छा है। और बीती रात्रि हमारे पास एक महान समय था, या कम से कम मेरे लिए, मुझे था, और यशाया मंदिर में। और इसलिए आप और इस प्रातः हम एक विषय पर बोलना चाहते हैं, या बल्कि शिक्षा, यदि हम कर सकें, जीवित मंदिर को बनाना, जीवित परमेश्वर के निवास का स्थान, जीवित मंदिर बनाना, एक सिद्ध मनुष्य, जीवित परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर, जहां वो निवास करता है। और यदि मैं ये समझता हूं कि उनके पास यहां कुछ अच्छे गाने हैं, मैं उन्हें सुन नहीं सका, और आज रात्रि मैं यहां आने का यत्न करूंगा। मेरी पत्नी ने मुझे भाई एनग्रेन के विषय में बताया, मैं विश्वास करता हूं कि उनका नाम वहां नीचे टेनेसी से है। अब पिछली रात्रि वो यहां थे, मैं उन्हें आज प्रातः नहीं देख पा रहा हूं, परंतु मैं समझता हूं कि वो यही कहीं हैं। यदि हो सका तो आज रात्रि मैं उन्हें गाते हुए सुनना पसंद करूंगा, या तो उसकी महिमा से या प्रभु महान, मैं ये सुनना पसंद करूंगा। आप में से कितने भाई एनग्रेन को सुनना पसंद करेंगे? ओ, मुझे अच्छे गाने पसंद हैं। और मैडा ने कहा था कि एक प्रकार से गहरा स्वर है जो धीमे है और उस उच्च सुख के बीच का है, और मुझे हमारे भाई बैक्स्टर की याद दिलाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे भी गायक हैं, और उसकी महिमा से या प्रभु कितना महान, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने उनको अब ढूंढ लिया है वहां। ठीक है भाई एनग्रेन, आज रात्रि यदि आप चाहेंगे तो, यदि आप रुके, आप रुक रहे हैं या आज रात्रि की सभा के लिए यत्न करेंगे? भाई मैं, ठीक है, मत करिए, मैं आपको बताता हूँ इस विषय में क्या है। यदि हम, मैं किसी के लिए कोई विरोध का कारण नहीं होना चाहता हूँ, परंतु क्यों नहीं, यदि हम सात मोहरों के समय में चाहें, जब हम उन्हें प्रचार करते हैं, यदि अब आ सके तो हम इसे टेप करना चाहेंगे, देखिए, ताकि इसे ले सकें। प्रभु कितना महान, और उस समय उसकी महिमा से, ये वाला भी। ओ, परमेश्वर की सेवा करना कितना अच्छा है। मैं नहीं जानता यदि मैं मसीह नहीं होता तो क्या करता। मसीह होना कितना अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर नीचे कूदूं और अपनी पूरी आवाज के साथ चिल्लाऊं। इस पर सोचिए कि एक मसीही होना, सब कुछ मसीह में स्थिर है। मैं जानता हूं कि हर बार मैं इस व्यक्ति का नाम गलत लेता हूं, या तो ये ST है या TS है या कुछ इसी प्रकार का। सुमनरस, भाई सुमनरस, वो, मैं उनका और उनकी बहुमूल्य पत्नी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइपिंग करने में लगभग 6 माह का समय लगाया है, इस सात कलीसियाई कालों के लिए और अब हमारे पास ये टाइप की हुई है, जांचने के लिए तैयार है और पुस्तक के रूप में आ रही है। सात कलीसियाई काल। बहन सुंदर, आप जहाँ कहीं भी हैं, निश्चय ही आप इसके लिए हमें भुगतान करने देंगी। इसमें बहुत कार्य किया गया है। क्यों? ये इतनी मोटी है, मुझे भली प्रकार से पढ़ने के लिए इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे। इसे केवल टेपों पर से उतार लिया जाता है और इसे पुनः देखा जाता है, फिर से दोहराया जाता है और इसे पुस्तक के रूप में बनाया जाता है। हम इसे तैयार करके और सीधे छापे खाने में यानी प्रेस में भेज देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये एक चीज है जो लोगों के पास अब होनी चाहिए और आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जब कुछ मिनटों पहले मैं यहाँ वापस आया था तो बिली मुझे दिखा रहा था, ये था, अब वो तैयार है कि छपने के लिए जाए। इसलिए बहन आराधनालय आपको इसके लिए भुगतान करेगा। मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ कि आप इसके लिए कुछ नहीं लेंगी, और या हम यदि हमारी पुस्तक आती है और हमें उसका मूल्य रखना पड़ेगा या ऐसे ही कुछ, हम उसका मूल्य रखेंगे जिससे कि जब वो बिके तो आपको कुछ मिले। जो कुछ भी हो, आप बोर्ड से, ट्रस्टी बोर्ड से बात करें या इनमें से जो उसमें है, और वो आपके लिए इस पर ध्यान देंगे। प्रभु आपको सही में आशीष दे। वो छोटा पुराना भाई और बहन किड यहाँ बैठे हुए हैं, 100 से कुछ कम, बस थोड़ी ही कम। मैं उनसे कुछ समय पहले मिला हूँ और वह बोली, शायद हो सकता है भाई बिली, इस बार मैं आपको अंतिम बार देख रही हूँ। बोली, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैंने कहा, ओ, मैं आपको ये कहते हुए नहीं सुनना चाहता, आप तो बूढ़े माता पिता के समान हैं। हम भाई और बहन किड से प्रेम करते हैं, हम में से प्रत्येक करता है, और ये केवल जब मैं उन्हें आराधनालय में अंदर आते देखता हूँ तो इससे मुझे कुछ होता है। और इस प्रकार की बूढ़ी जोड़ी, और थोड़ा सोचिए, मेरे जन्म से पहले ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। हाँ, थोड़ा सोचिए, मेरे जन्म लेने से पहले वे प्रचार कर रहे थे और अब मैं यहाँ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ये सोचने पर हूँ कि छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भाई और बहन किड को भीतर आते हुए देखता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मैं कहता हूँ, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। जी हाँ श्रीमान, उनको देखते हुए वे कैसे कर सकते हैं, वास्तव में वे किस प्रकार से आपको प्रेरित करते हैं, तब फिर से आप मेरी आयु के लगभग ये अनुभव करते हैं और अब भी बाहर जा रहे हैं। इस प्रातः आकर और पुस्तकों के लिए मालूम करें, यदि पुस्तकें लेकर वे उन्हें बेचें, एक चाहते हैं ताकि वे बाहर जाकर और उन्हें बजाने के द्वारा प्राणों को जीत सकें। लगभग 100 वर्ष की आयु में। अब आपके दो पंख कहाँ हैं, जिनके विषय में हम गत रात्रि बात कर रहे थे? हाँ, मैंने इस विषय पर सोचना आरंभ किया, मेरे कहाँ हैं? जब उसने ये कहा उस बीते कल में, आपकी कितनी आयु है बहन के? भाई टोम, आपकी कितनी आयु है? 81 और 82 वर्ष बूढ़े, और अब भी अपने पंखों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। ओयो में कुछ भी गलत होता है कि बहन किड उस विषय में जानती हैं और घर पर टेलीफोन की घंटी बजती है। उस दिन उन्होंने फोन किया, एक छोटा बालक, एक छोटी बालिका, मैं विश्वास करता हूँ वही थी, वो उत्पन्न हुई और उसकी पेट की अथड़ियाँ बाहर थी, मूत्राशय बालिका के पेट से बाहर था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या करें और वे शल्य चिकित्सा करने से डर रहे थे। हमने प्रार्थना की, उन्होंने शल्य चिकित्सा करके अथड़ियां वापस डाल दी और सोचा कि ये जीवित नहीं रह सकेगी, और वो जीवित रही। गुदामे से तय खाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और बहन किड ने फिर टेलीफोन किया, हमने फिर से प्रार्थना की, और अब संडास के लिए सही मार्ग है, और वो यहाँ एक गवाही है और डॉक्टर भी, समझे, ये इसकी गवाही है कि प्रभु यीशु महान सृष्टिकर्ता है। देखिए शैतान ने क्या करने का यत्न किया, बालिका के जीवन को समाप्त कर दे, और तब मैं विश्वास करता हूँ कि वो महिला प्रभु के पास आई, प्रभु के पास वापस आई। बहन किड ने मसीह तक उसकी अगुवाई की, जब उसकी बालिका के लिए महान आश्चर्यकर्म हुआ। बीते कल में मेरे पास कैलिफोर्निया से टेलीफोन आया, एक छोटा सेवक भाई वहाँ है। जब एक वर्ष पहले मैं कैलिफोर्निया में था, मैं उसके साथ था। उसका छोटा पोता हृदय के 3-4 बंद कपाटों के साथ उत्पन्न हुआ, और मैंने उसे इस घटना के विषय में बताया। मैंने कहा, जब परमेश्वर दूसरे उसकी सृष्टि कर सकता है और उसे ठीक कर सकता है, तो वो निश्चय ही तुम्हारे पोते को भी चंगा कर सकता है। केवल लड़के से कहो कि हिम्मत रखे। लगभग 18 वर्ष पहले वो लड़का सभा में था, जब मैं पहले कैलिफोर्निया में था। अब 16 वर्ष पहले की बात है, और मैं कैलिफोर्निया में था, और वो सभा ने उस लड़के को इतना प्रभावित किया जब बालक उत्पन्न हुआ और जब बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, वो नीला था और उन्होंने उसे ऑक्सीजन देने का यत्न किया था और आदि आदि, ऐसा नहीं लगता था कि वो जीवित रह पाएगा। और डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि हृदय के 3 कपाट बंद हैं, बिल्कुल भी खुले नहीं हैं। देखिए, केवल एक ही कपाट कार्य कर रहा था। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा, पिता जल्दी से भाई ब्रैनम को बुला लो, उन्हें ये सारी बात बता दो, केवल मसीह से मांगो, वो इसे कर देगा। ओ प्रभु, यही है वो प्रभाव जो वो देखते हैं। देखिए, जिस विषय पर हमने पिछली रात्रि बोला था, सही समय पर सही बात, हम बातें करते जाएंगे तो कभी भी मूल पाठ पर नहीं पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे? ये ठंडी प्रातः की रात के समान है, ये इतना गाढ़ा है जितना कि ये हो सकता है। आप जानते हैं, एक दूसरे से चिपका हुआ, ऐसी संगति से हम बहुत प्रसन्न हैं। जी हाँ, इसलिए अब आइए हम अपनी बातें बदल करके और अपने पाठ पर चलें। अब आगे बढ़ने में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि आप श्याम पट पर देख सकते हैं या नहीं। हो सकता है यदि मैं से थोड़ी देर में इस तरह से घुमा दूं, क्यों हम ऐसा कर पाएंगे? अब आप में से कुछ लोग क्या कहा, ठीक है हम कर देंगे, जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है हम इसे थोड़ा सा घुमा दें। क्या आप जो पीछे हैं देख सकते हैं? क्या आप, यदि आप देख सकते हैं तो हाथ उठाएं। यदि आप ये श्याम पट देख सकते हैं या उस पर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ठीक है उजियाला श्याम पट पर बढ़ा दें। अब जब तक ये इसे तैयार कर रहे हैं, मैं इस प्रातः देर से आरंभ कर रहा हूँ या नहीं? नहीं, लगभग 15 मिनट पहले, और इसलिए तब हम अपना समय ले सकेंगे। अब क्योंकि हम जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते हैं, जब आप जल्दी में होते हैं तो जो आप कहना चाहते हैं उसे खराब कर देते हैं। अब मैं टेप में सुन रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया और मुझे अपने पर लज्जा आई, वो नहीं जो मैं कह रहा था, परंतु जिस प्रकार से मैं जल्दी जल्दी तेजी से बोल रहा था, और ये केवल एक अधीरतापूर्ण आवाज थी। मैं थोड़ा सा रुकना चाहता था। मैंने उस दिन उस स्थान को देखा जहां वे बड़ा चिड़ियाघर बनाना जा रहे हैं, यहीं लूजविले में, लूजविले के बीच में, और श्री ब्राउन और मैं विश्वास करते हैं कि उन्होंने इसके लिए $10,00,000 चिड़ियाघर के लिए दिए हैं। यदि मेरे पास होते तो मैं इन्हें जानवरों को स्वतंत्र करने के लिए दे देता। मैं किसी भी चीज को इस प्रकार से पिंजड़े में रखने में विश्वास नहीं करता। मैं चिड़ियाघर उन बेचारे बूढ़े जानवरों को देखने जाता हूँ, भालुओं और सिंहों और आदि आदि को चक्कर काटते हैं, जीवन भर की कैद, देखा आपने? आपको बुरा लगता है, जो भी है, इन्हें मनुष्य की बुद्धिमानी ने पकड़ा है जो कि इनसे अधिक चतुर है, देखा? उन्होंने उन्हें पकड़कर कैद में डाल दिया। और मैं शैतान के विषय में सोचता हूँ कि वो ये करता है, वो बहुमूल्य लोगों को लेता है जिन्हें परमेश्वर के महान स्थानों और बाहर घूमना चाहिए और इस प्रकार की बातें, उसे किसी नामधारी गिरजे की कैद में डाल देता है या किसी धार्मिक मत या कुछ और, उसे वहाँ बांध देता है, और ये क्या ही भयानक बात है। और मुझे चिड़ियाघर पसंद नहीं है, परंतु मुझे अपने में उन जानवरों जैसा अनुभव होता है जब पूर्ण रूप से पिंजड़े में कैद होते हैं और स्वतंत्र होने का यत्न करते हैं कि बाहर निकलकर कुछ करें। अब इससे पहले वचन पर आएं, आइए हम वचन के लेखक के समीप चलें, जैसा कि हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाते हैं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज की प्रातः हम बहुमूल्य पुत्र प्रभु येशु के नाम में एकत्र हुए हैं। अवतरित परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे पापों का भुगतान करने आया और मरा, वो धार्मिक, ताकि हम अधर्मी उसकी धार्मिकता से उसमें सिद्ध हो जाएं। प्रभु, हम ये स्वीकार करने के लिए कि हम अयोग्य हैं, आते हैं, हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं है और हम सब एक बड़ी कैद में बंद हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि हम कौन से कोने में खड़े हैं, हम फिर भी कैद में हैं, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर ने अपने असीम अनुग्रह में नीचे आकर हमें स्वतंत्र करने के लिए कारागार के द्वारों को खोल दिया। अब हम कैदी नहीं हैं, हम संसार के चिड़ियाघर में नहीं हैं, परंतु अब हम स्वतंत्र हैं, हम बाहर हैं। ओ, हम उससे कितना प्रेम करते हैं और आराधना करते हैं। उसकी प्रतिज्ञा के बड़े बड़े मैदानों में हम कैसे चल सकते हैं और उसे अपने सन्मुख प्रकट होते हुए देखते हैं और अपनी आँखों के द्वारा उस महान अनंत परमेश्वर को अपने सन्मुख बेपर्दा होते देखते हैं और स्वयं को वास्तविक बनाता है, जैसा उसने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के साथ किया, ये जानते हुए इस आत्मविश्वास के साथ सो गए कि किसी दिन इस जीवन के समाप्त होने के पश्चात हम फिर से वापस आएंगे। और अनंत जीवन में फिर जीवित होंगे, जो कभी भी धूमिल ना होगा। हमारे शरीर बूढ़े ना होंगे और हम कभी नहीं मरेंगे, और हम कभी भूखे नहीं होंगे, और हमें कभी कोई आवश्यकता ना होगी। परंतु हम उसके साथ चलेंगे। हम उसे ये कहते हुए सुनना चाहते हैं, प्रभु के आनंद में प्रवेश करो, जो कि संसार के बनने के पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। पाप के प्रवेश करने से पहले किस प्रकार उसने ये तैयारी की, जैसे आदम और हवा के लिए की गई थी, कि उन्हें कभी भी बीमार ना होना पड़ेगा या दुख उठाना पड़ेगा। और अब उसने ये हमारे लिए तैयार किया है, और वो पहले से जानता था कि हम आ रहे हैं। पाप ने एक बड़ी रुकावट डाली, और अब पाप यीशु के लहू के द्वारा हटा दिया गया है। अब हम प्रतिज्ञा देश के लिए बंधे हुए हैं, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, जो कि अनंत है। पिता, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें आशीषित करें। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ होने के लिए हमें किस प्रकार का होना चाहिए। आज इस विद्यालय में हमारी सहायता करें, ताकि हमारे पास एक महान सामर्थी शिक्षक हमारे साथ हो, वो पवित्र आत्मा, ताकि वे उतर कर आए और स्वयं को अपने वचन के द्वारा प्रकट करे, क्योंकि ये हम उसके नाम और उसकी महिमा में होकर मांगते हैं। आमीन। अब पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ दूसरा पत्रस पहला निकालें। मैं इस वचन का एक भाग पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा पत्रस पहला अध्याय। और अब आप जिनके पास अपनी पेंसिल और कागज हैं, मेरा विश्वास है आज प्रातः मुझे बताया गया कि कभी कभी जब मैं अपना मुख इससे दूर ले जाता हूँ तो इससे टेप की आवाज़ धीमी हो जाती है। सही में मेरे करने का ये अर्थ नहीं होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कभी यदि हमारे पास जाली वाला माइक हो और यहाँ छत से नीचे की ओर लटका हो, तो फिर आप कहीं भी क्यों ना हो, आप ठीक होंगे। वो चारों ओर से बिल्कुल ठीक रहेगा, छत से केवल एक माइक। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ, और यदि सभा के पश्चात, या आप चाहते हैं, आप ये रेखा चित्र यहाँ से उतारना चाहते हैं, तब मैं इसको यहाँ बाहर भी चित्रित करूँगा, और मैं एक बांधने की रस्सी लेकर यहाँ सामने लगाऊंगा। यदि कभी आप इसे उतारना चाहें दोपहर बाद, थोड़ा जल्दी आए, ताकि हम समझ सकें। अब हम सात मोहरों के समीप आ रहे हैं। हमने अभी सात कलीसियाई काल समाप्त किए हैं, और ये संदेश है जिसकी शिक्षा दी जा रही है, जो मनुष्य को अंदर बांधता है, यही छुड़ाने जा रहा है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। और ये उस कलीसियाई काल में होने जा रहा है, वो अनंत कलीसियाई युग मोहरों की समाप्ति पर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सात तुरैया, सात पीड़ाएं, कटोरे और आदि आदि हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इनमें चलेंगे, परंतु हम और अधिक स्थान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि लोग बैठ सकें। और मैंने सोचा ये वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ की मैं आशा कर रहा था। मैंने इस रेखा चित्र बनाने की आशा नहीं की थी, परंतु उस दिन मैं अपने बहुमूल्य मित्र कॉक्स के साथ केंटकी में था। मैं ये सोचकर नीचे गया कि हो सकता है कि अवधि समाप्त होने से पूर्व मुझे शिकार के लिए एक दिन और मिल जाए, और मैं अपने मित्र चार्ली और उसके भाई रॉडनी के साथ जंगल में वहाँ खड़ा था। मैंने गिलहरी देखी तक नहीं। मैं सोचता हूँ मैंने उन सबको डराकर भगा दिया। जब मैं वहाँ जंगलों में चिल्ला रहा होता हूँ, लड़कों और बहन नैली और मार्जी, यही है जो मुझे आता है। और जब मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें रविवार को बताऊंगा जब मैं इस पर आऊंगा, यही है जो मेरे पास है, जो मेरे पास आता है, संदेश पर जो मैं बोलने जा रहा था, और किस प्रकार बाकी सब इससे मिलान खाता चला गया। और ओ, मुझे वहाँ ऊपर जंगलों में विशुद्ध आत्मा में चिल्लाना अच्छा लगता है। इसलिए आइए अब हम पढ़ें पहला पत्रस, या बल्कि दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका एक भाग। शमाउन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया, जिस प्रकार से यहाँ वक्तव्य दिया गया है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रातः का संपूर्ण विषय विश्वास पर आधारित है। देखा, मैं इसे फिर से पढ़ दूँ, ध्यान से सुने। शमाउन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ध्यान दीजिए, वो ये कह रहा है कि मैंने ये विश्वास प्राप्त किया है और मैं उनसे बोल रहा हूँ जिन्होंने हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मेरी इच्छा ये बाहर संसार के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है। देखिए, जो मसीह में हैं, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन है, उसके ईश्वरीय सामर्थ ने हमें सब कुछ दिया जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। अब हम इस पर वास्तविक गहराई से अध्ययन करें, इस प्रातः प्रचार नहीं, हम इस पाठ पर केवल शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वरीय स्वभाव, मैं चौथा पद फिर से पढ़ दूं ताकि आप चूके ना, जिसके द्वारा हमें दिया गया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा उस सड़हार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखिए, संसार, हम उससे छूट गए हैं, वो ये कलीसिया को संबोधित कर रहा है। यही कारण है कि आज प्रातः हम यहाँ इसे ढूंढते हैं। मार्ग क्या है, परमेश्वर की मांगे क्या हैं? यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परंतु चाहता है अधिक से अधिक मसीह के समान होना चाहता है। मसीहो, अब यहाँ पर ये रखा है, मैं एक वृद्ध अनुभवी हूँ। यहाँ भाई और बहन किड को देखें, हो सकता है इस भवन में वे सबसे अधिक वृद्ध हों, परंतु यदि मैं उनसे पूछूं कि आपकी हार्दिक इच्छा क्या है, तो वो परमेश्वर के समीप होने की होगी। जब आप मसीह के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही प्रिय है, आप केवल यही यत्न करते हैं कि उसमें हो जाएं। इस विचार प्रकटीकरण के लिए क्षमा करें, मैंने बहुत समय नहीं बीता अपनी पत्नी को बताया, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, और मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे वैसे ही प्रेम करती हो जैसे किया करती थी? उन्होंने कहा, निश्चय ही मैं करती हूँ। और मैंने कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, जब तक मैं तुम्हें लेकर चाहता हूँ कि अपने अंदर तक खींच लूँ, ताकि हम वास्तव में एक हो जाएं। अब इसे 10 करोड़ से गुणा कर दें, और तब आप पाएंगे कि कैसे जब एक विश्वासी जिसे मसीह से प्रेम हो जाता है, वो उसमें हो जाना चाहता है, क्योंकि वो प्रेम है। और यहाँ वो हमें ये दर्शाने जा रहा है कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। ये मरणहा शरीर, हम कैसे उसके संभागी हो सकते हैं? मैं यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ, कारण ये है कि मैं विश्वास करता हूँ। अधिक समय नहीं हुआ, किसी ने मुझे पूरी तरह से गलत समझा। सेवकों की संस्था से मुझे एक पत्र मिला, उसमें कहा गया कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम आत्मा में पति या पत्नी थे। यदि हम आत्मा में पति या पत्नी नहीं थे, तो हमें अपने संगियों को छोड़ देना चाहिए और दूसरे से विवाह करके जिसके साथ हम आत्मा में पति या पत्नी थे। ओ नहीं, मैंने कहा, मैं इस प्रकार की नास्तिकता का दोषी नहीं हूँ, मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूँ, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, निश्चय ही नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें पति या पत्नी देता है, ये सत्य है, और तब हम एक दूसरे के भागी हो जाते हैं, ये ठीक बात है। और इससे पहले एक मनुष्य विवाह करे, उसे इन बातों पर विचार करना चाहिए, इसका अध्ययन करे। एक दिन एक युवा व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप सोचते हैं कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए भाई बहनम उस अमुक लड़की से? मैंने कहा, तुम उसके विषय में कितना सोचते हो? उसने कहा, मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने कहा, भाई यदि तुम उसके बगैर नहीं रहना चाहते हो, तो अच्छा होगा कि तुम उससे विवाह कर लो, परंतु यदि तुम उसके बिना रह सकते हो, तो अच्छा है कि ना करो। इसलिए यदि आपको ये मार डालने वाला हो, तो अच्छा है आप आगे बढ़कर और विवाह कर लें। मैंने कहा, तो मैं उसे किस बात पर लाना चाह रहा था? कि यदि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, अब इस समय इससे पहले कि आप विवाह करें तो हर चीज अच्छी और बढ़िया है, परंतु जब आप विवाह कर लेते हैं तब जीवन में कठिनाई, परिश्रम और परीक्षाएं आती हैं। ये कि जब आप प्रेम में इतने बढ़ जाते हैं कि आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, जब आप उससे निराश हो जाते हैं और वो आपसे निराश हो जाती है, आप दोनों तब भी एक दूसरे को समझते हैं। मसीह के साथ भी इसी प्रकार से है, समझे? प्रेम में हमें उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब हम उससे किसी चीज की मांग करें और वो हमें ना दे और ये बात हमें जरा सी भी विचलित ना करे, समझे? समझे क्यों? और एक ही मार्ग है जिससे आप ये कर सकते हैं कि आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। तब आप उस कारण को समझेंगे कि उसने आपको क्यों नहीं दिया, उसके दिव्य ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। और यहाँ देखिए, उस सड़ाहट से जो संसार की लालसाओं से हैं, बच निकले, बचकर निकल गए। देखिए, ये किसके लिए है? ये कलीसिया के लिए है। वे जो मसीह में हैं, इन बातों से ऊपर उठ गए हैं। ये नहीं कि उसने स्वयं को ऊंचे पर उठाया, परंतु मसीह ने ऊपर उठाया। मेरे अश्वेत भाई और बहनें इस प्रातः जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा अर्थ इससे कोई हानि पहुँचाना नहीं है, परंतु कुछ समय पहले मैं एक सभा में था। मैं नहीं जानता था कि मैंने आराधनालय में कभी ये बताया हो। मैंने ये बहुत स्थानों में बताया है। एक अश्वेत बहन ने कहा, क्या मैं गवाही दे सकती हूँ? बिल्कुल बहन, कहिए। उसने कहा, मैं ये गवाही परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहती हूँ। उसने कहा, आप जानते हैं मैं वो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए। और उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो मैं होना चाहती हूँ। उसने कहा, एक बात निश्चित है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी, समझे? वो कहीं से आई है, वो लाई गई है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके। हम उस गड्ढे की ओर मुड़कर देख सकते हैं जहाँ से हम निकाले गए हैं। देखिए, जो हम होना चाहते हैं, हम वो नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो हमें होना चाहिए, परंतु एक बात के लिए हम धन्यवादित हैं, हम वो नहीं हैं जो हुआ करते थे। ये ठीक बात है, हम अपने मार्ग पर हैं और संसार की सड़ाहट से छूट गए, संसार की लालसाओं और सराहट से बच निकले हैं। आप उसके ऊपर हैं। अब इस प्रकार के मनुष्य से वो बातें कर रहा है, वो व्यक्ति जो इन बातों से बचकर निकला, देखा, संसार की सड़ाहट। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अब उसने हमें यहाँ बाहरी रूप दिया है कि क्या करना है, जाने कि कैसे करना है। अब जैसा कि मैंने कहा, हम सब इस बात का यत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर के समीप आए। इसी कारण मैंने इस प्रातः इस संदेश को कलीसिया के लिए चुना है, ये जानते हुए कि पिछली रात्रि से लोग यात्रा में हैं। मैंने कहा, यहाँ कितने नगर के बाहर से हैं? लगभग 98% लोग नगर के बाहर से हैं। यहाँ कितने 100 मील से अधिक दूरी से आए हैं? क्यों, ये बढ़ गए? मेरे अनुमान से 80%। यहाँ 500 मील की अधिक दूरी से कितने लोग हैं? और लगभग एक तिहाई लोग 500 मील से अधिक दूरी से आए हैं। इस पर सोचें कि लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, ये लोग केवल दिखने के लिए यहाँ कलीसिया में नहीं आते, वहाँ नहीं है, जैसा कि बाहरी संसार यहाँ चारों ओर इस स्थान में कोई सुंदरता नहीं देखता। ये सब साधारण लोग हैं, निर्धन, साधारण वेशभूषा वाले। यहाँ सरदूतों के समान वाली कोई गायन मंडली नहीं है। पाइप ऑर्गन है, कुछ दाग लगी खिड़कियाँ। आपका कठिन समय था कि आप बेंच पर बैठे और दीवार के चारों ओर लगकर खड़े हुए। वे यहाँ पर ऐसे ही नहीं आते थे, वे अपने भीतरी कारण के लिए आते हैं। कुछ ऐसा है जो सुंदर देखते हैं, जो कि प्राकृतिक आंखें नहीं देखती। ये आत्मिक आंखें होती हैं, जो कि मसीह की सुंदरता को पकड़ पाती हैं। इसी कारण वे आते हैं। अतः इससे पहले कि हमारी सभा आरंभ होती है, मैं कुछ दिनों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करने हेतु जंगल में चला जाता हूँ। और अपनी जेब में लेकर जंगल में जाता हूँ और अपनी पत्नी को बताता हूँ कि इस प्रातः मैं गिलहरी के शिकार पर जा रहा हूँ और मैं पेंसिल और कागज जेब में रखता हूँ। जैसे ही पर्याप्त उजाला होता है कि दिखाई देने लगे, मैं कहीं भी वृक्ष के सहारे बैठ जाता हूँ, हाथों को हवा में उठाकर कहता हूँ, प्रभु मैं आज क्या कर सकता हूँ, आप मुझे अपने बालकों के लिए क्या देंगे। जब मुझे प्रज्वलित होता हुआ सा अनुभव सा होने लगता है, इस प्रकार से कुछ आता है, जब उसकी उपस्थिति समीप होती है, मुझे जैसे कुछ दूर से सुनाई पड़ने लगता है, कुछ इस क्रम में 2 + 2 = 4 और पास 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसकी उपस्थिति अंदर आती है। स्वयं को समर्पित करते जाओ, कुछ क्षणों पश्चात आप स्वयं से अलग हो जाते हैं, तब दर्शन आता है। अमुक अमुक स्थान पर जाओ और अमुक अमुक बातें, समझे? आप अपने मस्तिष्क के मनन से परमेश्वर पर आते हैं, संसार से बाहर, संसार से परे, बाहर जंगल में, अपने आपे में, और ये आना आरंभ होता है। एक एक मैं कोई भी अंक या कुछ भी कहता हूँ, कोई भी चीज आरंभ होती है, धीरे धीरे हल्की हल्की सी आती है, फिर जल्दी जल्दी आती है। आप वहाँ बैठकर अपने हाथ उठाते हैं और कोई शब्द नहीं बोलते, केवल अपने हाथों को हवा में उठाए रहते हैं। पहली बात आप जानते हैं, आपका अपना आपा ले लिया जाता है, तब आप बातों को देखते हैं जो वो आप पर प्रकट करना चाहता है। आने वाली बातें आपको दर्शाता है। कभी कभी ये एक स्थान तक आता है, जब तक ये किसी निश्चित बिंदु पर नहीं आ जाता और तब ये रुकता है, ये दर्शन में नहीं जाता, तब पवित्र वचन एक साथ मिलान में आता है। मैं अपनी पेंसिल पकड़ लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ और उसे लिख लेता हूँ, और मैं घर आकर देखता हूँ और उसका अध्ययन करता हूँ, और कभी कभी मैं इसमें कोई अर्थ या भाव नहीं पाता हूँ। जब मैं इसे देख रहा होता हूँ और तब कुछ क्षण पश्चात ये उभरता है और चित्त को आकर्षित करता है और इससे फिर आगे बढ़ता है, तब मैं इस प्रकार की छोटी नोटबुक लेकर और इसका रेखा चित्रण करता हूँ जितना भी हो सकता है। वो मुझे क्या बताता है? प्रभु, मैंने सोचा मैं आराधनालय में जा रहा हूँ और उन्हें बताता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, अब मेरे पास उनके लिए कुछ है। देखिए, ये इस प्रकार से आता है, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक कि वो मुझे पहले नहीं देता, मैं नहीं दे सकता। इसलिए इन छोटी छोटी रेखाओं पर, जिन पर नीचे की ओर देखते हुए आप मुझे देखते हैं, और ये मैंने पहले आरंभ किया, इसका ये भाग मुझे यहाँ नहीं मिलता जब तक कि मैं एक या दो दिन जंगलों में ना हूँ। अब ये लोग, पत्रस यहाँ ये कह रहा है कि हम कैसे उसके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। अब हम में से प्रत्येक परमेश्वर के कद में बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। अब इन 7 मोहरों के अध्ययन के पश्चात, तब 7वीं मोहर के शब्द देने के समय या खुलने के, ठीक है, हम जानते हैं कि मोहर क्या है, ये सेवकाई का खुलना है, 7 मोहरों का खुलना, और हम इसे सीधे चार्ट पर देखेंगे। ये एक संदेश का खुलना है, कुछ ऐसा जो मोहर बंद था। पिछले रविवार रात्रि मैंने दी की यानी कुंजी पर प्रचार किया। कुंजी विश्वास है, विश्वास कुंजी को पकड़े रहता है, और कुंजी पवित्र वचन है और मसीह द्वार है, समझे? इसलिए विश्वास पवित्र वचन के सिद्धांत को लेता है और परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर की महिमा और भलाई प्रकट करता है, समझे? इसलिए ये विश्वास है जो कुंजी को पकड़ता है, जो मसीह को लोगों के लिए खोलता है, उसे खोलता है और प्रकट करता है। इसलिए आज हम उसी कुंजी को लेने का यत्न कर रहे हैं कि मार्ग को खोलकर एक गुणवान मसीह परमेश्वर के कदमे हो जाएं और जीवित परमेश्वर के रहने के लिए जीवित मंदिर हो जाएं। स्मरण रहे, परमेश्वर स्वयं को 3 प्रकार से दर्शाता है। पहली बार उसने स्वयं को आग के खंभे में प्रकट किया, जो कि पितृत्व कहलाया। तब वही परमेश्वर यीशु मसीह में प्रकट हुआ, जो कि उसने एक शरीर की रचना की, इस शरीर को बनाया। तीसरा, उस शरीर की मृत्यु के द्वारा उसने कलीसिया को पवित्र किया, ताकि वो उसमें रह सके। परमेश्वर हमारे ऊपर था, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हम में है, यही परमेश्वर है। यही कारण है कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहलाया था, न कि 3 परमेश्वर, 3 कार्यस्थल एक परमेश्वर के। उन्होंने केवल नीशियन सभा में सोचा होगा, हमने ये सब कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा, क्या हमने किया होगा? ये ठीक बात है, तीन परमेश्वर नहीं। लोग ये नहीं समझ सके कि कैसे यीशु ने पिता से बातें की और वो और पिता एक हैं। यहीं पर सारी बात है, बिल्कुल अभी खुलासा होता है, निश्चय ही समझे। ये तीन परमेश्वर नहीं है, तीन कार्यस्थल हैं। तीन ये क्या है? परमेश्वर अपनी ही सृष्टि में नम्र होकर झुक गया। परमेश्वर आराधना चाहता है। परमेश्वर शब्द का अर्थ है आराधना की कृति। ये परमेश्वर अपने लोगों को उस अवस्था में लाने का यत्न कर रहा है ताकि उनसे वो ले सके जिसके लिए उसने उनकी सृष्टि की है। उसने आपको कभी भी कुछ और होने के लिए नहीं बनाया सिवाय परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए। यदि आप इससे चूक गए कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हों, तो आप अपने लक्ष्य से चूक गए। और चूकना, पाप शब्द का अर्थ है लक्ष्य से चूकना, लक्ष्य से चूकना। तब यदि मैं किसी लक्ष्य पर गोली दाग रहा हूँ और दागने हेतु 50 गज की दूरी से निशाना साध रहा हूँ और दागता हूँ, मैं अपनी बंदूक लेकर लक्ष्य पर गोली दागता हूँ और मैं 4 या 5 इंच से चूक जाता हूँ, तो क्या हुआ? मेरी बंदूक को सही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ गड़बड़ है। और यदि मैं परमेश्वर में विश्वास करने में चूकता हूँ, यदि मैं मसीही होने के नाते चूकता हूँ, परमेश्वर ने आपको यहाँ मसीही होने के लिए रखा है, यदि आप किसी और तरफ चले जाते हैं तो वापस आकर और एक ताल या व्यवस्थित हो जाइए। और केवल एक बात है जो आपको एक ताल में ला सकती है और वो पवित्र वचन है। पवित्र आत्मा वचन में व्यवस्थित करता है, आपको सीधा वापस फिर से लक्ष्य पर लाता है। ये ठीक बात है। अब हम उसके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 7 में स्तफनुस ने कहा और इसमें भी, आइए हम इसे पढ़ें। अब किस विषय पर बात कर रहा है? हम परमेश्वर के मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। अब स्तफनुस ने कहा ये जीवित परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर बनने जा रहा है। प्रेरितों के काम के 7 अध्याय में स्तफनुस ने कहा, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रेरित 7 में लगभग 44वें पद से आरंभ करके, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? अब मंदिर, बिल्कुल ठीक बात है, एक स्थान है जहां हम विश्राम के लिए जाते हैं, अब ताजगी और आदि आदि पाने के लिए जाते हैं, जैसे नींद से विश्राम पाना या इस प्रकार से। अब इब्रानियों 10 और 5वां पद, पौलुस यहां इसके विषय में उल्लेख करता है। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। अब मंदिर क्या है? एक देह। परमेश्वर देह में निवास कर रहा है। एक समय परमेश्वर पर्वत के शिखर पर उतरकर नीचे आया, तो यहाँ तक कि यदि बैल या गाय भी उस पर्वत को छुए तो उसे मार डाला जाए। परमेश्वर पवित्र है। पिछली संध्या जब उन दूतों ने अपने मुख ढांप रखे थे, पवित्र सारा पवित्र मुखों के साथ, जो कि ये भी नहीं जानते कि पाप का क्या अर्थ होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें अपना मुख ढांपना पड़ता है, नम्रता में अपने पैर ढांपते हैं। अब पवित्र परमेश्वर पाप क्षमा नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी पर्वत को छू नहीं सकता था जहां पर परमेश्वर उपस्थित था। फिर परमेश्वर देह बना और हमारे बीच वासा किया, यीशु मसीह के रूप में उसका पुत्र, उसकी रचना। तब इस पुत्र ने अपना जीवन दे दिया और परमेश्वर की रुधिर कोशिका तोड़ी गई थी ताकि लहू में से जीवन बाहर निकलकर आए हमारे लिए। उस लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए और अब हमारा लहू, हमारा जीवन, जो कि शारीरिक इच्छा के द्वारा आए, हमारे जीवन को संसार में लाए यीशु मसीह का जीवन हमें शुद्ध करता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजने के द्वारा। तब हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। समझे, जानते हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। अब कलीसिया को मसीह का स्थान लेना चाहिए ताकि उसकी सेवकाई को आगे चलाए। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब थोड़े समय बाद और संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम में होऊंगा इस संसार के अंत तक। समझे, यही है उसके कार्य को आगे बढ़ाना। अब परमेश्वर या बाइबल ने यहाँ कहा है कि स्तफनुस ने सुलेमान के मंदिर बनाने के विषय में कहा, और परम प्रधान हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। आमीन, आप इसी स्थान पर हैं, एक देह तूने मेरे लिए तैयार की। परमेश्वर मनुष्य के कद में रह रहा है, स्वयं को उस प्राणी में से परिवर्तित कर रहा है। सिद्ध उपासना, अपना मंदिर होने के नाते परमेश्वर हम में है, परमेश्वर प्रकट हो रहा है। ओ, हम कितने समय तक इस पर रुके रह सकते हैं, जब तक कि आप यहाँ गर्मी से घुटन सी ना अनुभव करने लगे। ध्यान दें कि परमेश्वर ने सदा हर समय स्वयं को मनुष्य में से परिवर्तित किया। मूसा में परमेश्वर था, उसे देखिए, जन्म से ही अगुआ मसीह। जिस समय वो उत्पन्न हुआ, वहाँ बालकों पर अत्याचार हो रहे थे कि उसे ढूंढने का यत्न किया, बिल्कुल यही मसीह के साथ था। और वो उस समय वो बचाया गया था, ऐसे ही मसीह भी बचाया गया था। वो व्यवस्था का देने वाला था, इसी प्रकार मसीह भी। मूसा 40 दिनों के लिए ऊपर गया और आज्ञाएं लेकर नीचे आया, मसीह 40 दिन के लिए जंगल में गया और वापस आया। कहा, तुमने पुराने समय में सुना, तू व्यभिचार न कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। समझे, ये सारी विभिन्न बातें परमेश्वर स्वयं को परिवर्तित कर रहा है। यूसुफ को देखिए, भाइयों के झुंड में एक आत्मिक लड़का जन के रूप में उत्पन्न हुआ। वे सब भले मनुष्य थे, वे सारे पूर्वज, परंतु जब यूसुफ आया तो वो भिन्न था। वो दर्शन देख सकता था, स्वप्न को अर्थ बता सकता था। इसी कारण वो भाइयों के बीच ईर्ष्या का कारण बना, क्योंकि उसी कार्य के कारण जिसको करने के लिए उसे पृथ्वी पर रखा गया, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। समझे, और ये सब क्रूस की ओर संकेत करता है। और देखिए, वो लगभग 30 सिक्कों के लिए बेचा गया अपने ही भाइयों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा मरने के लिए गड्ढे में फेंका गया। उस गड्ढे में से निकाला जाकर फिरौन के दहनी ओर विराजमान हुआ, और कोई व्यक्ति फिरौन के पास नहीं आ सकता था जिसने कि उस समय के संसार पर नियंत्रण किया। कोई भी सिवाय यूसुफ के द्वारा फिरौन के पास नहीं जा सकता था। कोई मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, केवल मसीह के द्वारा। और जब यूसुफ महल छोड़ता था, उसके छोड़ने से पहले वहाँ तुरी फूकी जाती थी और आगे जाने वाले उसके लिए चिल्लाते थे, घुटने झुका लो, यूसुफ आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे थे, आपका कार्य कितना महत्वपूर्ण था। आपको अपने घुटने पर आना ही होता था जब तक यूसुफ वहाँ नहीं पहुँच जाता। और जब इन दिनों किसी एक दिन तुरई बजेगी, प्रत्येक घुटना झुकेगा और हर जुबान मानेगी, जब मसीह हमारा यूसुफ महिमा को छोड़कर आएगा, तब आपके काम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। हर घुटना झुकेगा और उसे स्वीकार करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये ठीक बात है। ओ, हम कैसे उसे दाऊद में देखते हैं, कैसे दाऊद एक असुकृत राजा है, अपने ही सिंहासन से हटाया गया, अपने ही भाइयों, अपने ही पुत्र के द्वारा, जैतून पहाड़ पर बैठकर, जैसा कि वो जैतून की चोटी पर गया और घूमकर यरूशलेम को देखकर रोया, क्योंकि वहाँ उसके लोग थे जिनकी उसने सेवा की थी और उन्हें परमेश्वर के विषय में सिखाया था, और उसके अपने ही लोगों ने उसे छोड़ दिया और उस पर बहुत सी चीजें फेंकी, उस पर थूका और उपहास उड़ाया जब वो पहाड़ पर अस्वीकृत किया हुआ चढ़ रहा था। ओ, 800 वर्षों पश्चात कैसे परमेश्वर का पुत्र ठीक वैसे ही अपने ही लोगों में अस्वीकृत राजा पहाड़ पर बैठा और यरूशलेम के लिए रो रहा है एक अस्वीकृत राजा के समान। ये क्या था? परमेश्वर स्वयं को उन भविष्यद्वक्ताओं में दर्शा रहा था, मसीह को प्रतिबिंबित कर रहा था। तब वहाँ वो आता है जो कि परमेश्वर का सिद्ध है। वो परमेश्वर था हमारे मध्य में, और तभी उस समय से वो स्वयं को अपनी कलीसिया में प्रतिबिंबित कर रहा है क्रूस की उस ओर। इस प्रकार आप देखते हैं कि हम सब उसका निवास स्थान बनने का यत्न कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर का मंदिर। अब यहाँ कुछ लोग हैं, हम यहाँ देखते हैं, उसने कहा पहले हमारे पास विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति या भक्ति और भाईचारे की प्रीति होनी चाहिए। ठीक है, भाईचारे की प्रीति, और तब प्रेम में बढ़ते जाओ। मैं इस सबको फिर से पढ़ दूं ताकि अब आप निश्चित रूप से इसे समझ लें। अब हम पांचवें पद से आरंभ करने जा रहे हैं, और इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति जो कि प्रेम है। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। अब पत्रस यहाँ हमारे लिए एक खाका खींच रहा है कि किस प्रकार वहाँ तक पहुँचे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके पास इस सद्गुण का एक भाग है, समझ, बुद्धि, धीरज और आदि आदि, ये तो मसीह ही भी घोषित नहीं करता। अब हम संडे स्कूल में सीख रहे हैं, और ये सत्य है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भाग है जो कि मसीह होने का झूठा दावा भी नहीं करते, परंतु इससे नहीं होता, ये नहीं चलेगा। ये तो एक काली चिड़िया के समान है जो कि अपने पंखों में मोर का पंख लगाने का यत्न कर रही है, स्वयं को मोर बना रही है, वो स्वयं को कलंकित कर रही है। अच्छा है कि काली ही चिड़िया रहे, समझे। जब वो इन बातों का बगैर मसीह हुए अभ्यास करते हैं, तो वो अपने स्थान से पूर्णतः अलग हैं। ये उस एक प्रकार के अंजीर के पेड़ के समान है जो सेब उत्पन्न करने का यत्न कर रहा हो। देखा, ये नहीं कर सकता, यद्यपि वो वृक्ष है परंतु वो सेब उत्पन्न नहीं कर सकता। ये एक खच्चर के समान है जो ऊन उत्पन्न करने का यत्न कर रहा हो, भेड़ बनने का यत्न कर रहा हो, जबकि वो खच्चर है। आप देखिए, वो ऊन नहीं बना सकता, वो नहीं कर सकता। ऊन तो भेड़ को वरदान है, खच्चर को नहीं। वो भेड़ के समान कार्य करने का यत्न कर रहा है, परंतु वो तो अब भी खच्चर ही है, समझे। इसलिए वो कहता है कि भाई, मैं भेड़ के समान नहीं खा सकता, मैं ये भेड़ के समान कर सकता हूँ। और इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, ऊन उगाने के लिए आपको भेड़ ही होना पड़ेगा। और मैं यहाँ एक मिनट के लिए रुकूं। वो भेड़ ऊन बनाती नहीं है, क्योंकि वो भेड़ है इसलिए उसके पास ऊन है। बहुत सारे लोग ये कहने का यत्न कर रहे हैं कि भाई, मैं अच्छा बनने का यत्न करूंगा, मैं ये करने का यत्न करूंगा। कुछ भी मत बनाइए, नहीं, आप नहीं कर सकते। एक भेड़ से कहा नहीं जाता, उससे आशा नहीं की जाती कि वो ऊन बनाए। उसके पास ऊन होता ही है, और वो इसलिए करती है क्योंकि वो एक भेड़ है। और जब आप मसीही हैं, तो आप केवल आत्मा के फल लाते हैं, आप उनका निर्माण नहीं करते, आप उन्हें बनाने का यत्न नहीं करते, आप अपने आप को वो बनाने का यत्न करते हैं जो आप हैं नहीं। आप केवल वही होते जाते हैं जो आपको होना चाहिए, और तब ये अपने आप ही स्वयं चिंता कर लेता है। क्या आपने लोगों को ये कहते सुना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कलीसिया का एक सदस्य बन गया हूँ, वास्तव में मुझे ये झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ निर्मित करने का यत्न कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। इसलिए यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, इससे अधिक नहीं। एक खच्चर स्वयं अपने लिए ऊन नहीं बना सकता, वो ये नहीं कर सकता। या एक गिद्ध पंडुकी के साथ खाना खाने का यत्न कर रहा है, एक गिद्ध पंडुकी बनने का यत्न कर रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शिकरा बाहर वहाँ ये कहे, तुम जानते हो कि मैं एक पंडुकी हूँ, और अपने में थोड़े से पंख लगाकर कहे, देखो मैं वैसे ही दिखता हूँ। वो अपने आकार से अलग हो जाएगा। एक मनुष्य जो वो होने का दावा करता है जो कि वो नहीं है। देखिए, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते, अब देखिए मुझ में सद्गुण होना चाहिए इसलिए मैं अपने पास सद्गुण रखूंगा, मुझे भक्तिपूर्ण जीना चाहिए इसलिए मैं ये क्यों। आप केवल पंखों को लगाने का यत्न कर रहे हैं, यद्यपि ये आपकी पहुंच में है, परंतु पंखों को आप गलत चिड़िया में नहीं लगा सकते, समझे, ये काम नहीं करेगा। और ये केवल ये दर्शाता है कि वो चिड़िया कितनी ढोंगी है, समझे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शिकरा पंडुकी के दो पंख लगाने का यत्न करके कहे, देखो देखो मैं एक पंडुकी हूँ, समझे? क्यों? जबकि हम सब जानते हैं कि वो शिकरा है। समझे? समझे? बस यही है कि हम ये बता सकते हैं कि वो एक शिकरा है। देखिए, अब ये इसी प्रकार से है कि मसीहत को निर्मित करने का यत्न करना नहीं कर सकते। पहली बात जो आपको करनी है कि आपको नया जन्म लेना होगा, आपको बदलना पड़ेगा। समझे? और जब आप बदल गए तो आप एक नई सृष्टि हो गए। अब आप ठीक हो रहे हैं। समझे? अब आपको पंखों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं ही चिंता कर लेंगे। नया जन्म लेते हैं। जी हाँ श्रीमान, जैसा कि मैंने सदा यही कहा है, आप एक सुअर को लेकर और उसे साफ करके और उसे टैक्स सेलर का सूट पहना दीजिए, या बल्कि टैक्सीडो सूट, और उसे छोड़ दीजिए। वो सीधा कीचड़ के खड्डे में और गंदी कीचड़ में जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि इससे कोई भलाई नहीं होती। वो सुअर है, वो उसका स्वभाव है। कीचड़ में रहना उसका स्वभाव है। आपको उसका स्वभाव बदलना होगा और वो बाकी सबकी वो अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। अब ध्यान दें, आपको नया जन्म होना चाहिए, यही बदला जाना है। यहाँ बदलाव होना ही चाहिए। आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रणम, मैं जानता हूँ कि वो अमुक महिला जो यहाँ है वो कभी गलत कार्य नहीं करती, वो एक भली महिला है, या अमुक अमुक व्यक्ति एक भला मनुष्य है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं करता। आप जानते हैं वो कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाता। इससे कोई मतलब नहीं निकलता। वो एक अच्छा पड़ोसी बन सकता है, परंतु जब तक वो नया जन्म नहीं लेता वो मसीह नहीं है। यीशु ने कहा जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, संत यूहन्ना 3, वो यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब इस देखने का अर्थ है समझना। आप किसी चीज को देखकर कहते हो मैं इसे नहीं देख सकता, आपका अर्थ है आप इसे नहीं समझते। एक मनुष्य नहीं समझ सकता कि लोग क्यों चिल्लाते हैं। एक मनुष्य नहीं समझ सकता कि मनुष्यों की भाषा क्यों बदल जाएगी और वो क्यों अन्य भाषा में बोलेगा। एक स्वाभाविक व्यक्ति नहीं देख सकता कि किस प्रकार परमेश्वर की महिमा मनुष्य की आंखों पर आती है, और वो दर्शन देखेगा और व्यक्ति को विशेष बातें बताएगा, और क्या करें, उन्हें वे बातें बताता है जो घटित होने के लिए निर्धारित है, और निर्धारित बातें घटित होती है, जैसे कि गत रात्रि प्रभु ने यहाँ किया भी है। समझे? समझे? स्वाभाविक मस्तिष्क यही चित्रित करने का यत्न करता है, अच्छा तो उसने ये किया, या वो हंसी हंसी में छलने की कौन सी कला का उपयोग कर रहा है, वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने हेतु कौन सी गुप्त कला का उपयोग कर रहा है। अन्य भाषा में बोलते हुए मनुष्य को देखना, वे कहेंगे और कोई उसका अनुवाद करता है और देह के निश्चित सदस्य को बिल्कुल ठीक बताता है उन्होंने क्या किया है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। समझे? समझे? वे सोचते हैं ये किसी प्रकार का मजाकिया धोखा है, उनके बीच में कुछ पहले से ही तय है। वे नहीं समझ सकते जब तक कि वे नया जन्म प्राप्त न करें। तब जब वो नया जन्म प्राप्त करता है तो वो संगति की पंक्ति में आ जाता है, क्योंकि वो एक नई सृष्टि है। वो पुराना शंका युक्त संदेह चरित्र जो था मर गया, अब वो नई सृष्टि है। इसलिए आप देखते हैं कि उसके पास स्वयं से कुछ मिलाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही मिल जाएगा। वो दोबारा जन्म लेना चाहिए, और जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो बगैर विश्वास के आप दोबारा जन्म नहीं ले सकते। ये ठीक बात है। इसलिए आप यहाँ मेरे श्याम पट पर देखते हैं, मैंने ये बिल्कुल नेव में रखा है। विश्वास इन सब चीजों की नेव है, क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वे जो उसे परिश्रम से ढूंढते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। समझे? उसे चाहिए ही। और जब आप बाइबल के धुनी हो जाते हैं, जब आप वचन के धुनी हो जाते हैं तो ठीक होते हैं, फिर भी पिछड़े रहते हैं जब तक कि आप पहले इसका विश्वास नहीं करते। क्या है अविश्वास? केवल दो तत्व हैं जो मनुष्य जाति का नियंत्रण करते हैं, वो या तो शंका या विश्वास, एक या दूसरा। एक के नियंत्रण में रहते हैं जो आपके जीवन में प्रभुता करता है। केवल उस पर निर्भर रहिए कि आपके पास कितना विश्वास है, कितना ऊपर आप उठ सकते हैं, परंतु पहले विश्वास होना चाहिए। मैं इस नेव पर थोड़ी देर तक रुकना चाहता हूँ। अब विश्वास क्या है? आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब आपके पास विश्वास है तो ये आपके पास ही है, क्योंकि ये विश्वास में प्रकट होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, इब्रानियों 11। देखा, प्रमाण। ये क्या है? किस प्रकार का प्रमाण? एक पवित्र प्रमाण। इसलिए जब आप कहते हैं भाई ब्रणम मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, ठीक है, यदि आप ये विश्वास करते हैं तो फिर उसे अपना चंगा करने वाला स्वीकार कीजिए और झूठ नहीं, परंतु वास्तव में ये विश्वास करना उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए, अब इससे आपको कोई चीज नहीं हटा सकती, ये एक तयशुदा चीज है। अब आप आशा कर सकते हैं, केवल इसे धोखा देते रहिए, उसे धोखा देते रहिए, परंतु जब आपके पास विश्वास है तो आप इसे जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रमाण है, आप इसे पहले ही पा चुके हैं। आप में से कितनों ने आज प्रातः ओरल रॉबर्ट को सुना जब वो आज प्रातः प्रचार कर रहा था? ओरल रॉबर्ट, मैंने उसे कुछ ऐसे ही कहते सुना, यह कुछ एक विश्वास था जो कि छुटकारे का है, छुटकारे के लिए विश्वास की प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा रेडियो को छूकर अपना संपर्क बनाइए, किसी चीज के छूने के द्वारा अपना संपर्क बनाइए। मनुष्य ये कर रहा था ताकि ये लोगों को कुछ दे सके जिससे कि वे अपना हाथ उस पर रख सकें। कुछ ऐसा कि आप कहते हैं अब मुझे मिल गया क्योंकि उसने मुझसे अपना रेडियो छूने को कहा, मुझे मिल गया, समझे, अब ये ठीक बात है। परंतु अब वास्तविक मूल विश्वास को कोई भी चीज छूने की आवश्यकता नहीं। मैं भाई ओरल रॉबर्ट को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, वो एक महान कार्य कर रहे हैं और भक्त मनुष्य है, और मैं वास्तव में ओरल रॉबर्ट्स के लिए विचार करता हूँ। पूरी बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि विश्वास को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, समझे, विश्वास परमेश्वर के वचनों का विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास छूने के द्वारा आता है, नहीं, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से, यही इस पर लंगर डालता है, वहाँ यही है, समझे, और विश्वास जैसा कि कहा गया इसकी कोई दूरी नहीं है, विश्वास अब इस समय विश्वास यही है। अब जैसे यदि कोई उस दिन वो छोटा बालक, वो माँ और बहन किड इस विषय में बात कर रहे थे, वो छोटा बालक बाहर निकले हुए पेट के साथ जिसके गुदा द्वार नहीं था कि खाना बाहर जा सके, अब ये महिला बहन किड और उनको गवाही देते हुए सुन रही थी, उसने विश्वास किया यदि वो इसके स्पर्श में आ सके और उस बालक के लिए प्रार्थना कर सके। अब देखिए, परमेश्वर हमें लोगों को देता है, हम में से कुछ को परमेश्वर के साथ अनुभव हुआ इतने वास्तविक कि जैसे परमेश्वर यहाँ जा रहा है और भाई नेविल से बातचीत कर रहा है या कोई जिसके साथ आप परिचित हों, और हम कभी कभी उन लोगों से अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, यही वो है जो हमें करना चाहा। तब यदि हमारे पास विश्वास है कि वो मनुष्य या महिला जो कोई भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, तब हमारा विश्वास की पकड़ हो जाती है और वो जकड़ जाता है, वो तय हो गया। यहाँ एक रोमी यीशु से मिलने गया और उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, मैं नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ और मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, परंतु कहा मेरा पुत्र बहुत बीमार है और तू केवल वचन कह दे, देखिए, और मेरा पुत्र जीवित रहेगा। ये क्या है, दूरी से कोई अभिप्राय नहीं है, समझे, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हर कहीं परमेश्वर है, सर्व सामर्थी वो वहाँ है, और परमेश्वर सर्वव्यापी होने के कारण ये परमेश्वर को हर कहीं उपस्थित हुआ बना देता है, समझे, परमेश्वर जर्मनी में उतना ही महान है उतना ही स्विट्जरलैंड में है और नीचे अफ्रीका में इस क्षण जैसा वो इस समय यहाँ है। ओ आप यही स्थिति में है, इसलिए अब उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, केवल वचन कह दे। ये क्या था, ये एक रोमी का विश्वास था, उसने इसका विश्वास किया और यीशु ने कहा अपने मार्ग पर जा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने दो दिन की यात्रा आरंभ की और अगले दिन घर पहुँचने से पहले वो अपने कुछ किसी दासों से जो आ रहे थे मिला और उन्होंने कहा तेरा पुत्र जीवित है, और वो रोमी रोमांचित हो गया जब तक उसने ये नहीं कहा कि दिन के किस समय वो चंगा होने लगा, दिन के किस समय, उसने कहा लगभग 11 घंटे में वो ठीक होना आरंभ हो गया था, और रोमी जान गया कि वो वही समय था जब यीशु ने कहा तेरा पुत्र जीवता है, और उसने विश्वास किया था। आमीन। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंत ये परमेश्वर है। इसलिए जब वे फोन करते हैं और कहते हैं प्रार्थना, और ये संपर्क और आपका विश्वास परमेश्वर को ले आता है। ये वो बात है जो प्रार्थना और परमेश्वर को एक साथ दृश्य पर लाती है। प्रार्थना विश्वास यहाँ से बदलता है, वो एक साथ ले आता है। वचन बोल, केवल मैं जो चाहता हूँ कि तू करे कि वचन कहे और सब बातें ठीक हैं। देखा, उसे वहाँ होना अवश्य नहीं, केवल वचन कहे। क्यों? परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पृथ्वी पर भी उतना ही शक्तिमान है जितना वो पृथ्वी के ऊपर या दोनों ओर कहीं भी। वो परमेश्वर है, और आपको जो करना है वो ये है, केवल वचन बोल दें, उसने कहा। और अब विश्वास बाकी सब कर देता है, बाकी विश्वास करता है। इसलिए नेव के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए। सारी मसीहत, आप वो सब जो हैं, वो सब जो आप होंगे, वो वचन में जो विश्वास होता है उस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मैं वचन में विश्वास करता हूँ, समझे। मैं किसी और चीज पर अपना विश्वास नहीं रख सकता। यदि मैं गिरजे पर करूँ तो कौन से गिरजे पर, या कलीसिया पर करूँ, कैथोलिक, लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, मैं कहाँ पर अपना विश्वास रखूँ, मैं नहीं जानता। वे सब संदेहपूर्ण हैं और आदि आदि, वे पंक्तियों को घुमाते और सब कुछ करते हैं। परंतु जब मैं अपना विश्वास उसके वचन पर करता हूँ तो ये दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। इसका कोई अनुवाद नहीं करता, यहोवा यूं कहता है, ये यहाँ है। तब मैं ये विश्वास करता हूँ कि आधार यहाँ है, एक अच्छा छोटा डॉक्टर यहाँ इस नगर में, मेरा मित्र डॉक्टर सैम अदेर। जब हम एक साथ लड़के थे, आप सब सैम को जानते हैं, और उसने मुझसे कहा, उसने कहा बिल, उस दर्शन के आने के पश्चात उसे बताया है कि वो अपना घर कहाँ बनाएगा, वो किस प्रकार दिखाई देगा। अब वहाँ जाकर कभी उससे पूछें यदि ये सत्य नहीं है तो। 2 या 3 वर्ष पहले ये घटित हुआ। उसे बताया कि ये कहाँ होगा, मैंने कहा तुम लगभग उस नगर के इमारत को लोगे, और वहाँ नहीं परंतु एक बात उसके और इसके बीच है, और वो उस स्थान को फिर उसे उसी अवस्था में लाना। बाकी सब डॉक्टर अदेर को मिला और दवा विक्रेता, बस ये सब। डॉक्टर अदेर ने वो दर्शन ठीक वैसे ही पूरा किया जहाँ वो स्थान है जो उन्होंने कहा। वो स्थान पिछले 25 वर्षों तक कदाचित स्पर्श भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका मामला न्यायालय में था। मैंने कहा डॉक्टर प्रभु ये तुम्हें देता है आपकी नम्रता के कारण। उन्होंने कहा मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैंने कहा तुम कछुआ हो, तुम्हारे चारों ओर कवच है, एक छिलका कि तुम अपने मित्रों को यहाँ इसमें से देखोगे, परंतु अंदर की ओर से तुम एक वास्तविक व्यक्ति हो। उस कवच में से बाहर निकलो। मैंने कहा परमेश्वर ये तुम्हें देता है। उसने कहा बिली मैंने तुम्हारे ऊपर कभी संदेह नहीं किया, परंतु मुझे इस पर संदेह करना पड़ेगा। मैंने कहा अपने कार्यस्थल पर जाओ, और वो इस प्रकार चला गया। अगली प्रातः उसने मुझे टेलीफोन पर बुलाया और कहा कि मैं सुन हो रहा हूँ कि मर जाऊँ। मैंने कहा क्या बात है, ये लगभग जुलाई थी। मैंने कहा डॉक्टर मामला क्या है। कहा बिली मैं वो स्थान खरीद चुका हूँ, पिछली रात्रि बोस्टन में उनकी एक सभा थी, और इस प्रातः वो स्थान खरीद चुका हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था, उस दिन मैं वहाँ उससे बातें कर रहा था जब बंदूक मेरे मुंह के सामने चल गई थी। उसने कहा मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ये जो यहाँ आते हैं हजारों लोगों को बता चुका हूँ। इस तरह से ये क्या है, अब जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो उसे घटित होना ही है। पीती सांझ को कुछ मित्र लोग अंदर आए, उन्होंने सुना था कि वो दर्शन जो 12 सिंगे के विषय में बताया गया था, जिसके 42 इंच लंबे सिंग थे और चांदी की सी नाक वाला भालू। मैं नहीं जानता कि कितने लोग घर आए और उसे देखना चाहते थे। मैंने कहा यहाँ फीता है, नापें, सींग पर लगाएं। इससे पहले ये घटित हो उसने सुना था, समझे। क्यों? जब परमेश्वर कुछ भी कहता है तो उसे घटित होना ही है। यही कारण है कि यही आधार है। अब ये उद्धार की योजना है। अब यदि उसका दर्शन सिद्ध रूप से घटित हुआ, बिल्कुल जिस प्रकार से वे कहते हैं वे करते हैं, और यहाँ यह कलीसिया जानती है कि ये ठीक है, तो फिर उसके वचन के विषय में क्या है, समझे। ये दर्शन से भी अधिक निश्चित है। यदि दर्शन वचन के साथ मेल नहीं खाता तो फिर दर्शन गलत है। परंतु पहले ये वचन है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, समझे। इसलिए वो सर्वव्यापी है, वो यहाँ बोलता है और कनाडा में इसे घटित करता है। आमीन। देखिए वो सर्वव्यापी है, ठीक है। पहले आपको दोबारा जन्म प्राप्त करना चाहिए, और जब आप दोबारा जन्म प्राप्त करते हैं आपके पास विश्वास होता है, आप वचन पर विश्वास करते हैं। जब तक आप नया जन्म प्राप्त नहीं करेंगे आप इसके विरोध में विवाद करेंगे। यदि आप केवल धार्मिक सुझाव वाले हैं और आपके पास थोड़ा मानव ज्ञान है कि आपको सही करना चाहिए, आप कभी भी परमेश्वर के वचन पर सहमत होने योग्य नहीं है। आप ये कभी नहीं करेंगे। आपको नया जन्म प्राप्त करना होगा और नया जन्म प्राप्त करना ये विश्वास को उत्पन्न करता है। ठीक है, तब जब आप विश्वास प्राप्त करते हैं, ये ठीक यहाँ है, FAITH विश्वास, तब आप केवल बढ़ने की स्थिति में होते हैं। अब बहुत से लोग वेदी या ऑल्टर पर जाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, और पवित्रताई का एक महान अनुभव उनके ऊपर आता है और चीजें, तब आपके पास एक महान समय है कि वेदी पर जाएं, चिल्लाएं, आप वापस जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे मिल गया। नहीं, आप तो केवल उस स्थान के लिए आरंभ हुए जहां से आप बढ़ सकते हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, समझे। आपने जो केवल किया है वो नींव रखी है। अब आप एक घर बनाने जा रहे हैं और आपने नींव रखी है और कहते हैं, लड़के मैंने उसे पा लिया, समझे। आपके पास नींव है जिस पर आप अपना घर बनाते हैं। अब आपको घर बनाना है। अब यहीं से जहां से ये चीजें आती हैं, इस प्रातः अब हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक घर, ये नींव पहले मसीहत की नींव क्या है? परमेश्वर के वचन में विश्वास करना, ये आपकी नींव है। तब आप बढ़ना आरंभ करते हैं, तब आप आरंभ करते हैं, आप इस नींव पर बढ़ना आरंभ करते हैं। अब एक घर को बनाते हुए आप अपने खंभे तथा अन्य सभी कुछ रखते चले जाते हैं। भाई वुड्स और इनमें से कुछ बड़ाई और ठेकेदार यहाँ हमें बता सकते हैं कि आप अपना घर कैसे बनाएं, समझे। परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मिक घर कैसे बनाएं जहाँ परमेश्वर रह सके। में रहना चाहता है, वो आपको अपने समान बनाना चाहता है, वो आपको परावर्तित बनाना चाहता है, यानी कि स्वयं का जीवन प्रतिबिंबित। पुराने समय में आप जानते हैं, इससे पहले कि वे कच्ची धातु गलाकर जलाएं, वे सोना बनाया करते थे, वे सोने को पीटा करते थे, गंध को पीट कर बाहर करते थे, लोहा और तांबा और चीजें बाहर करते थे, और केवल उसे पीटते जाते थे और पलट कर और फिर पीटते थे। अब इंडियंस ऐसा करते हैं, सोने को पीटना, और वे इसे पीटते हैं। आप जानते हैं वे कैसे बता सकते थे कि सारा लोहा इसमें से बाहर निकल गया है और सारी गंध और चीजें, सारी तलछट इससे बाहर हो गई हैं? जब वो पीटने वाला अपना स्वयं का प्रतिबिंब उसमें देख सकता था, उसमें दर्पण के समान, वो काफी साफ और सुथरा हो जाता है जब तक पीटने वाले को प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर करता है, वो सोने को लेता है जिसे उसने मिट्टी में पाया और वो उसे पवित्र आत्मा के द्वारा पीटता और उसे घुमाता है और पलटता है और पलटता है और उसे तब तक पीटता है, वो ग्रहण करता है जब तक वो अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं देख लेता। और यही हमें भी करना चाहिए, परमेश्वर के पुत्र को प्रतिबिंबित करें और अब हमें उसके कार्य करने चाहिए। उसने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना 14:7, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। आप मसीह के कार्यों को प्रतिबिंबित करना आरंभ करते हैं, परंतु हम में से बहुत से मसीह के कार्य करने का यत्न करते हैं इससे पहले कि मसीह का प्रतिबिंब हम में हो। अब परेशानी यही है, हम उन बातों को घटित होते हुए पाते हैं। आप ये जानते हैं, मैं ये जानता हूँ, हम मार्ग में इन ठोकरों को देखते हैं, हम मसीही सेवकों के कबाड़ का ढेर देखते हैं, सड़क के किनारे पड़े हुए ढेर, क्योंकि वे इसमें ठीक नहीं चले। और इसी कारण इस प्रातः मैं यहाँ हूँ, इस कलीसिया को और स्वयं को सिखाने का यत्न कर रहा हूँ कि कैसे हम जीवते परमेश्वर के निवास का स्थान हो सकते हैं। कितने इस प्रकार होना चाहते हैं, जीवते परमेश्वर का निवास स्थान। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहली बात क्या है, विश्वास कीजिए और दोबारा जन्म लें, ये नींव रखना है। तब नींव को रखने के पश्चात हम दूसरा, आप अपनी नींव पर बढ़ाते हैं, अपने विश्वास में बढ़ाते हैं। यहाँ पतरस ने कहा, पहले विश्वास कीजिए, अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाओ, ये अगला खंभा है। पहले अपनी नींव रखो, विश्वास, फिर अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाओ। अब यहाँ हम में से बहुत से लड़खड़ा जाते हैं, जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाइए। इसका केवल यही अर्थ नहीं है कि पवित्र जीवन जिए। आप जानते हैं कि जैसे एक महिला या एक पुरुष और आदि आदि, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बाइबल ने कहा, हम यहाँ लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं जहाँ ये कहा गया है, उसमें से सामर्थ निकली। क्या यह ठीक है ना? यदि हम उसके समान होने जा रहे हैं तो हम में सद्गुण होना ही चाहिए, हमें उसके समान होना ही चाहिए। ये गीतों में पहला गीत है जिसको मैंने कभी पसंद किया, उनमें से एक महान था, यीशु के समान। ठीक है, यदि मैं यीशु के समान होने जा रहा हूँ तो मेरे पास सद्गुण होना ही चाहिए और प्रकट होना चाहिए। ये मुझ में से निकलकर लोगों में जा सकता है, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर लोगों में गई, सामर्थ सद्गुण। और इससे पहले आप इसे प्रकट करें, आपके पास ये पहले होनी चाहिए। आपके पास नहीं है तो ये प्रकट भी नहीं होगी। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर आया। क्या हो यदि कोई हम में से सामर्थ निकालना चाहे और चेक वापस आ जाएगा, पर्याप्त पैसा नहीं है, समझे? नहीं, जहाँ से चेक वापस आ जाता हो वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। कोई आपकी ओर मसीह होने के नाते देख रहा है और कल वो आपको वहाँ एक पापी के समान देखे, उसमें से बहुत सामर्थ नहीं निकाली जा सकती, समझे? ये ठीक है, हम में सामर्थ होनी ही चाहिए, और जब तक हम में सामर्थ नहीं है, तब जब हम में सामर्थ मिलती है हम इसे अपने विश्वास में जोड़ सकते हैं। ये अगली नेव की दीवार है। अब पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए, अकेला विश्वास काम नहीं करेगा, आपके पास है। पत्रस ने कहा तब सामर्थ को अपने विश्वास में जोड़ें। अपने विश्वास में जोड़ने के लिए आपके पास सामर्थ यानी सद्गुण होना चाहिए। अब ये कारण भी हो सकता है कि आपके पास ये नहीं है, क्योंकि आज बहुत सी कलीसियाएं सिखाती हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है या इसके दिन बीत गए। अब उनके पास इसका होना अवश्य नहीं है। आपको केवल एक कार्य करना है कि कलीसिया के सदस्य बन जाएं। जी हाँ, वे दिन बीत गए। सद्गुण, कोई भी जानता है इसका क्या अर्थ होता है, देखा? और हमारे पास ये होना चाहिए। यदि उस स्त्री को चंगा करने के लिए जो बीमार थी उसमें से सामर्थ निकली, तो वो यही आशा अपनी कलीसिया से भी करता है, क्योंकि वो हमारा आदर्श है। और यदि उसके पास सद्गुण था कि लोगों को दे, तो वो हमसे भी आशा करता है कि सद्गुण रखें कि लोगों को दें। और सद्गुण क्या है? सद्गुण सामर्थ, शक्ति है। कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ में भी विश्वास नहीं करते, वे कहते हैं वो तो लागू हो चुकी। आपको केवल एक कार्य करना है, केवल अपना नाम रजिस्टर में चढ़वा लें और छींटे पड़वा लें, या पानी डलवा लें, या डूब लें, या जो कुछ भी हो, बस यही है जो करना है। परंतु यहाँ पत्रस कहता है सद्गुण बढ़ाएं। अब पत्रस परमेश्वर के भवन को बनाने की बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर का भवन एक स्थान पर निर्धारित कर रहा है, आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास सद्गुण हो जाता है, जब आपके पास विश्वास हो जाता है, तो इसके साथ आपके पास सद्गुण होना ही चाहिए। ये ठीक बात है, पूरे संसार के लिए सद्गुण रखिए। मैंने लगभग 20 वर्ष पहले एक वचन प्रचारा था, मेरा अनुमान है वो आदरणीय श्री लिली पर, लिली पास्टर, वहाँ से इसका मूल पाठ लिया था, जहाँ यीशु ने कहा तोसन के फूलों पर ध्यान करो कि कैसे वे ना तो परिश्रम करते या काटते हैं, तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने अपनी सारी महिमा में उनमें से एक के समान भी ना पहना। लिली यानी कुमुदनी के फूलों को देखो, ये बिल्कुल नीचे कीचड़ में से उगते हैं और दिन के हर मिनट उसे पृथ्वी में से निकलना होता है, समझे? और वो इस सद्गुण से क्या करता है? जो वो खींचता है वो देता है, प्रशंसा करने वालों के लिए एक सुंदर दृश्य बनाता है, वो अपने आप को शहद के लिए खोलता है, शहद की मक्खियों के लिए कि आकर उसका भाग ले लें। वो शिकायत नहीं करता, उसके पास है कि दे दे। क्या हो यदि वो शहद की मक्खी आए और उसमें अपर्याप्त भंडार हो, शहद ना हो? ये छोटी मक्खी सर खुजलाकर कहती है ये किस प्रकार की कुमुदनी है। यदि एक मनुष्य इसलिए आए कि गिरजे या कलीसिया जाकर उद्धार पाने का यत्न करे, वे ये विश्वास करें कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, जैसा कि एक बार जैक को ने कहा, एक होटल में जाकर एक बड़ी सूची खान पान की ली, पढ़ते हुए नीचे की ओर चला, हड्डियों के खाद्य पदार्थ और चीजें, कहता है मैं हड्डियों का खाद्य पदार्थ लूंगा। ठीक है, वो तो बीते हुए दिनों के लिए था, हमारे पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि खान पान की सूची नीचे रखकर बाहर चला जाए। देखिए, ये ठीक बात है, क्योंकि जो भी है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ होटल में कुछ खाने को हो। और बढ़ता हुआ आत्मिक मनुष्य को खाने की आवश्यकता होती है, वो परमेश्वर का वचन है। मैं विश्वास करता हूँ इसका हर वचन। जहाँ पर परमेश्वर के संतों को खाना खिलाया जाता है, परमेश्वर वहाँ मेज बिछाता है, वो अपने चुने हुए लोगों को निमंत्रण देता है, आओ और खाओ। वो अपने मन्ना से खिलाता है, वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। ओ यीशु के साथ सारे समय ये खाने में मीठा है। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। उसके पास है, कलीसिया के पास ये है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो कि मसीह के ज्ञान सिद्ध मनुष्य पर बनी है। अब आपके पास सद्गुण होना चाहिए। तब मैंने कहा, पहली बात जो आप जानते हैं कि कोई जो सुगंध को सूंघना पसंद करता है वो स्वार्थी नहीं है, उसके पास गंध है। इससे पहले कि वो आपको गंध दे उसके पास होनी चाहिए। इससे पहले कि वो आपको शहद दे उसके पास होना ही चाहिए। इससे पहले कि सुंदरता दर्शाए उसके पास होनी चाहिए। इससे पहले कि आप सद्गुण दे आपके पास होना चाहिए। इसलिए अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाते जाओ। आमीन। आया समझ में? इस पर हम लंबे समय तक रुक सकते हैं, परंतु हमारा समय हमसे ही समाप्त हो जाएगा। सद्गुण को अपने विश्वास पर बढ़ाते जाओ। आप पहले विश्वास, फिर सद्गुण, और अब तीसरा आप समझ बढ़ाते हैं। अब इसका अर्थ सांसारिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है, परंतु समझ परख लेने के लिए, निर्णय किसका, गलत से सही का। आप इसका निर्णय कैसे लेते हैं? यदि आपके पास मसीही समझ है, अपने सद्गुण और विश्वास से आप निर्णय लेते हैं कि ये वचन सही है या नहीं। यदि आप अपने सारे धार्मिक मत एक ओर रख सकते हैं और अपना सारा अविश्वास, सारी बातों को जिनको आपने करने का दावा किया है, तब आपके पास समझ है कि विश्वास करें, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा सच्चा ठहरे। समझे? अब आप समझ प्राप्त कर रहे हैं, ये सर्वोच्च समझ है। आपको कॉलेज में 4 डिग्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है या ऐसे ही कुछ की आप करें, क्योंकि ये सारे सद्गुण आपको परमेश्वर के द्वारा मिलते हैं कि आपकी विश्वास की नींव पर रखे जाएं, ताकि आप परमेश्वर के वास्तविक जीवित मनुष्य के कद तक आ जाएं। जी हाँ श्रीमान, समझ बढ़ाएं, क्योंकि उसके वचन की समझ। आपको इसका इसी प्रकार विश्वास करना है जिस प्रकार की आपको आज विश्वास करना चाहिए, और इसे ग्रहण करके कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त नहीं हुए हैं। इस बात की समझ जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर वो करने के योग्य है। अब्राहम ने इसका विश्वास किया कि, और जब वो 100 वर्ष का था तो वो अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया ना गया। देखिए ये वचन कितना अजीब सा लगता है। यहाँ 100 वर्ष का मनुष्य है जो अपने घर में बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है, एक स्त्री के द्वारा जो 90 वर्ष की है। समझे? गर्भ धारण करने के लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं जब से वो युवा या युवावस्था में थी, उसके साथ रह रहा है, और वो यहाँ है। उसका जीवन का स्रोत मर चुका है और सारा का गर्भ मर गया था। जहाँ तक आशा थी, सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी, परंतु अब भी आशा के विपरीत उसने आशा में विश्वास किया, क्योंकि उसे समझ थी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में सक्षम है। अब जब आपको इस प्रकार से प्राप्त हो तो अपने विश्वास पर बढ़ते जाएं। जब आपके पास वास्तविक सद्गुण हो तो इसे अपने विश्वास पर बढ़ाएं। तब आप सड़क पर चल सकते हैं, एक मसीही की तरह जीवित रह सकते हैं, मसीह के समान कार्य कर सकते हैं, मसीही हो सकते हैं। अपने विश्वास पर ये बढ़ाते जाएं। जब आपके पास समझ है, आप कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जानता कि ये वचन ठीक है कि नहीं। अब यहाँ प्रेरितों के कार्य 2:38 है, मैं नहीं जानता कि इसको लेकर कैसे 28:19 पर जाऊं। मैं नहीं जानता, ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं मिलाते क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं मिला है। समझे? आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपके पास परमेश्वर को जानने के लिए पर्याप्त समझ नहीं है कि बाइबल स्वयं में अपना विरोध नहीं करती। उसे छोड़ दें, उसके विषय में अधिक कुछ ना कहें। समझे? इसे छोड़ दें। परंतु जब आप ये देख सकते हैं कि पवित्र वचन में विरोधाभास नहीं है, तब आप ये कह सकते हैं कि, और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा देख सकते हैं कि समस्त वचन भेदों में लिखा हुआ है, और केवल परमेश्वर का ज्ञान इसे प्रकट कर सकता है। और जब आप पाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन आमीन के साथ है, तो इसे अपने विश्वास पर बढ़ाएं। ओ, आप अभी एक सुंदर मनुष्य बनने जा रहे हैं। समझे? आप बड़े हो रहे हैं। देखा? किसके साथ? विश्वास के साथ, फिर सद्गुण के साथ, फिर समझ के साथ। देखिए ये इस व्यक्ति को कैसे बना रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे बचने का कोई और मार्ग नहीं है। मसीह के पूरे कद में आने के लिए यही मार्ग है। जी हां श्रीमान, न्याय करना, सही न्याय करना। विचार कीजिए, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। विचार पूर्वक न्याय कीजिए, चाहे ये ठीक है या गलत है, चाहे मुझे धार्मिक मत की या परमेश्वर की सेवा करनी हो। विचार पूर्वक न्याय कीजिए कि ये ठीक है या गलत है, मुझे फिर से जन्म लेना चाहिए या गिरजे का सदस्य होना चाहिए। तब आप आरंभ करते हैं। ठीक विचार कीजिए। जब एक प्रचारक कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, बाइबल ने कहा यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। अब आप किस पर विश्वास करने जा रहे हैं जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर को ही लूंगा? अब आप बस कुछ कहने के लिए कुछ नहीं कहते, ठीक है मैं इसे अपने पूरे हृदय से लेता हूँ, परंतु आप में कुछ है, आपका विश्वास आपको वहाँ धकेलता है, आप वही हैं, आपका विश्वास कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक सा है। आमीन, मैंने उसकी वही गवाही दी है, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ वो वास्तविक है। आमीन, तब इसे अपने विश्वास में बढ़ाइए, इसे नींव पर रखिए, अब ऊपर बढ़िए, ऊपर राज्य की ओर बढ़िए। अब उस स्थान पर आए, ठीक है। अब अगली बात जो प्रचारक आपको बताएगा, और बहुत से लोग कहते हैं ये बातें जो तुम बाइबल में पढ़ते हो ये उन दिनों के लिए थीं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि आज हमें उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, समझे, हमें होनी भी नहीं चाहिए, हमें उन बातों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दिव्य चंगाई, हम कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का अभ्यास नहीं करते हैं, कलीसिया को सही रखने के लिए हम ये नहीं करते हैं, हम उसी पर ही आएंगे। मैंने यहाँ पर इस विषय पर कुछ वचन लिख रखे हैं, देखा कि हमें अब भी ये करना ही चाहिए कि नहीं, परंतु आपने कहा मैं नहीं जानता कि आज हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि केवल एक चीज हमें सीखनी चाहिए कि भीड़ के सम्मुख हमें अच्छी ढंग से बोलना चाहिए, हमें जाकर और मनोवैज्ञानिक से अपने मस्तिष्क की जांच करानी चाहिए ये देखने के लिए कि हम इस योग्य हैं कि नहीं कि स्वयं को प्रस्तुत कर सकें। यदि हमारा सामान्य ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार से आदि आदि, मैं सोचता हूँ, और हमारे पास महान सभाएं हैं, हम अपनी संस्थाएं बनाते हैं, हम संस्था नहीं बना रहे हैं। इस प्रातः मैं यहाँ संस्था बनाने के लिए नहीं हूँ, मसीह ने मुझे कभी भी संस्था बनाने के लिए नहीं भेजा, मसीह ने मुझे व्यक्तियों को यीशु मसीह के कद तक बनाने के लिए भेजा है, ताकि वे सामर्थ का भंडार हों और उसके वचन के द्वारा आत्मा के रहने का स्थान हो, उसके वचन के द्वारा, देखा, व्यक्तिगत को उस स्थान तक बनाना, न कि संस्था या नामधारी गिरजा बनाना, परंतु व्यक्तिगत को परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनाना, यही धारणा है, समझे, अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने सद्गुण पर समझ, ठीक है। अब आप उस स्थान पर आ रहे हैं, अब जब वे ये कहना आरंभ करते हैं, ठीक है आज हमें उन बातों को स्वीकार नहीं करना है, आपको करना ही है, यही होना है, वचन झूठा नहीं हो सकता। बाइबल ये कहती है ये किसी की अपनी विचारधारा से नहीं, आप केवल उसी प्रकार से विश्वास करें जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, समझे, आपके पास यही चीजें होनी ही चाहिए, और केवल एक ही मार्ग है कि ये आप इसको पाने के योग्य होंगे, और वो है स्वर्गीय जन्म की समझ। स्वर्गीय जन्म की समझ वचन को प्रमाणित करेगी, समझे, आपको विश्वास करना ही है, न कि इस पर दिखावटी विश्वासी, इनमें से कोई भी बनावटी विश्वासी नहीं है। देखिए, यदि आप ये कहने का प्रयत्न करते हैं मेरे पास है, काली चिड़िया होकर मोर का पंख अपने में मत लगाइए, क्योंकि वो एकदम गिर जाएगा, वो प्राकृतिक रूप से वहाँ नहीं उगा है, वो तो केवल लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ दाऊद ने कहीं भजन संहिता एक में कहा है, वो उस पेड़ के समान होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है। आप जानते हैं पेड़ लगाने में और हो जाने में भिन्नता है, पुराने बलूत के पेड़ के समान हो जाता है, ये तो लगाया गया है, इसकी जड़ें नीचे घनी होकर और अच्छी पकड़ कर लेती हैं। छोटी पुरानी डंडी वहाँ लगी हुई है, आप नहीं जानते कि इसका क्या होने जा रहा है, जड़ें है ही नहीं, इसकी कोई नेव नहीं है, समझे, ये कुछ ऐसे लोगों के समान है जो धार्मिक विद्यालय से आ रहे हों या ऐसे ही कुछ, देखा, ठीक है, डॉक्टर अमुक अमुक ने मुझे सेवकाई के लिए नियुक्त किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था, मसीह ने आपको इसमें उत्पन्न कर दिया है, देखा, देखा, आपके विश्वास के द्वारा, समझे, आप नए सिरे से बनाए गए हैं और इसमें उत्पन्न हुए हैं, और तब इसमें उत्पन्न होने के पश्चात ये चीजें हैं जिनकी वो आप में बढ़ने की आशा करता है, इन्हें बढ़ाते जाइए। अब हम ठीक रेखा के नीचे जा रहे हैं, अब इस समझ पर दूसरी चीज आएगी, हम इस पर बोल सकते हैं भक्ति की समझ, समझे, क्या बाइबल इस दिन में अपना अर्थ खो चुकी है? देखिए, वे बहुत से लोग आपको बताएंगे कि बाइबल का सही अर्थ ये नहीं है, यदि परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है और मेरे पाप में मुझे सुधारता है, और यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो वो ये करता है, पुत्रों वो आपके साथ इसी प्रकार से करता है, और पुत्रियों जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको सुधारता है। तब यदि परमेश्वर आपके प्रति इतना सजग है कि वो आपका ध्यान रखता है और आपको सुधारता है, तो वो अपने वचन के प्रति कितना होगा, जो कि आपका आदर्श है, जो कि वो स्वयं है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा, वचन यीशु मसीह का प्रकाशन है, बाइबल ऐसा ही कहती है, मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ और उसने आपके ऊपर जब आप इन विधियों का उल्लंघन कर रहे थे दृष्टि रखी। इसके लिए उसने आपको दोषी ठहराया, तो वो अपनी व्यवस्था पर कितना ध्यान रखेगा जो आपको दोषी ठहराएगी। आमीन। लड़के बड़े चलो, मुझे ये सब मत बताओ, मैं वास्तविक पवित्र आत्मा की समझ में विश्वास रखता हूँ। पवित्र आत्मा की समझ सदा वचन पर आमीन के साथ पूर्ण विराम लगाएगी। जब आपको ये चीजें मिले जो कि आपस में बाइबल के अंदर विरोधाभास देती हुई प्रतीत हों, आप बैठकर इसका अध्ययन करें और इस प्रकार से प्रार्थना सहित, पहली बात आप जानते हैं, पवित्र आत्मा अंदर आना आरंभ कर देगा और कुछ क्षणों पश्चात आप देखते हैं कि वो एक दूसरे से मेल खाता है और तब आपको मिल जाता है। समझे, ये समझ है। उनमें से कुछ कहते हैं ठीक है, अब बाइबल ने कहा है कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, और कलीसिया ने कहा किसी एक निश्चित भाव में वो एक सा है। ओह, आपने निरंतरता को वहीं पर तोड़ दिया, समझे। जी हाँ श्रीमान। नहीं श्रीमान, वो एक सा ही है। जी हाँ श्रीमान, यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, उसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। वो अपनी कलीसिया में रहता है और वही कार्य करता है। कुछ क्षण पहले, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया था, थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा जगत के अंत तक। उसने फिर कहा वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। उसने फिर कहा मैं दाखलता होऊंगा, तुम डालियाँ होगे। डालियाँ केवल दाखलता के जीवन से जीवित रहती हैं। दाखलता में जो कुछ होता है वो डाली के द्वारा बाहर आता है। महिमा हो, तब मसीह कल आज और सर्वदा एक सा होता है। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन उत्पन्न करता है। आमीन। समझ संसारिक नहीं, ये तर्क वितर्क है। संसार का किसी भी प्रकार का ज्ञान तर्क वितर्क है। परमेश्वर आप पर अमुक अमुक बातें प्रकट करता है कि ये बातें घटित होने जा रही हैं। संसार का हर वैज्ञानिक आपसे कह सकता है कि ये असंगत है, ये नहीं हो सकता। जो भी हो आप विश्वास करते हैं, समझे। जी हाँ श्रीमान, ये तर्क वितर्क नहीं करता। बाइबल ने कहा हम सारे तर्क छोड़ देते हैं। आप विश्वास के साथ तर्क नहीं करते, विश्वास में तर्क नहीं है। विश्वास जानता है कि वो कहाँ है, विश्वास कार्य करता है, विश्वास थामे रहता है, वो हिल नहीं सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। मैं चिंता नहीं करता जो कुछ भी कहो, ये वो वगैरह वगैरह, वो जरा भी नहीं डगमगाता, वो वहीं स्थिर रहता है। ठहरिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो वहीं स्थिर रहता है। परमेश्वर ने नूह को बताया कि ये बातें घटित होने जा रही हैं, उसने इसका विश्वास किया। देखिए, परमेश्वर ने मूसा को ये बातें बताई कि ये घटित होने जा रही हैं, उसने इसका विश्वास किया। परमेश्वर ने प्रेरितों को बताया कि ये बातें घटित होने जा रही हैं, वहाँ पेंतेकुस्त पर जाओ और प्रतीक्षा करो, वे वहीं ठहरे रहे। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। अब समझ, ना कि संसारिक समझ या ज्ञान, परंतु ये स्वर्गीय समझ है। और स्वर्गीय समझ, जबकि परमेश्वर सारे ज्ञान का स्रोत है और परमेश्वर वचन है, तब यदि आपके पास स्वर्गीय समझ है तो आप वचन का विश्वास करते हैं और आप वचन के द्वारा किसी भी बात पर तर्क नहीं करते। और इस टेक्स्ट के मुकदमे में जिसमें की कलीसिया थी या जिसमें मैं था, उनमें से एक व्यक्ति ने उस छोटी सुनवाई के समय मुझे बताया। मैंने कहा वे कुछ भी गलत नहीं पा सकते हैं और इसलिए उन्होंने आरंभ किया। मैंने कहा ठीक है, यदि कुछ गलत नहीं है तो क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते हो, समझे। और मैं वचनों के विषय में कुछ बताते हुए आगे बढ़ गया। एक बड़ा महान व्यक्ति हाथ में सिगरेट लिए हुए, वो बोला श्रीमान ब्रैनम मैं एक बाइबल का विद्यार्थी हूँ। मैंने कहा मुझे ये सुनकर प्रसन्नता है। उसने कहा अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या अंधविश्वास है, ये रुमाल जो आप भेजते हैं आप इनके पैसे लेते हैं, इन रुमालों पर प्रार्थना करने का ये छोटा सा अंधविश्वास और उन्हें बाहर भेजना, उन अभिषेक किए कपड़ों को आप उन्हें कपड़ा कहते हैं। उसने कहा आप उनके लिए पैसा लेते हैं। मैंने कहा नहीं श्रीमान, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। और उसने कहा ठीक है इस अंधविश्वास पर। मैंने कहा आप इसे अंधविश्वास कहते हैं श्रीमान, आपने मुझे कुछ क्षणों पहले बताया था कि आप एक बाइबल के विद्यार्थी हैं। उसने कहा मैं हूँ। मैंने कहा मुझे प्रेरितों के कार्यों 19:11 का उल्लेख कीजिए। ज्ञान, वो स्वयं ही उसमें फंस गया, विषय को बदलने का यत्न करने लगा। मैंने कहा तो फिर मुझसे यूहन्ना 5:14 का उल्लेख कीजिए, इसे नहीं कर सका। मैंने कहा तो फिर याकूब 5:14, वो ये नहीं कर सका। मैंने कहा क्या आप यूहन्ना 3:16 जानते हैं, समझे। ज्ञान, चतुर, संसार, परंतु जब उसने कहा परंतु श्रीमान ब्रैनम आप इस मुकदमे की बहस को बाइबल से करना चाह रहे हैं, हम इसको राष्ट्र के कानून से परख रहे हैं, मैंने कहा, श्रीमान क्या इस राष्ट्र का कानून बाइबल पर आधारित नहीं है? तो फिर ये न्याय है। आमीन। निश्चय ही समझ, सांसारिक नहीं, आत्मिक समझ, वचन की समझ कि परमेश्वर ने क्या कहा, वही करिए जो परमेश्वर ने कहा है, ये ठीक बात है। तब यदि आपके पास ये है और इन सब बातों का विश्वास कर सकते हैं कि वो सब बातों में एक सा है, वचन जो कहता है सत्य है, आप प्रत्येक को आमीन के साथ पूर्ण विराम कर सकते हैं। इसे अपने विश्वास पर बढ़ाइए, ये ठीक बात है। जी हाँ, यदि आपको कोई कुछ बताने का यत्न करे कि बाइबल अपनी सामर्थ खो चुकी है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं है, ओ इसे मत मिलाएं, ये कार्य नहीं करेगा, ये सब ढह जाएगा, जैसे कि मिट्टी को चट्टान पर डालना, वो नहीं रुकेगी, वो टूट टूट कर गिर जाएगी। तब लोग आपको बताते हैं बाइबल पर आज विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप सचेत हो जाएं, आप इसी का विश्वास मत करते रहिए, ये सत्य नहीं हो सकती। एक छोटी कहावत आपने हर समय सुनी है, आप बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, यदि ये आपके मस्तिष्क में है तो इसे मिलाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ये कार्य नहीं करेगा, वो सारी की सारी इमारत गिर पड़ेगी। उसे तो पवित्र आत्मा के मसाले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मेरा अर्थ आपस में चिपका हुआ होना। मसाला इसे मोहर बंद करता है और वही चीज जो इसे मोहर बंद करती है, आप जानते हैं जिस प्रकार पकाई हुई ट्यूब उस पुराने रबड़ के चिपके थिगड़ से अधिक चलती है। थोड़ी सी गर्मी जब उस रबड़ के थिगड़े पर लगती है जो टायर पर है, पहली बात आप जानते हैं जब टायर थोड़ा तेज चलता है तो उसे थोड़ा गर्म कर देता है और ये पिघल कर अलग हो जाता है। जी हाँ श्रीमान, समझे? और आज बहुत से लोगों के साथ यही मामला है, वे अपनी समझ को संसारिक ज्ञान पर चिपकाते हैं उस पुराने छोटे संसारिक गोंद से, और जब परीक्षाएं आती हैं, ठीक है, हो सकता है मैं गलत था, समझे, और हवा निकल जाती है और कुछ ही मिनटों में आप धराशायी हो जाते हैं। आपका वो सब चिल्लाना और ऊपर नीचे कूदना आपकी कोई भलाई नहीं करता, और लोग आपको फिर से उसी पोखरी में पड़े हुए देखते हैं, समझे, ये ठीक बात है। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा की पर्याप्त गर्मी के साथ तब तक स्थिर रहते हैं जब तक कि वो आपको और ट्यूब को एक सा ना बना दे, यही बात है, आप और ट्यूब एक हो जाते हैं। जब आप उसके साथ तब तक स्थिर रहते हैं जब तक आप और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा एक ना हो जाए, तब इसे अपने विश्वास में मिलाइए। यदि आप इसे बिल्कुल नहीं मिलाते हैं तो आप कहते हैं वचन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसे मिलाने की चेष्टा ना करें। आप कहते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की प्रतिज्ञा यहाँ है जो कि केवल 12 प्रेरितों के लिए थी, जैसे कि आज कुछ कलीसियाएं कहती हैं, इसे मिलाने का यत्न ना कीजिए, उनकी नेव इसी पर है, ये सब टूट टूट कर गिर जाएगी, समझे। पिछली रात्रि जैसे कि उजिया था जब उसने इस व्यक्ति की नेव को देखा जिसका कि उसने विश्वास किया, सब ढह गया, कोड़ की मार पड़ी, ये अच्छा नहीं था। अब केवल 12 प्रेरितों के लिए, केवल 12 प्रेरित, मैं भाई राइट्स के पास था, मैं सोचता हूँ वो पीछे कहीं हैं। एक रात्रि वहाँ एक सेवक था, मैं 4 या 5 प्रचारकों से एक साथ बातें कर रहा था, ये प्रचारक खड़ा हुआ और बोला, प्रिय लोगों, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ओ मैं सोचता हूँ आप अच्छे लोग हैं। मैंने कहा, मैंने किसी को बताया, मैंने कहा ठीक, पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर दृष्टि लगाओ। इस प्रकार जूनियर जैक्सन वहाँ पीछे बोल कर चुके हैं और उसने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह पे क्या ही प्रचार था, ओ प्रभु, वो प्रतीक्षा करते हुए जल रहा था, वो वहाँ खड़ा हुआ और समझाने का यत्न कर रहा था। अब श्रीमान ब्रणम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मसीह विरोधी हैं, और उसने इस प्रकार से आरंभ किया। सारी रात्रि कुछ प्रचारक आरंभ हुए, मैंने कहा एक मिनट रुकिए भाइयों, अब कुछ मत कहिए, ये केवल एक ही है और हम ढेर सारे हैं। मैंने कहा अब उसे छोड़ दो, मेरी ही निंदा की है। मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा, मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। देखा, इस प्रकार से उसने कहा श्री ब्रणम मसीह विरोधी हैं, और आप जानते हैं इस विषय पर बहुत कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ा। उसने कहा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, कहा कि बाइबल ने कहा है कि केवल 12 लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। दिव्य चंगाई के विषय में बात करते हुए, केवल 12 चेलों के पास दिव्य चंगाई थी। उसने कहा हम वही बोलते हैं जहां बाइबल बोलती है, और जहां बाइबल शांत रहती है हम शांत रहते हैं। मैंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसका खड़खड़ाना बंद नहीं हो गया, आधा घंटे के लगभग। मैंने कहा एक मिनट ठहरिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैंने कहा मुझे कुछ का उत्तर देने के लिए अवसर दीजिए। और जब मैं उठा तो मैंने कहा श्रीमान, उसने कहा कि वो वहाँ बोला जहाँ बाइबल बोली है, उसकी कलीसिया ने किया, और जहाँ ये शांत थी वो शांत है, आप सब इसके गवाह हैं। जी हाँ, मैंने कहा कि इन्होंने कहा है कि केवल 12 थे जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। मेरी बाइबल ने कहा है कि पहली बार में 120 लोग थे। आमीन। इस प्रकार के ज्ञान को बाहर फेंक दें, समझे आप, जो कि वो कर रहा था। मैंने कहा तब मेरा अनुमान है कि पौलुस को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, जबकि उसने कहा कि उसने पाया। समझे, मैंने कहा वहाँ जबकि फिलिपुस ने जाकर सामरियों को प्रचार किया, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, उन पर केवल पवित्र आत्मा न उतरा था, और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलवा भेजा और उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। मेरे अनुमान में वे केवल 12 थे। मैंने कहा प्रेरितों के काम 10:49 में जब पतरस घर की छत पर था और उसने दर्शन देखा, वे कुरनेलियुस के यहाँ गए। जब पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था, जिन्होंने वचन सुना उन पर पवित्र आत्मा उतरा। मैंने कहा बाइबल अभी बोल रही है, आपकी कलीसिया कहाँ है, कि ये पहले होता होगा, ये ठीक है, समझे। मैंने कहा दिव्य चंगाई, आपने कहा है कि केवल 12 चेलों के पास थी। बाइबल ने कहा है स्तफनुस सामरिया में गया और प्रेत आत्मा निकाली और बीमारों को चंगा किया, और वहाँ नगर में हर्ष और उल्लास था, और वो 12 में से ना था। वो चेला नहीं था, वो डीकन था। आमीन आमीन। मैंने कहा पौलुस उन 12 में से जो ऊपर की कोठरी में थे उनमें से एक नहीं था, और उसके पास चंगाई का वरदान था। मैंने कहा थोड़ी सी चंगाई के वरदान को देखें, और 30 वर्षों के पश्चात वो अभी कुरिन्थुस में था, चंगाई के वरदान को देह में निर्दिष्ट कर रहा है, मसीह की देह। ओ प्रभु, अब इस प्रकार का ज्ञान जो आपने कुछ पुस्तकों में से सीखा है आपके लिए अच्छा है कि उन्हें कूड़ेदान में फेंक दें। इस समझ पर आइए, जब परमेश्वर ने कहा वो कल आज और सर्वदा एक सा है, कहिए आमीन। जी हाँ श्रीमान, 12 को ही नहीं, ये सबके लिए है। जब आपके पास इस प्रकार का विश्वास है, जब आपका विश्वास इसके हर बिंदु के आमीन का विराम चिन्ह लगाता है, तब आप कहते हैं ठीक है, इसे इसके साथ मिला दें। चौथा, हमें जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर इतना अच्छा अनुभव हो रहा है और इसके विषय में बात करते हुए। जी हाँ, चौथा, धन्यवाद, संयम मिलाओ। ओ प्रभु, हमें संयम पर आना है, और पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए, आरंभ करने के लिए ये होना ही चाहिए। तब आप अपने विश्वास में सद्गुण बढ़ाइए, यदि ये सही प्रकार का सद्गुण है। तब आप समझ बढ़ाइए, यदि ये ठीक प्रकार की समझ या ज्ञान है। अब आप संयम मिलाए जा रहे हैं। संयम का ये अर्थ नहीं है कि शराब पीना बंद करें। नहीं नहीं, संयम का अर्थ शराब को छोड़ना नहीं है, इस मामले में नहीं। ये बाइबल का संयम है, पवित्र आत्मा का संयम। ये तो शरीर की एक लालसा है, परंतु हम पवित्र आत्मा के संयम की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ किस प्रकार अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, बकवादी ना हो, अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करें। हर बार जब कोई आपकी बात से विरोध करे तो हवा में उड़ जाएं। ओ प्रभु, लड़को, इससे पहले कि आरंभ करें, हम में से बहुत से पहले ही गिर पड़ते हैं, है कि नहीं, समझे। तब हम आश्चर्य करते हैं, क्यों, परमेश्वर अपनी कलीसिया में नहीं है। वो आश्चर्यक्रम और वो बातें जो हुआ करती थी। जी हाँ श्रीमान, समझे, ये बातें बढ़ाएं, इसमें संयम मिलाएं। जब क्रोध आपसे बोल रहा हो तो कैसे नम्रता से उत्तर दें। कोई कहता है तुम पवित्र शोरगुल करने वालों, अधिक मत कूदो और अपनी अस्थि में मत समेटो। आप समझे, ये नहीं, परंतु ईश्वरीय प्रेम से बात करें। संयम, नम्रता, क्या यही मार्ग है जो आप होना चाहते हैं? जब आपको गाली दी जाए तो पलट कर गाली ना दें, उसे यीशु को अपना आदर्श बनाएं। जब उन्होंने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे, वो ये कर सकता था और दर्शा सकता था कि वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु उसके पास संयम था। जब उन्होंने उसे बालजबूल कहा, उसने कहा इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ये ठीक बात है ना। उन्होंने उसके मुख पर से मुट्ठी भरकर उसकी दाढ़ी खींचकर नोच डाली और उसके मुख पर थूका और कहा क्रूस पर से नीचे उतरा। उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, वे ये भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। जब उसके पास वरदान था तो वो सारी बातें जानता था, क्योंकि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। लोगों को ये बताने के द्वारा कि उनके साथ क्या गड़बड़ी है, उन्होंने उसे आश्चर्यकर्म करते देखा और इस प्रकार से आदि आदि। उन्होंने इसकी आंखों पर उसके सिर के चारों ओर इस प्रकार से कपड़ा डाल दिया, उसके सर पर डंडी मारकर कहा भविष्यवाणी कर और हमें बता तुझे किसने मारा है, हम तेरा विश्वास करेंगे। समझे, उसके पास संयम था। अब यदि आपके साथ इस प्रकार से हो तो अपने विश्वास में बढ़ाएं। यदि अब भी आप भड़क जाएं और कलह और झगड़ा करें और चलता रहे, ओ तो आपके पास नहीं है, आप इसे नहीं मिला सकते, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। समझे, ये उसके साथ एक रस नहीं हो सकता। आप एक रबड़ का टुकड़ा लें और उसे लोहे के साथ नहीं चिपका सकते, आप ये जानते हैं, नहीं, ये काम नहीं करेगा। उसे रबड़ के समान लचीला होना पड़ेगा, समझे। और जब आपका विश्वास और आपका संयम पवित्र आत्मा के संयम के समान एक सा नहीं हो जाता जो उसके पास था, तब ये उसके साथ पक जाएगा, आप उसके साथ मिल जाएंगे। जब आपका सद्गुण उसके सद्गुण के समान हो जाए तब वो उसमें मिल जाएगा। जब आपकी समझ उसकी समझ के समान हो जाती है, ओ परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आता हूँ। समझे, पिता के वचनों के द्वारा उसने हर शैतान को पराजित किया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वचन नहीं टलेगा। समझे, जब आपके पास उस प्रकार की समझ आ जाएगी तो ये आपके विश्वास के साथ मिलकर एक ही हो जाएगा। जब आपके पास सही प्रकार का संयम होगा जैसे उसके पास था, तो वो उसके साथ एक रस हो जाएगा। यदि आपके पास नहीं है, केवल मानव निर्मित कच्चा पानी की डुबकी वाला विश्वास या संयम है, ओ मुझे उसके थप्पड़ मारना चाहिए था, परंतु हो सकता है अच्छा हो कि ना मारूं, क्योंकि हो सकता है कि इस विषय में वे मेरा नाम अखबार में छाप देंगे। ये उस प्रकार का संयम नहीं है जिसके विषय में वो बात कर रहा है। इसे मिलाने का यत्न ना करें, ये काम नहीं करेगा। परंतु जब आप वास्तव में हृदय के प्रेम से हर व्यक्ति को क्षमा करें, अपनी शांति पर स्थिर रहें, उसे जाने दें, देखा, तब ये एक पूरी तरह से एक साथ मिल जाएगा। इसे आप अपने विश्वास में मिला सकते हैं। हो कोई आश्चर्य नहीं कि कलीसिया बहुत छोटी है, ये ठीक बात है ना? कोई आश्चर्य नहीं। मैं कहूँगा प्रायश्चित करो और बपतिस्मा लो, बाइबल ने कहा यीशु मसीह के नाम में, और रूढ़िवादी त्रिएकता वाले इसका विश्वास नहीं करते, कहते हैं ये पुराना मसीह विरोधी है। वो एक यीशु नाम है, वो केवल यीशु है। देखो भाई, इस समय मैं आपके संयम के विषय में नहीं जानता, समझे, क्यों नहीं? आप आकर कहते हैं भाई ब्रैनम हम आकर आपस में इस पर विवाद करेंगे, मैं इसकी व्याख्या सुनना पसंद करूंगा, समझे, तब आए और इसे सुने, और तब ये आपके सम्मुख रखा जाएगा और तब आप चले जाते हैं। इसे हम कुछ मिनटों के पश्चात भक्ति में लेंगे, देखा। परंतु जब आप उखड़ जाते हैं और प्रत्येक परिणाम पर आप कूद जाना चाहते हैं, ओ ये नहीं है, समझे। जब आप ये करते हैं तो अभी आपके पास बाइबल वाला संयम नहीं है कि कैसे उत्तर दें। तब यदि आपके पास ये सब है तो आप इसे अपने विश्वास में मिला सकते हैं। तब इसके पश्चात चौथा, आप अपने विश्वास में धीरज बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपके पास विश्वास है, ये धीरज को कार्यवंत करता है, बाइबल ने कहा, समझे, इसलिए धीरज। अब ये अगली चीज है जो इस कद को बनाने जा रही है। आप जानते हैं परमेश्वर के पास अपने भवन में वास्तविक पदार्थ है। देखिए भाई, हम कितने बौने हैं, बहन देखा क्यों हम कहाँ हैं? जी हाँ श्रीमान, समझे, हमारे पास महिमा है, चिल्लाहटे हैं और आदि आदि, क्योंकि हमारे पास विश्वास है। परंतु जब हम इन बातों पर यहाँ आते हैं, परमेश्वर हमें उस कद में नहीं बना सकता, समझे, वो नहीं बना सकता, वो हमें उस प्रकार का स्थान नहीं बना सकता। हमारे पास वो सारी चीजें हैं, हम गिरते हैं उसके साथ पिछड़ जाते हैं, देखा, वो अपनी कलीसिया नहीं बना सकता। आपका धीरज किसके साथ, किस प्रकार का धीरज होना चाहिए? पहली बात यह है कि आपका धीरज परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यदि आपके पास वास्तविक विशुद्ध विश्वास है तो आपके पास वास्तविक विशुद्ध धैर्य होगा, क्योंकि विश्वास धैर्य को कार्यवंत करता है। जब परमेश्वर कुछ भी कहता है आप उसका विश्वास करते हैं, बस आपके पास धीरज है। जैसा कि ठीक है, मैंने पिछली रात्रि उससे कहा कि मुझे चंगा कर दे, और मैं इस प्रातः भी वैसे ही बीमार हूँ। ओह क्या धैर्य है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और 25 वर्षों बाद भी एक चीनी नहीं था, वो तब भी विश्वास कर रहा था। परमेश्वर के साथ वो धैर्य रखे था। उसे सदा अपने सामने रखिए, अगली पार होने वाली बात उसे ही होने दीजिए, आप उससे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए केवल उसे अपने सामने रखिए। उसने ऐसा ही कहा है और ये घटित होने जा रहा है, समझे, उसे अपने सामने रखिए, ये ठीक बात है। नूह के पास धीरज था, जी हाँ, नूह के पास वास्तविक ईश्वरीय धीरज था। परमेश्वर ने कहा मैं संसार को वर्षा से नष्ट करने जा रहा हूँ, और तब भी नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया, बहुत सारा धीरज, आकाश से ओस तक ना गिरी, कुछ नहीं था, ऐसे ही धूल भरा था जैसा कभी 120 वर्ष पहले था, परंतु वो धीरजवंत था। तब परमेश्वर आपके धीरज को परखता है, ये ठीक बात है, परमेश्वर उन्हें परखता है। नूह को बताने के पश्चात अब उसने कहा, नूह मैं अब चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े और नाव में चला जा, मैं पशुओं को अंदर भेजने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू अंदर जाए, अब ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जा ताकि तू ऊपर चोटी की खिड़की से देख सके, अब मैं चाहता हूँ कि तू अंदर जाए, मैं चाहता हूँ कि तू इन लोगों को बता दे, मैं जो 120 वर्षों से प्रचार कर रहा था कल वो घटित होने जा रहा है, ठीक है, तू वहाँ जाकर उन्हें बता दे। पहला चिन्ह क्या था? नूह नाव में चला गया, कोई वर्षा ना थी, नूह तैयार हो गया और बरसाती पहन ली और आधी आधी ताकि वो एक आध बार बाहर देख सके, तैयार हो गया, परंतु अगले दिन मैं विश्वास करता हूँ कि उसने परिवार को बता दिया होगा और उसकी बहुएं और वे सब, ओ प्रभु कल तुम कुछ देखने वाले हो जो तुमने कभी नहीं देखा, क्योंकि सारा आकाश काला होने जा रहा है और गर्जन और बिजली कड़कने जा रही है। परमेश्वर की बड़ी तलवार आकाश को चीरती हुई निकलेगी, वो इन पापियों के झुंड को दोषी ठहराने जा रहा है जिन्होंने हमें 120 वर्षों से तिरस्कृत कर रखा था। आप केवल ध्यान दें और देखें, समझे, उनमें से कच्चे विश्वासी आप जानते हैं जो आसपास रहा करते थे और जो कभी अंदर नहीं आए, समझे आप, अब भी वे आपके पास पास हैं, आप जानते हैं। इसलिए वे आए, बोले ठीक है, हो सकता है वो बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो, इसलिए हम जाएंगे और वहाँ कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे या प्रातः कुछ घंटों प्रतीक्षा करेंगे। और देखिए, अगले दिन बजाय काले बादलों के सूर्य उसी प्रकार उदय हुआ जैसे सदा हुआ। नू ने बाहर देखा, कहा वाह कोई बादल नहीं है। वो व्यक्ति ऊपर आया, कहा मैं जानता हूँ तुम उनमें से एक हो, देखो तुम यहाँ आसपास रहते हो। भाई श्रीमान मुझे क्षमा करना, हाँ हाँ हो सकता है मैं थोड़ा सा उत्साहित हो गया था, आप समझते हैं एक प्रकार से, देखिए हाँ हाँ हाँ। परंतु नू उसके पास धैर्य था, बोला यदि ये आज नहीं आया तो कल आएगा। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। नू उसने ये तुम्हें कब बताया? 120 वर्ष पहले मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसलिए अब मैं केवल यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसे देखिए, कुछ देर पश्चात हम पाते हैं कि परमेश्वर भी कलीसिया की प्रतीक्षा करते करते यहाँ तक आ गया है। परंतु ये होगा, चिंता मत कीजिए, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, इस सारे समय पुनरुत्थान की प्रतीक्षा की है, चिंता न कीजिए, वहाँ एक होगा, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, केवल धीरज से प्रतीक्षा करें। आप सो जाते हैं, ये नहीं होगा, इससे पहले ये घटित हो आप एक झपकी ले सकते हैं, परंतु उस समय आप जाग जाएंगे, उसने ये प्रतिज्ञा की है। आप देखिए, एक झपकी, देखिए जिसे हम मृत्यु की झपकी कहते हैं, आप जानते हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं, केवल एक छोटी झपकी या मसीह में सो जाना, मसीह में मर जाना जैसे कोई चीज नहीं है। जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं रह सकते, समझे? हम केवल एक झपकी लेते हैं, एक निद्रा की झपकी, जिसमें से हमारे मित्र नहीं बुला सकते, केवल वही जो पुकार सकता है वो पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, अय्यूब ने कहा। अब अय्यूब 4000 वर्षों से सो रहा है, चिंता मत कीजिए, वो जगा देगा, चिंता न कीजिए, वो अभी प्रतीक्षा कर रहा है। नूह ने प्रतीक्षा की, 4 दिन बीत गए, कोई वर्षा नहीं, ये ठीक है, ये घटित होने जा रहा है। मैं सुन सकता हूँ कि पुत्र वधू नूह के पास आती और कहती है, पिताजी क्या आप निश्चित हैं? इस प्रकार की बातें मत करो। उसके पास धीरज था क्योंकि उसके पास विश्वास था। जी हाँ श्रीमान, उसके पास सद्गुण था, उसके पास ये समझ थी कि परमेश्वर सही था, उसके पास संयम था, उसने व्यग्र होकर ये नहीं कहा, ठीक है मैं नहीं जानता इस सब के विषय में, मैंने वहाँ बाहर अपनी सारी लोकप्रियता खो दी है। नहीं नहीं, लोग अब मेरी चिंता नहीं करते, मैं बाहर जाऊंगा और कुछ नया फिर से आरम्भ करूंगा। नहीं नहीं, उसके पास धैर्य था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर इसे करेगा, परमेश्वर इसे करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और मैं देख सकता हूँ कि उसका पुत्र आसपास को आया, कहता है पिताजी आप जानते हैं, अपने लंबे सफेद बालों में हाथ मारते हुए, आप जानते हैं, और वो 100 वर्ष की आयु का है, आप जानते हैं कि वो वहाँ बैठा हुआ है। कहा मैं जानता हूँ आप बूढ़े पूर्वज हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ पिताजी, परंतु क्या ये संभव नहीं कि आप थोड़ा सा गलत हो गए हैं? ओ नहीं नहीं नहीं, क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। ठीक है पिताजी, आज छठवां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इस बड़ी पुरानी सूखी नाव में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और ये अंदर और बाहर से पुती हुई है, और हम इन कई वर्षों से इसे बना रहे हैं, और आपने बाहर खड़े होकर तब तक प्रचार किया जब तक सफेद और गंजे ना हो गए, और अब आप यहाँ हैं और आधी आधी बातें कहने का यत्न कर रहे हैं, और लोग हंस रहे हैं और सड़े सड़े टमाटर और दूसरी दूसरी चीजें इस तरफ फेंक रहे हैं। वहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप जानते हैं? पुत्र धैर्य रखो, क्या आप निश्चित हैं कि वर्षा होगी? उसकी बहू कहती है, पिताजी आप जानते हैं वर्षा होगी, परंतु इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और आपने हमें एक सप्ताह पहले बताया कि वर्षा होने वाली है, और हम यहाँ अंदर हैं और सारे द्वार बंद हैं, और हम यहाँ घूम रहे हैं और सूर्य पहले के समान चमक रहा है जैसा कि था, परंतु वर्षा होगी, आप कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अब हम इस प्रकार से इसे मिला सकते हैं, परंतु यदि आपके पास इस प्रकार से नहीं है तो इसे मिलाने का यत्न ना कीजिए, ये कार्य नहीं करेगा, ये चंगाई पर कार्य नहीं करेगा, ये किसी चीज पर भी कार्य नहीं करेगा, समझे? इसे पककर कड़ा हो जाने दीजिए, उसी पदार्थ के साथ मिल जाना चाहिए, ये ठीक बात है, मिलाने के लिए मिल गया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ धैर्य। जी हाँ श्रीमान, नूह ने इसका विश्वास किया और उसने परमेश्वर के साथ 120 वर्ष तक धैर्य रखा। मूसा, उसके पास परमेश्वर के साथ धैर्य था। जी हाँ श्रीमान, मूसा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है, मैंने उनके दुख को देखा है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आ रहा हूँ, मैं तुझे वहाँ भेजने वाला हूँ, और वहाँ उसके और परमेश्वर के बीच थोड़ा सा भिन्न था, और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई, बोला मैं जाता हूँ। जब उसने एक बार परमेश्वर की महिमा देख ली, आप समझे, उसके पास विश्वास था। कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा एक छड़ी। उसने कहा इसे नीचे डाल दे। वो सर्प में बदल गई। उसने कहा ओ बापरे, वो आरंभ। कहा इसे उठा ले मूसा, यदि मैं इसे सर्प में बदलने के योग्य हूँ, मैं इसे फिर से बदल सकता हूँ। ओ आमीन, यदि परमेश्वर मुझे शारीरिक जीवन दे सकता है तो वो मुझे आत्मिक जीवन दे सकता है। यदि परमेश्वर मुझे पहला जन्म दे सकता है तो वो मुझे दूसरा जन्म भी दे सकता है। आमीन। यदि परमेश्वर इसे दिव्य चंगाई के द्वारा चंगा कर सकता है तो अंतिम दिन में वो इसे अपनी महिमा के लिए फिर से उठा सकता है। ये ठीक बात है। मैं इस छड़ी को नीचे डाल सकता हूँ और सर्प में बदल जाती है। मैं इसे फिर से छड़ी में बदल सकता हूँ। इसे पूंछ से पकड़ ले। मूसा नीचे को झुका और इसे पकड़ लिया और वो एक छड़ी थी। तब उसने समझ को मिलाना आरंभ किया, समझे? और मूसा, तेरे हाथ के साथ क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, अपने सीने से लगा। ठीक है, इस विषय में क्या है? कोड़ से सफेद? ओ प्रभु, मेरे हाथ को देख। मूसा, इसे फिर से अपने सीने में छिपा ले। उसने इस प्रकार से डाल लिया और वो फिर से वैसा हो गया और तब वो इस प्रकार से मिलाता चला गया। देखा? जी हाँ श्रीमान, वो वहाँ पर पहुँचा और पहली विषमता, वो वहाँ पहुँचा। वो वहाँ आया और बोला, प्रभु परमेश्वर ने कहा है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन, मैं चाहता हूँ कि तुम जान जाओ मैं यहाँ परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर आया हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फिरौन ने कहा, कहना मानना, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फिरौन हूँ, तेरा कहना मानू, एक गुलाम। कहा, तुम मेरी बात मानोगे या नष्ट हो जाओगे, तुम इसमें से जो चाहो करो। क्यों? उसे मालूम था कि वो किस विषय में बात कर रहा है। उसके पास एक प्राधिकार था, वो वहाँ था, उसने परमेश्वर से बात की थी, उसके पास विश्वास था, वो जानता था कि वो कहाँ है। तू चाहता है कि मैं तेरा कहना मानूं? यहाँ से बाहर निकल जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। मुझे एक चिन्ह दिखा। उसने छड़ी को नीचे डाला, वो सर्प में बदल गई। उसने कहा, क्यों? जादूगरी की इतनी घटिया तकनीक? एक मिनट, यहाँ आओ यनेस, यहाँ आओ। तुम अमरेश, अपनी छड़ियाँ नीचे डालो। उन्होंने उन्हें नीचे डाल दिया और वे सांप में बदल गईं। कहा, तुम घटिया चीज यहाँ मेरे पास आए हो, एक मिस्री, एक मिस्र के फिरौन के पास, और तुम यहाँ अपनी घटिया जादूगरी की तकनीक के साथ आए हो, अपनी कुछ हंसी खेल की हाथ की सफाई के साथ। तुम मस्तिष्क को पढ़ना जानते हो, आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय में पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क पढ़ने की विद्या या ऐसे कुछ। आप देखिए, जी हाँ, आपने कुछ उसी के साथ यहाँ आया है। कहा, ठीक है, हम वही चीजें कर सकते हैं जो तुम करोगे। मूसा क्या था? उसने ये नहीं कहा, ओ श्रीमान फिरौन, मुझे खेद है श्रीमान, मैं आपका दास हो जाऊंगा। जी नहीं श्रीमान, वो शांत खड़ा रहा। आमीन। वही डटा रहा। परमेश्वर ने कहा, इसके हृदय में शंका नहीं है, अपनी शांति थामे रहो, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। जब आप ठीक वही करते हैं जो परमेश्वर ने कहा करो, ऐसा प्रतीत होता है कि गलत हो गया। शांत रहिए, धैर्य रखिए। मूसा ने कहा, आप जानते हैं, जब मैंने उस नेव को रखा तो मैंने वहाँ उस पर धैर्य को रखा, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा परमेश्वर क्या करता है। वहाँ पुराने सांप आसपास रेंग रहे हैं, एक दूसरे पर फुनकार मार रहे थे। पहली बात आप जानते हैं कि मूसा का सांप वहाँ गया और गप 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 करके सबको निगल गया। उसके पास धैर्य था। वे जो प्रभु पर आश्रित रहते हैं नया बल प्राप्त करेंगे, उनके उकाब के समान पंख लगेंगे। क्या ये ठीक बात है ना, समझे? जी हाँ, वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। देखिए, केवल प्रभु की प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य रखिए, समझे? जी हाँ श्रीमान। तब इज़राइल बाहर निकलने वाला है, एक महान अंतर आया और मूसा ने प्रतीक्षा की, तब वो जंगल में चला गया। ये केवल लगभग 3 या 4 दिन की यात्रा थी, ये केवल 40 मील था वहाँ से जहाँ से उन्होंने पार किया और जहाँ से उन्होंने फिर से पार किया। परंतु मूसा जंगल में 40 वर्ष तक रुका रहा, धैर्य। आमीन, ये ठीक बात है। वो 40 वर्षों तक रुका रहा। ओ जी हाँ श्रीमान, और हमें भी एक दूसरे के साथ धैर्य रखना चाहिए, समझे? एक बार हम एक दूसरे के साथ अपना धैर्य खो बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमें मूसा के समान होना चाहिए। मूसा ने लोगों के साथ धैर्य रखा। देखिए, उनके लिए यही कारण हुआ कि वे वहाँ ना जा सके, समझे? यदि आप कुछ करने का यत्न कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ये संदेश आराधनालय में देने का यत्न किया, ये देखने के लिए कि इस आराधनालय का प्रत्येक सदस्य ये हो जाए, ये करना कठिन है। मैंने इन 33 वर्षों में धैर्य रखने का प्रयत्न किया, समझे? धैर्य रखें। स्त्रियां अब भी अपने बाल कटवाती हैं, ठीक उसी प्रकार से, परंतु केवल धैर्य रखें, समझे? केवल धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें। करना है, यदि ये आपके पास नहीं है, इसे यहाँ बनाने का प्रयत्न न कीजिए, धैर्य रखें। यहाँ तक कि एक बार विद्रोही लोगों का झुंड इतने अधीर हो गए, उन्होंने मूसा से कुछ ऐसा करवा दिया जो गलत था, परंतु तो भी जब ये दृश्य में आया तो परमेश्वर ने उनके कार्य से दुखी हो गया था कि उससे कहा, मूसा अपने आप को अलग कर, मैं सारे झुंड को मार डालूंगा और फिर से नया आरंभ करूंगा। उसने स्वयं को बिचवाई में डाल दिया और कहा, परमेश्वर ऐसा ना कर। क्यों? उन लोगों के साथ धैर्य जो उसके विरोधी हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं ऐसा कर सकूं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इस पर बनाने का यत्न ना करें, क्योंकि ये बदलता नहीं। आप जानते हैं कि पहली वाली विधि यही थी कि इसी में पका दें, और इसी प्रकार से उसमें से प्रत्येक को पकाया। यदि आप नहीं करते हैं तो आप उसको तक नहीं पहुंचते हैं कि जीवित परमेश्वर का रहने का स्थान हो। यदि आपके पास धीरज नहीं है, एक दूसरे के प्रति धीरज, ठीक है, इब्री बालकों के पास धीरज था, निश्चय ही उनके पास था। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, उन्हें बताया था कि किसी मूरत के सामने सिर न झुकाना, परंतु उनके पास धीरज था, कहा कि हमारा परमेश्वर योग्य है, परंतु तब भी हम तेरी मूरत के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये जानते हुए धैर्य कि परमेश्वर उसे अंतिम दिन फिर उठा खड़ा करेगा। जो भी है, जीवन का अर्थ इतना अधिक नहीं है, समझे? परमेश्वर इसे अंतिम दिन फिर से जिला उठा खड़ा करेगा, परंतु जब ये मूरत के सामने झुकने की बात आती है तो हम इसे नहीं करेंगे। अब हम जो कैसर का है उसे कैसर को देंगे, परंतु जब कैसर परमेश्वर के मामले में आड़े आएगा तो परमेश्वर पहले। परमेश्वर ने कहा तुम उस मूरत के सामने मत झुको, और मैं ये नहीं करूंगा। हमारा परमेश्वर छुड़ाने योग्य है, यदि वो नहीं छुड़ाता तो भी मैं मूरत के सामने नहीं झुकूंगा। कहा ठीक है, सामने भट्टी है, ठीक है। उसने कहा मेरा अनुमान है कि आज रात्रि तेज वर्षा होगी और इसे बुझा देगी, परंतु ये नहीं हुआ, अब भी धीरज है। अगली प्रातः जब कचहरी के सामने लाए गए, वहाँ नबूकदनेस्सर बैठा है। उसने कहा ठीक है लड़को, क्या तुम मुझे एक राजा के समान याद करने के लिए तैयार हो? निश्चय ही, ओ राजा तू युग युग जिए। अब मेरी मूरत के सामने झुको, ओ नहीं, ठीक है। तुम लोग जलने जा रहे हो, तुम लोग बुद्धिमान मनुष्य हो, तुम लोग तेज तरार हो, तुम हमारे लिए एक महान सहायता थे, तुम लोग हमारे राजा के लिए वरदान थे। तुम नहीं समझ सकते कि मैं ये नहीं करना चाहता, परंतु मैंने ये घोषणा कर दी है और इसे होना ही है। मैं तुम लोगों को उसमें नहीं फेंकना चाहता। ओ पुरुषोत्तम, तुम्हारे साथ क्या मामला है? मैं जानता हूँ कि ये सुनने में ठीक लगता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के योग्य है। परंतु तो भी यदि धीरज था, उस ढलान पर चढ़ना आरंभ हुए, एक ने दूसरे की ओर देखा, ये ठीक है, ठीक है, धीरज था। एक कदम बढ़े, परमेश्वर वहाँ नहीं था, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम बढ़ते गए, अब भी वो वहाँ नहीं है, और वो सीधा भट्टी में चला गया। उनके पास धैर्य था, परंतु वो वहाँ था, समझे? आग की बहुतायत ने उन पर प्रभाव डाला, उनके हाथ पैरों की हथकड़ियाँ और सांकले जलने लगी, और तब जब वो गड्ढे के तले में पहुँचे, वो वहाँ था। देखा, उनके पास धैर्य था। इसी प्रकार से डैनियल, निश्चय ही डैनियल के पास धैर्य था, वो छोड़ने वाला नहीं था। नहीं श्रीमान, उसने क्या किया? जो भी हो, खिड़कियाँ खोलकर प्रार्थना की, ये परमेश्वर की मांग थी। उसके पास धीरज था, वो परमेश्वर पर निर्भर करता था, ये जानते हुए कि वो अपने वचन की रक्षा करने योग्य है। उन्होंने उसे सिंहों की मांग में फेंक दिया, कहा हम तुझे सिंहों को खिला देंगे। उसने कहा ठीक है। उसके पास धीरज था, क्यों? ठीक है, मैंने इस सारे समय में परमेश्वर की प्रतीक्षा की है, यदि मुझे कुछ और हजार वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़े, मैं अंतिम दिन उठ खड़ा हूँगा। इसलिए धीरज रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। पौलुस के पास धीरज था, निश्चय ही था। देखिए पौलुस को क्या करना पड़ा। धैर्य के विषय में बातें करते हैं, पेंतिकोस्तल लोगों के विषय में क्या है? जब तक उन्हें प्राधिकार मिला तब तक प्रतीक्षा की। देखा, जब तक तुम सामर्थ्य न भर जाओ प्रतीक्षा करो। कब तक? उनके पास कोई प्रश्न नहीं था कि ये कितने समय में होगा, उन्हें उत्तर मिल गया था, तब तक प्रतीक्षा करो। जब तक वे वहाँ गए और कहा ठीक है लड़को, हो सकता है अब से 15 मिनट पश्चात पवित्र आत्मा हम पर होगा और हमें हमारी सेविकाएं मिल जाएगी। 15 मिनट बीत गए, कोई नहीं। एक दिन बीत गया, नहीं। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, उनमें से कुछ कह सकते थे, अरे क्या आप नहीं सोचते कि हमें मिल चुका है? नहीं 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 नहीं, यही है, नहीं। ये ठीक बात है, अच्छा है कि तुम लड़कों बाहर आ जाओ। शैतान ने कहा जो तुम पाना चाहते हो वो तो तुम्हें पहले ही मिल चुका, समझे? तुम आगे बढ़ो, अपनी सेवकाई आरंभ करो। नहीं नहीं नहीं, हमें अभी नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि उसने कहा वहाँ आएगा जो कि अंतिम दिनों में घटित होगा। हकलाते होंठों और अन्य भाषाओं में इन लोगों से बातें करूंगा, और ये वो विश्राम है जिसके लिए मैंने कहा है। देखिए यशाया 28:19, कहा ये वही है, तुम इसे पाओगे जब, क्यों? जब ये आएगा हम जान जाएंगे, हम जान जाएंगे जब वो आता है, हम इसे जान जाएंगे, पिता की प्रतिज्ञा। वहाँ उसने 9 दिन प्रतीक्षा की, और अब 10वें दिन हम वहाँ थे प्रतीक्षा के लिए। उनके पास धैर्य था। अब यदि आपके पास इस प्रकार का धैर्य है परमेश्वर की प्रतिज्ञा देने के पश्चात, और आप उसे बाइबल में देखते हैं ये मेरा है, तब प्रतीक्षा कीजिए। तब यदि आपके पास इस प्रकार का धीरज है तो उसे अपने विश्वास में मिलाइए, और अब देखिए कि आप कितने ऊपर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, घड़ी की सुई भी चक्कर काट रही है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, इसे अपने विश्वास में मिलाइए, याद रखिए, सदा उसे अपने सामने रखिए। ये वो था जिसने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रतिज्ञा नहीं की, पास्टर ने प्रतिज्ञा नहीं की, हमारे भाई नेविल, ये किसी सेवक ने प्रतिज्ञा नहीं की, ये किसी पुरोहित या पोप ने नहीं, पृथ्वी के किसी मनुष्य ने नहीं की, ये परमेश्वर था जिसने प्रतिज्ञा की, और परमेश्वर अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरा करने के योग्य है जो उसने की है। ठीक है, यदि आपके पास इस प्रकार का विश्वास है, ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, कहिए भाई ब्रणम मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई की बहुत ही आवश्यकता है, इसे स्वीकार करिए। यदि आप विश्वास कर सकें तो ये वरदान आपको दिया गया है। ठीक है, आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, तो फिर ये सब भूल जाइए, बस ये सब समाप्त हो गया, समझे। धैर्य रखिए, यदि आपके पास धीरज है, यदि आपके पास नहीं है तो आप इस भवन को चूर चूर करके गिरा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सब बाकी बातों को गिरा देगा, वही एक बात, वही आपके पास होना चाहिए, इसे मत मिलाएं, क्योंकि ये आपके भवन को तोड़ देगा। यदि आपके पास धीरज नहीं है, यदि आपके पास सद्गुण नहीं है कि अपने विश्वास में मिलाएं जो कि आप कहते हैं कि आपके पास है, और यदि आपके पास कोई विश्वास नहीं है और सद्गुण इस पर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये आपके विश्वास को तोड़ देगा, समझे। आप कहते हैं ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, हो सकता है ये सब गलत हो गया, जैसे भी हो सकता है परमेश्वर परमेश्वर ना हो, हो सकता है कोई परमेश्वर ना हो, देखिए ये चीजें दो टुकड़े कर देगा, समझे। परंतु यदि आपके पास वास्तविक विश्वास है तो इस पर वास्तविक सद्गुण रखें, तब वास्तविक समझ, तब वास्तविक संयम, तब वास्तविक धीरज, समझे। आप एक सीध में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पांचवा, भक्ति मिलाइए। ओह, भक्ति भाव को मिलाना है। भक्ति का क्या अर्थ है, मैंने चार या पांच शब्द कोशों में देखा, मैं इसका सही अर्थ ना पा सका। अंततः मैं भाई जेफरी के यहाँ था, वहाँ हमने एक शब्दकोश में पाया, भक्ति या धर्म परायणता का अर्थ है परमेश्वर के समान। ओ, जब आपके पास विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज हो जाए, तब परमेश्वर के समान। आप कहते हैं भाई ब्रणम मैं ये नहीं कर सकता, ओ हाँ आप कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़े से वचन पढ़ दूँ, जरा एक मिनट, मत्ती 5:48, हम इस वाले को लेंगे और देखेंगे कि यहाँ कैसा सुनने में लगता है। मत्ती 5:48, और देखिए, यदि आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, आप जानते हैं कि बाइबल कहती है तुम ईश्वर हो, यीशु ने ऐसा ही कहा है, क्यों? सारा सद्गुण और सारी चीजें जो परमेश्वर में है वो आप में है। मत्ती 5:48, तुम हो, यीशु पहाड़ी उपदेश में कह रहा है, इसलिए तुम सिद्ध बनो। ये क्या है, ऐसे ही सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। इससे कि पहले आप यहाँ ऊपर तक आए, आपको ये करना होता है, सर्वप्रथम आपको इन सारे हृदयों को रखना होता है, तब जब आप यहाँ तक आ जाते हैं, वो आपसे कहता है कि अब सिद्ध बनो, परमेश्वर के समान बने, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ बने। ये ठीक बात है, मैं इस लीक पर कितनी ही बातें कह सकता हूँ। आइए इफिसियों 4 निकालें और देखें कि इफिसियों की पुस्तक में क्या है, ये भी इस बात के विषय में कहती है हमें कैसा होना चाहिए, इस विषय में हमें कैसे करना चाहिए। इफिसियों 4:12 और 12वें पद से आरंभ करके, इफिसियों 4:12 पद से आरंभ करके, ठीक है, हम 11वें पद से आरंभ करेंगे, और कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यद्वक्ता, गत रात्रि का स्मरण है, दूसरे व्यक्ति का स्थान लेने का यत्न न करें, समझे, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले, और कितनों को शिक्षक, परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए। क्या इस प्रकार से पढ़ा जाता है, सिद्धता किसकी, संत कौन है जो पवित्र किए गए हैं, आमीन, वे जिन्होंने यहाँ नीचे से आरंभ किया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए, यीशु मसीह की सेवा, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि उन्नति करती जाए, बनती चली जाए उन्नति, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं उस आश्वासन में, ओ प्रभु, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। सिद्ध भक्ति यानी धर्म परायणता लीजिए, इसे आपको अपने विश्वास में मिलाना होगा। भक्ति, देखिए, आप यहाँ नीचे सद्गुण से आरंभ करते हैं, तब आप समझ पर आते हैं, तब आप संयम पर आते हैं, तब आप धीरज पर आते हैं, और अब आप भक्ति पर हैं। भक्ति, ओ प्रभु, हमारा समय निकल रहा है, चलिए देखें, परंतु आप जानते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। आपने ये गाना गाया है, यीशु के समान होने के लिए, यीशु के समान होने के लिए पृथ्वी पर मुझे उसके समान होने की इच्छा है, इस जीवन की यात्रा में से होते हुए पृथ्वी से महिमा में मैं केवल उसके समान होना चाहता हूँ। ये भक्ति है, जब उसके मुख की एक ओर मारा गया उसने दूसरा फेर दिया। जब उससे असभ्य भाषा में बोला गया, वो नहीं बोला, उसने पलटकर गाली नहीं दी, समझे? परमेश्वरीय सदा एक ही चीज को देखता रहा, मैं सदा वही करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है, समझे? जी हाँ श्रीमान, यही सदैव भक्ति रही है, समझे? इसके करने के पश्चात यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब आप कद तक आ रहे हैं, अब एक परमेश्वर के पुत्र के, परंतु आपके पास ये जमा होना चाहिए, ये सब। जब तक आप ये प्राप्त नहीं कर लेते, आप आरंभ भी नहीं कर सकते। अब याद रखिए, काली चिड़िया मोर के पंख के साथ, उसे मत भूलिए, समझे? जब तक आपका वास्तव में नया जन्म नहीं हो जाता, इसे मिलाने का यत्न ना करें, क्योंकि आप ये कार्य नहीं करेगा और आप इसे चला नहीं सकते। ये यहाँ तक आएगा या यहाँ, यहाँ, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। परंतु जब आप यहाँ आते हैं, एक वास्तविक नया जन्म पाई हुई पंडुकी, तब आप कुछ नहीं मिलाते, ये आप में मिलता है। देखा, ऊपर बढ़ते जाएं। ठीक बात है, अब सिद्धता में आ रहे हैं, ठीक है। तब छठवां, आइए मिलाएं। यहाँ बाइबल ने कहा भाईचारे की प्रीति बढ़ती जाए, भाईचारे की प्रीति। अब ये यहाँ अच्छा वाला है, छठवां सात, ठीक है, भाईचारे की प्रीति बढ़ाते जाएं, ठीक है। जब आप यहाँ भाईचारे की प्रीति पर आते हैं, स्वयं को उसके स्थान पर रखते हैं, उस पदार्थ पर, अब आप कहते हैं, पतरस ने कहा मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, क्या मैं उसे क्षमा कर दूं? उसने क्या दिन में सात बार, उसने कहा सात के सत्तर गुना, समझे? भाईचारे की प्रीति। अब आप देखते हैं, यदि आपका कोई भाई इसी समय पूरी तरह आपके विरुद्ध रहता है, उसके संग धैर्य न खोएं, समझे? नहीं समझे? उसके साथ कृपालु रहिए, जैसे भी हो जाइए। किसी ने कहा अधिक समय नहीं हुआ, कहा आप इन बातों को कैसे विश्वास कर सकते हैं जिस प्रकार की आप करते हैं, और तब भी असेंबली ऑफ गॉड में जाते हैं और वननेस और उन सब बाकियों में। देखिए भाईचारे की प्रीति, समझे? समझे? आशा करते हुए एक दिन देखिए, उसके संग धैर्य रखिए, सहनशीलता, उसके साथ स्थिर रहिए, बात को समझने की समझ, वो क्या विश्वास करता है स्मरण रखिए, ये उसके हृदय के भीतर है, यही वो है। अपने में से सामर्थ दयालुता सहित बाहर जाने दें, उसके प्रति नम्र रहे और आप ये विश्वास रखें कि किसी दिन परमेश्वर उसे वापस ले आएगा, समझे? भाईचारे की प्रीति, वो सातवीं चीज, एक दो तीन चार पाँच छह सात, देखिए सातवीं चीज। तब अब आप आ रहे हैं अगली चीज, तब उदारता मिलाइए जो कि प्रेम है, ये चोटी का पत्थर है। कलीसिया में इन्हीं किन दिनों में एक दिन, अब कृपया मैं ये टेप पर बता दूं, और जहां कहीं और हूं, मैं इसे धार्मिक मत के समान नहीं सिखा रहा हूं, मैं जो अब कहने जा रहा हूं, परंतु मैं परमेश्वर की सहायता से आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये वास्तव में क्या है कि पहली बाइबल परमेश्वर ने आकाश में राशियों में लिखी, ये कन्या से आरंभ होती है और ये सिंह से समाप्त होती है। और जब मैं छठवीं और सातवीं मोहर में जाता हूँ, तब आप पाएंगे, जब वो दूसरी मोहर खुली थी, उस स्थान पर नक्षत्र का चिन्ह कर्क राशि थी, एक दूसरे पर आर पार रखी मछली, और ये कर्क राशि युग है जिसमें अब हम रह रहे हैं, प्रकट हुआ। और अगली बात, मोहर टूट गई, इसने सिंह को प्रकट किया, मसीह का दूसरा आगमन, पहली बार वो कन्या में आया, अगली बार वो सिंह में आया। मैं इसको लाऊंगा, अब मैं नहीं जानता कि इस प्रातः मेरे पास समय होगा कि नहीं, मैं अपनी ओर से अच्छा करने जा रहा हूँ जितना हो सकता है, आपको ये दर्शाने के लिए कि ये सीढ़ियाँ पैरामिडों में हैं। बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने दूसरी बाइबल लिखी, हनोक ने इन्हें लिखा और इन्हें पैरामिड में रख दिया। और तीसरा, परमेश्वर सदा तीसरे में सिद्ध होता है, तब वो स्वयं अपना वचन बना। अब यहाँ पैरामिड में स्मरण रहे, मेरा अनुमान है आप में से बहुत से सिपाही और वगैरह मिस्र में थे, उस पैरामिड की चोटी पर शीर्ष नहीं है, न ही कभी था, तराशा हुआ पत्थर और हर चीज उनके पास है, परंतु फिर भी यदि आपकी जेब में एक डॉलर का नोट है, तो आप उस डॉलर को देखिए और आप ये पाएंगे कि सीधे हाथ की ओर एक उकाब अमेरिकन झंडे के साथ है, और ये लिखा है संयुक्त राज्य की मोहर, और दूसरी ओर इस पर पैरामिड है जो बड़े चोटी के पत्थर से ढका है, और एक मनुष्य की आँख, और इस ओर लिखा है महान मोहर। ठीक है, यदि ये एक महान देश है, तो क्यों नहीं ये महान मोहर इस राष्ट्र की अपनी मोहर होगी, परमेश्वर उन्हें प्रमाणित करता है, इससे कोई मतलब नहीं वे जहाँ भी जाएं। एक बार मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, और वो मुझसे दिव्य चंगाई के विषय में बेकार का विवाद कर रहा था। सड़क पर खड़े हुए उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, आप लोगों को केवल भ्रमित कर रहे हैं, बोला कोई चंगाई नहीं है, केवल दवाइयों के द्वारा है। ऐसा हुआ कि मैं घुमा और उसका चिन्ह कार पर देखा, जिसमें सांप एक खंबर पर था, मैंने कहा तो अच्छा हो कि ये चिन्ह आप कार पर से हटा लें, क्योंकि आपका चिन्ह स्वयं ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर एक चंगा करने वाला है। एक सच्चा डॉक्टर इसका विश्वास करता है, ये उनकी मिथ्या चिकित्सा है। जी हाँ श्रीमान, सांप खंभे पर, मूसा ने सांप को खंभे पर उठाया, उसने कहा मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ, और दिव्य चंगाई के लिए उन्होंने उस सांप को देखा। और जबकि वे इसके विरोध में गवाही दे रहे हैं, तब भी ये उनका अपना चिन्ह उनके विरोध में गवाही दे रहा है। यहाँ हमारा राष्ट्र बातें कर रहा है और इन बातों को हंसी मजाक बना रहा है, और उनका अपना पैसा, उनकी मुद्रा यह गवाही दे रही है कि सारी सृष्टि की मोहर परमेश्वर है। देखिए कि वो आंख वहाँ उसके ऊपर है, उस डॉलर की मुद्रा में ये महान मोहर है। ये कभी भी वहाँ पिरामिड के ऊपर नहीं रखी गई। वे नहीं समझ सके क्यों चोटी का पत्थर अस्वीकृत कर दिया गया, वो मसीह सर, परंतु वो किसी दिन आएगा। अब सद्गुण के बनने में, इस ऐतिहासिक भवन, इस कद के बनाने में, देखिए ये नेव के पत्थर से बनाना आरंभ होता है। विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, अब ये क्या करता है? तब ये चोटी के पत्थर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो नियंत्रण करता है, और वो इन चीजों में प्रत्येक का बल है। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। ठीक यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ बीच में आ गया, ये सारे कार्य यहाँ पर हैं, और यहाँ ये छोटी सी लहरें आती हैं। ये क्या है? पवित्र आत्मा मसीह के द्वारा आ रहा है। देखा, पवित्र आत्मा इस सब के ऊपर है, इसको आपस में जोड़ रहा है, बना रहा है क्या, एक सिद्ध कलीसिया, ताकि चोटी का पत्थर इसे ढांक ले। यहाँ क्या हुआ? फिर से ये सात कलीसियाई युगों द्वारा प्रकट हुआ, और सात कलीसिया के दूत यहाँ से आरंभ हुआ। पहले कलीसिया की नेव कहाँ पड़ी? पहली पेंटिकॉस्टल कलीसिया कहाँ पर स्थापित हुई? इफिसुस में संत पौलुस के द्वारा, इफिसियन कलीसिया युग का सितारा इफिसुस। दूसरा कलीसिया युग स्मरणा था, सद्गुण, वो महान पुरुष इरेनियस जो पौलुस के सुसमाचार को थामे रहा। अगला कलीसिया युग पिर्गमुन जो कि मार्टिन था, मार्टिन एक महान व्यक्ति था जो स्थिर रहा। पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, तब थुआथीरा में कोलंबा आता है, आपको स्मरण है, ये यहाँ है, बिल्कुल ठीक आ जाता है। कोलंबा के पश्चात यहाँ अंधकार का युग आता है, तब सार्दिस आता है जिसका अर्थ है मृत, लूथर। हालेलुया, फिर क्या, अगला क्या आता है? सार्दिस के पश्चात लूथर, तब फिलेडेल्फिया आता है, भक्ति, वैसली, पवित्रताई। लूथर ने कहा केवल विश्वास के द्वारा जीवित रहना, वैसली के द्वारा पवित्रीकरण, तब भाईचारे की प्रीति लोदिसिया में से होती हुई आती है, और हम एलिया के दूसरे प्रकट होने के महान संदेश में विश्वास करते हैं, जो कि अंत के दिनों में सारी पृथ्वी पर छा जाएगा। आप यहाँ हैं, सात कलीसिया युग, सात सीढ़ियाँ, परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है, जैसे कि एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत में स्वयं में महिमा परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ती हुई इसमें से होती हुई आ रही है। इसलिए पेंटिकॉस्टलों लोगों ने, जिन्होंने लूथरन को छोड़ दिया, वेसलियन और बातों को छोड़ दिया, नहीं जानते कि किस विषय में बातें कर रहे हैं। आप देखिए वे मंदिर के इस भाग में रह रहे हैं। इस प्रकार से कुछ लोग इस ऊंचाई तक आ पाते हैं और पिछड़ जाते हैं, परंतु कुछ इसके वास्तविक भाग होते हैं जो कि इस भवन को बनाते रहते हैं। यहोवा ने कहा मैं लौटा दूंगा। वो दुल्हन का वृक्ष आपको स्मरण है? दुल्हन के वृक्ष वाला उपदेश आपको स्मरण है? वे इसे खा जाते हैं, परंतु वो इसे छांटता है। उनके पास नामधारी गिरजों की शाखाएं हैं, उसने उन्हें छांट दिया है। उन्होंने एक और कलीसिया नामधारी शाखा बनाई, उसने छांट दिया, परंतु उस वृक्ष का हृदय बढ़ता रहा, और सांझ के समय में उजियाला होगा। समझे, ये जब मसीह पवित्र आत्मा आता है, तब यीशु आकर स्वयं को कलीसिया के शीर्ष पर स्थापित करता है, और वो इस कलीसिया अपनी देह होने के कारण पुनः जीवित करेगा। इसमें देह है, और परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप में बढ़ने की आशा कर रहा है, और जिस प्रकार से वो अपनी इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, प्रत्येक कलीसियाई युग एक बड़ी कलीसिया हो गई। समझे, इन लोगों को इन बातों की आवश्यकता न थी जो इनको है, इनको वो आवश्यकता न थी जो इनको है। समझे, परंतु उसने अपनी कलीसिया को एक ही प्रकार से उठाया, वो अपनी कलीसिया को उसी प्रकार से लाया जिस प्रकार से वो अपने लोगों को लाया। तब पत्रस यहाँ कहता है पहले सात चीजें विश्वास, सद्गुण, देखिए ऊपर बढ़िए, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, बढ़ाएं, और तब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा। मसीह एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में आप पर आता है, पवित्र आत्मा के उस सच्चे बपतिस्मे में, और तब ये सारे गुण आप में मोहर बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर मंदिर में रहता है। जीवित मंदिर जीवित परमेश्वर के रहने का स्थान भवन कहलाया। जब व्यक्ति इस प्रकार की चीजें अपने में रखता है तब पवित्र आत्मा उस पर आता है। इसका कोई अर्थ नहीं कि आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप किसी भी वरदान की नकल कर सकते हैं जो परमेश्वर में है, आप ये कर सकते हैं, परंतु जब तक आप में ये गुण अंदर नहीं समा जाते तो आप अब भी वास्तविकता से अलग हैं, विश्वास की सच्ची नींव। परंतु जब ये गुण अंदर बढ़ते हैं और आप इसमें ये मिलाते हैं तो आप एक जीवित ऐतिहासिक लेख हैं। आप जीवित चलती फिरती मूर्त हैं। परंतु आप जानते हैं ये मूर्ति पूजक ये स्वयं को मूर्त के सामने एक कल्पित ईश्वर के सामने झुकाते हैं और काल्पनिक रीति से वे ये विश्वास करते हैं कि काल्पनिक ईश्वर ने उनसे बात की। यही मूर्ति पूजा है, यही रोमनवाद है। वे हर प्रकार के संत के सामने दंडवत करते हैं और आदि आदि। उनके पास संत सिसिलिया, एक ग्रह देवी और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। वे उसके सामने दंडवत करते हैं और वास्तव में काल्पनिक विधि से विश्वास करते हैं। ये किसका प्रतीक है? ये जीवित सत्य परमेश्वर। परंतु हम काल्पनिक विधि से नहीं परंतु स्वयं को जीवित परमेश्वर के सम्मुख झुकाते हैं। एक जीवित गुण या शक्ति है, एक जीवित समझ, एक जीवित धीरज, एक जीवित भक्ति, एक जीवित शक्ति, एक जीवित परमेश्वर की ओर से आ रही है, जीवित मनुष्य को जीवित समानता में बना रही है परमेश्वर के कद में। वो क्या कर रहा है? वही चीजें जो यीशु ने की, उसी प्रकार से चल रहा है जैसे वो चला, वो चीजें कर रहा है जो उसने की, क्योंकि ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये सत्यता है जो सिद्ध करती है। देखा मेरा क्या अर्थ है? देखिए किस प्रकार से ये विशेषताएं, ये निर्माण के पदार्थ जो कि कलीसियाई दूतों के नमूनों के साथ कलीसियाई युग के साथ हैं, अब इन्हीं किन्हीं दिनों में हम इसमें प्रत्येक वचन को लेने जा रहे हैं और उनका अध्ययन करके और दर्शा करके कि ये सिद्ध करता है, ये सब एक साथ मिलकर चलता है। बिल्कुल ठीक बात है, समझे? ओ, ये देखने में कितना अद्भुत लगता है, ये क्या करता है? अब ये वो घर है जिसमें परमेश्वर निवास करता है, बड़ी इमारत नहीं जिसकी चोटी पर बड़ा घंटा होता है और एक ऊंची मीनार होती है, समझे? परंतु मेरे लिए तूने एक देह तैयार की, एक देह जिसमें परमेश्वर निवास कर सके, जिसमें परमेश्वर चल सके, जिसमें से परमेश्वर देख सके, जिसमें से परमेश्वर बात कर सके, जिसमें से परमेश्वर कार्य कर सके। आमीन। जीवित कारणत्व, एक परमेश्वर, परमेश्वर आप में दो पैरों से चले, महिमा हो। धर्मी के कदम परमेश्वर की आज्ञा से उठते हैं। परमेश्वर आप में चल रहा है क्योंकि तुम लिखित पत्रियां हो जो सब मनुष्यों द्वारा पढ़े जाते हों, और यदि जो जीवन मसीह है आप में हो आप उसी जीवन को जियोगे जो मसीह ने जिया। जैसा कि मैंने सदा कहा है, आड़ू के वृक्ष का जीवन रस लेकर यदि आप उसे सेब के पेड़ में रुधिर आदान कर सकें, सेब का पेड़ आड़ू लगाएगा, बिल्कुल निश्चय ही वो उगाएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि शाखाएं कैसी दिखती हैं, उसके अंदर सेब वृक्ष का जीवन रस है या वो जो भी वृक्ष है, समझे? सेब के वृक्ष में से इसका जीवन निकाल लें, सारा निकाल लें और उस जीवन रस का आधान विधि द्वारा स्थानांतरण कर दें और आड़ू के वृक्ष से निकालकर सेब के वृक्ष में डाल दें, तो क्या घटित होगा? तो ये और आड़ू नहीं उगाएगा, समझे? नहीं श्रीमान, नहीं फलेगा। यदि आड़ू के वृक्ष का जीवन सेब में चला जाए, बल्कि ये और सेब नहीं उगाएगा, ये आड़ू ही फलाएगा। देखा, देखा, क्योंकि इसमें जीवन है। जब आपने हमें लिया तो हम कुछ नहीं थे, वरन केवल एक कड़वा फल थे, एक बुद्धिहीन थे। देखिए, हमसे कोई मतलब न था क्योंकि हम सब पाप में और अपराधों में मरे हुए थे, हम सब इसी प्रकार की दशा में थे, और तब हम स्वयं अपने में दंडवत कर सकते थे, स्वयं को ही दे देते थे, जब तक कि परमेश्वर अपनी रुधिर आधान की नली नहीं डाल देता। यीशु मसीह का नाम, क्योंकि स्वर के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जो मनुष्यों को बचा सकता था, और मसीह का जीवन हमें स्थानांतर कर दिया, तब हमारे पास इस प्रकार का विश्वास है, वो विश्वास जो मसीह के पास था। और मसीह का विश्वास उन फरीसियों सदूकियों पर आधारित नहीं था, या उनके बर्तनों केतरियों और तवों में उनके मांजने धोने में, वो परमेश्वर के वचन पर आधारित था। आमीन। जब तक कि मसीह वचन नहीं हो गया, वचन देहधारी हुआ, और तब जब हम उसकी सामर्थ के द्वारा संचारित हो सकते थे कि हम अपने विचारों में मर जाते और हमारा विश्वास वास्तविक विश्वास बन जाता, हालेलुया, तब मसीह का जीवन हम में संचारित होता, हम परमेश्वर की जीवित सृष्टि हो जाते हैं, एक निवास स्थान जहां पवित्र आत्मा अपनी शानदार आशीषें भेज सकता है, और हम मसीह के कद तक हो जाते हैं। यीशु ने कहा, क्या ये नहीं लिखा तुम मुझ पर ये कहने के लिए दोष लगाते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्या ये नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? क्या तुम्हारी अपनी व्यवस्था ये नहीं कहती? मूसा के समान, एलिया के समान, उन भविष्यवक्ताओं के समान जो परमेश्वर के बहुत समीप रहे, जब तक कि परमेश्वर ने स्वयं को उनमें स्थानांतर नहीं कर लिया, और उन्होंने स्वयं से नहीं बोला, परंतु परमेश्वर बोला, ये ना सोचो कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि वो तुम नहीं हो जो बोलते हो, ये पिता है जो तुम में वास करता है, वो बोलने का कार्य करता है, उसका वचन अपना नहीं है, क्योंकि उसका जीवन वो मृत है। यदि आप किसी मृत मनुष्य में से लहू निकाल लेते हैं, आप उसे रासायनिक पदार्थों की सहायता से परिरक्षित कर लेते हैं। इसकी परेशानी ये है कि उनमें से बहुत से अनेक लोग परिरक्षित नहीं हुए। आप मनुष्य में से लहू निकाल लें तो वो मृत हो गया। तब केवल एक ही चीज है जो आप करते हैं कि दूसरा लहू उसमें डालते हैं, वो फिर से जीवित रहेगा। आप लहू बाहर निकाल लें, और अब हम यीशु मसीह का लहू उसमें डालते हैं। देखिए, ये यीशु मसीह का विश्वास लाता है, यीशु मसीह की सामर्थ को लेकर आता है, सद्गुण को, यीशु मसीह की समझ लाता है, यीशु मसीह का संयम लाता है, यीशु मसीह का धीरज लाता है, यीशु मसीह की भक्ति लेकर आता है, यीशु मसीह की भाईचारे की प्रीति लेकर आता है, और परमेश्वर का प्रेम जो कि यीशु मसीह है लेकर आता है। वो सर है जो आपका नियंत्रण रखता है, और आपके पांव नेव हैं, विश्वास, आमीन, सिर के द्वारा नियंत्रित लीजिए। आप इसी अवस्था में हैं। ये परमेश्वर का सिद्ध मनुष्य है, जब वो इन सद्गुणों को अपने में रखता है, तब परमेश्वर अपनी कलीसिया को दुल्हन की तरह दर्शाता है। एक स्त्री, परमेश्वर अपनी कलीसिया को दुल्हन की तरह दर्शाता है, और जिस प्रकार से वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र होने के कारण जो उस दुल्हन में जाने के लिए उठाता है, वो इस दुल्हन को भी इन युगों में से होते हुए निकाल कर लाया है, जब तक कि वो पूर्णतः इस कलीसिया को इसमें ना ले आए। मेरे पैर चलते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा सिर ऐसा कहता है। अब ये मेरे हाथ के समान नहीं चल सकता, क्योंकि ये मेरा पैर है। लूथर उन चीजों को नहीं कर सकता जो हमने किए हैं, ना ही मेथोडिस्ट कर सकता है, क्योंकि वे कुछ और चीज थे, समझे? पैर चलता है क्योंकि सिर ऐसा कहता है, और सिर कभी नहीं कहता, पैर अब तुम हाथ बन जाओ, कान तुम आंख बन जाओ, समझे? परंतु प्रत्येक काल में परमेश्वर ने ये चीजें अपनी कलीसिया में रखी, और दर्शा करके इसको आदर्श बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये विशेषताएं होनी है, और ये प्राणी जो कि परमेश्वर की कलीसिया है, जब पूर्ण हो जाती है तो ये स्वर्ग में उठा ली जाएगी, और ये प्राणी पूरा होने के पश्चात परमेश्वर का दास परमेश्वर की कलीसिया में है, जो कि स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है। महिमा हो। देखा मेरा क्या अर्थ है? आप इसी स्थान पर हैं, ये पूरी चीज है। ये एक मनुष्य आता है, पौलुस जो नेव रखता है, इरेनियस इसे इसमें उंडेलता है, अगला इसे उंडेलता है, अगला इसे उंडेलता है, अगला वाला इसे और इसे और इसे, और इस प्रकार बढ़ते हुए जब तक कि ये अंतिम युग आता है। परंतु ये क्या है? ये वही एक आत्मा, वही आत्मा जो मुझ में है कहता है, हाथों उस मामले के लिए बढ़ो। वही आत्मा कहता है, पैर कदम बढ़ाओ। समझे मेरा क्या अर्थ है? तब आपके जीव का संपूर्ण कद इन बातों के द्वारा निर्धारित और नियंत्रित है, परंतु ये तब तक पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता जब तक ये इन विशेषताओं को धारण नहीं करता। क्या आपने कभी ये सुना है? अब मैं आपको बता दूं, और इसे सत्य जानिए, सुनने वाले कानों से ध्यान दें, समझे? एक जंजीर अपने कमजोर वाले जोड़ में सबसे अधिक मजबूत होती है। ये ठीक बात है, कमजोर वाले स्थान पर से ही सबसे अधिक मजबूत होती है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितने मजबूत बने हैं, ये बना है। यदि इसका जोड़ कमजोर है जहाँ से ये टूटती है, और ये अपने कमजोर जोड़ से अधिक कहीं और से मजबूत नहीं होती। अब यदि आपने ये है, आप कहते हैं ये आप में नहीं है, यहीं से ये टूटती है। यदि आप में ये है और ये नहीं है तो ये यहीं से टूट जाएगी। ये और ये नहीं है, ये टूट जाएगी। ये और ये नहीं है, ये टूट जाएगी। ये और ये नहीं है, ये टूट जाएगी। समझे? आप इसके बिना इसको नहीं रख सकते। जब आप स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तब पवित्र आत्मा आप में होते हुए आपको इन गुणों में उंडेलता है। तब आप एक जीवित मंदिर हैं। लोग देखकर ये कहते हैं कि ये मनुष्य है जो सद्गुण समझ से भरा हुआ है, ये वचन का विश्वास करता है। संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, पवित्र आत्मा के प्रेम से भरा हुआ। देखिए वो जो यहाँ चलता फिरता है, ये क्या है? एक अविश्वासी जो इस कद को देख सकता है और कहता है ये एक मसीही है। ये वे पुरुष या महिलाएं हैं जो जानते हैं कि वे क्या बात कर रहे हैं। तुमने कभी भी ऐसा दयालु, सभ्य, भक्ति वाला मनुष्य नहीं देखा। आप मोहर बंद हो गए हैं। एक मोहर दोनों ओर दर्शाती है, चाहे आप जा रहे हो या आ रहे हो, आप मोहर को वैसे ही देखते हैं। आप इसी स्थान पर हैं, समझे? जब एक पुरुष या महिला इसे अपने में धारण किए होती है, तब चोटी का पत्थर नीचे आता है और उन्हें परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद कर देता है, जो कि पवित्र आत्मा है। तब वचन यहाँ से होते हुए स्वयं को प्रत्येक इस जीवित प्राणियों में से होते हुए प्रकट करता है, समझे? और तब ये संपूर्ण जीव जीवते परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है और एक चलता फिरता जीवित मसीहत का उदाहरण। जो मसीह था वे ये लोग हैं, क्योंकि उसका जीवन ये इनमें है। ये मसीह में है और इनका जीवन मरा हुआ है और परमेश्वर के द्वारा मसीह में छिपा है और उनमें पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद है। 1 कुरिन्थियों 12। ये ठीक बात है, समझे? तुम स्वयं को मृत समझो, तब आप विश्वास से जन्मे हो और आपके गुण और ये दूसरी चीजें आप में मिलाई गई हैं, जब तक कि आप सिद्ध न हो। परमेश्वर की एक समानता, ये शानदार है ना? और तब परमेश्वर इसमें से होते हुए 7 कलीसियाई युगों को निकाल कर लाया, इन 7 सीढ़ियों को दर्शाते हुए, जो कि वो अपने स्वयं को उसकी समानता में बनाता रहा। उसने एक पूर्ण कलीसिया अपनी समानता में बनाई और पुनरुत्थान में ये संपूर्ण देह सदा उसके साथ रहने के लिए जीवित हो उठी, क्योंकि ये एक दुल्हन है, समझे? इसलिए ये प्रत्येक युग में जो आया उसे छाड़ता चला गया। स्मरण रहे, अभी वहाँ और आवश्यकता है। स्मरण रहे, पौलुस ने इब्रानियों 11 में क्या कहा? इससे पहले कि हम यहाँ बंद करें, मैं पढ़ दूँ, जरा एक मिनट, और तब आपको एक प्रकार से अजीब सा अनुभव होगा। जब मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं इब्रानियों 11 निकाल रहा हूँ और मैं 32वें पद से आरंभ करूँगा। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का और समसून का और यफ्ता का और दाऊद और शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बर्च निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। यहाँ पर समझे, ठीक है, और बहुत सो पर मुकदमा ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गई, तलवारों से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे। संसार उनके योग्य न था। अपनी बाइबल में ध्यान दें, कोष्ठों के बीच में दिया गया है, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। यहाँ अच्छी गवाही दी गई तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, समझे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे, समझे आप? ये लोग जो यहाँ मर गए हमारे लिए ठहरे और प्रतीक्षा करते रहे, इसलिए ताकि ये परमेश्वर की कलीसिया अपनी सिद्धता तक आ जाए, ताकि पुनरुत्थान आए, और ये प्राण वेदी के नीचे इस कलीसिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सिद्ध हों, ताकि जब मसीह आता है। आप देखिए, ये कलीसिया बहुत थोड़ी छोटे से झुंड में आ रही है, ये सारा झुंड इस वाले से तेज है, परंतु जैसे कि यहाँ क्रूस पर लिखा है, देखा, ये बिल्कुल समाप्ति पर आता है। जब तक कि कलीसिया, वो छोटा झुंड, उस स्थान तक नहीं आ जाता जब तक कि उसी प्रकार की सेवकाई जो कि बाकी बची है, क्योंकि जब ये चोटी का पत्थर वापस आता है, इसमें एक छोटा सा स्थान यहाँ है जहाँ पर वो ठीक बैठ जाएगा, उस व्यवस्थित पिरामिड पर। इस पर चोटी का ढक्कन नहीं है जो कि इसके शीर्ष पर बैठे, ये एक छोटा सा गोटा है और इसे वहीं पर बैठना है, क्योंकि ये पानी बहाता है, और जब ये आता है तो इस कलीसिया पर सान चढ़ाना है। ये सारे बाकी पत्थर पैरामिड में इतनी सिद्धता से लगे हुए हैं कि आप इनके बीच में कोई ब्लेड या पत्थर नहीं घुसा सकते। तनों भारी वहाँ रखे हैं, उन्हें इन्हें यहाँ कैसे पहुँचाया वे नहीं जानते, परंतु वे बनाए गए थे। और यहाँ पर जब पैरामिड की चोटी का पत्थर आता है तो पैरामिड स्वयं मसीह की देह को सान चढ़ाएगा, न कि केवल धार्मिक मत या शिक्षा या किसी और चीज को जिसमें से हम निकल कर आए हैं। इसे तो मसीह के समान सिद्ध होना होगा। तब तक जब तक वो आता है, वो और वो सेवकाई बिल्कुल आपस में ठीक एक दूसरे में सही बैठेगी, समझे, तब स्वर्ग पर उठा लिया जाना होगा या रैप्चर होगा। घर जा रहे हैं, देखिए हम इस लुदीसिया में कहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर कलीसिया युग किसी भी कलीसिया युग से जो थी बेकार है। बाइबल में हम पाते हैं कि केवल यही एक कलीसिया थी जिसमें परमेश्वर कलीसिया से बाहर था, खटखटा रहा है, अपने ही भवन में वापस आने का यत्न कर रहा है। धार्मिक मतों और नामधारियों ने उसे उसके अपने ही कलीसिया से बाहर कर दिया था। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मनुष्य प्यासा हो और अपना द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, समझे। ये यहाँ इस कलीसियाई युग में है, उन्होंने उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। जब तक कि वो पूरी तरह से बाहर ना निकल गया, वे इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। अब आज आप देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि लुदीकिया कलीसियाई काल का अंत हो रहा है। इतने औपचारिक हो गए हैं कि यहाँ तक कि ये और कैथोलिक जो यहाँ पर ये अलग अलग हो गए थे, एक साथ मिल रहे हैं और एक महान कलीसिया के समान मिल रहे हैं, कलीसियाओं के संघ के साथ। ये वही कैथोलिकवाद है। यहाँ पर केवल एक ही भिन्नता है, यदि वे इस पर भी आ जाएं, प्रभु भोज के लेने के मामले में। कैथोलिकवाद और प्रोटेस्टेंटवाद में उनका डायस केवल यही उन्हें रोकता है कि वे मिल जाएं, वो है प्रभु भोज की व्यवस्था। कैथोलिक कलीसिया कहती है कि ये देह है, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहती है कि ये देह को दर्शाना है। कैथोलिक इसकी आराधना करते हैं कि वे प्रभु भोज लेते हैं इस आशा से कि उनकी क्षमा हो चुकी है, ये आराधना है। प्रोटेस्टेंट इसे विश्वास के साथ लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु भोज में वे क्षमा कर दिए गए हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं हमारी क्षमा हो चुकी है। कैथोलिक कहते हैं हम आशा करते हैं कि हमारी क्षमा हो चुकी है। मास और धार्मिक समागम कम्युनियन, वे इसे मास कहते हैं, हम इसे कम्युनियन यानी प्रभु भोज। मास ऐसी आशा करते हैं, कम्युनियन यानी धार्मिक समागम जानते हैं कि ये ऐसा है और इसके लिए उसका धन्यवाद, समझे। और केवल यही बात है जिस पर वे एक साथ नहीं आ सकते हैं, वे इसे कर लेंगे। ओ ये कितना दयनीय दिखाई पड़ता है, ये चलाने के लिए मिल जाएंगे, ये सब चला लेंगे, ठीक है। बाइबल ने कहा है और इन पशुओं ने अपनी सामर्थ वैश्य को दे दी, देखिए अपने को एक साथ मिलाए रखने के लिए, समझे, बिल्कुल ठीक जैसे कि बाइबल ने कहा कि वे ये करेंगे और अब वे इसे कर रहे हैं। इसी सप्ताह में ये प्रगति पर है। ऐसा नहीं है कि मैं कैथोलिक लोगों के विरुद्ध नहीं हूँ, जैसे कि प्रोटेस्टेंट के लोग हैं। आप मेथोडिस्ट हो और बैप्टिस्ट हो और आप में बहुत से पेंतेकोस्ट लोग, जब तुम्हारी कलीसियाएं इस कलीसिया के संघ में चली जाएंगी, जब वे उस बड़े मुर्दा घर में जो न्यूयॉर्क में बना है उन कलीसियाओं का संघ उसमें हो जाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राष्ट्र संघ और आदि आदि चीजें हैं। वे सारे प्रोटेस्टेंट वाद को एक जगह मिलाने का यत्न कर रहे हैं। अब कैथोलिक इसमें बुद्धिमान हैं और इस 23वें पोप जॉन को या 22वें को लाने का यत्न कर रहे हैं, वो जो भी हैं, वो बड़ी नम्रता के द्वारा सारे प्रोटेस्टेंट विश्वास को कैथोलिक विश्वास के साथ एक विश्वास में लाने का यत्न कर रहा है। बिल्कुल वही जो बाइबल ने कहा है कि वे ये करेंगे। आप वहीं पर हैं और प्रोटेस्टेंट इसके लिए झुक रहे हैं, कांटा डोर और डूबने वाला है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनमें ये चीजें नहीं है, समझ कि वचन ही ठीक है, धैर्य, वे जो प्रभु पर आशा रखते हैं, समझे मेरा क्या अर्थ है। जैसा कि मेथोडिस्ट बिशप ने उस दिन कहा जब उन्होंने ये पारित किया कि कोई जानता है कि ये कैसे प्रेरित है, किसी निश्चित प्रार्थना को लेने का यत्न कर रहे थे जो कि कलीसिया या विद्यालय में बुलवाई जाए, और चाहा कि मैं सोचता हूँ कि वो प्रेस्बिटेरियन की प्रार्थना पुस्तक थी या कुछ और, और अभिभावकों ने विद्यालय पर मुकदमा कर दिया क्योंकि वे इस प्रार्थना को विद्यालय में बुलवाने के लिए स्वीकृति नहीं देंगे। और ये मेथोडिस्ट का बिशप बूढ़ा समझदार व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ और बोला ये गलत है, कहा ये असंवैधानिक है। उसने उस हवा को पहचान लिया, उसने कहा जैसे कि हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया में, हमारी मेथोडिस्ट कलीसिया में का हमारे बहुत सारे लोग हमेशा इस हॉलीवुड कांड के विषय में बातें करते हैं, उनमें से 95% उसे देखने गए, क्या मामला है, उन्होंने इसे छोड़ दिया, ये ठीक बात है, उन्होंने इसे हटा दिया। उस दिन मैं इस कमरे में बात कर रहा था फॉल्स शहर में एक बड़े मेथोडिस्ट गिरजे के शासकीय अधिकारी से, फॉल्स नगर की एक बड़ी आत्मिक कलीसियाओं में से एक, दर्शाया मेथोडिस्ट युग जो हमारे युग से अगले में आता है वो पेंतेकोस्टल, और उसने कहा संत लुईस मसूरी में उन्होंने 3 या 4 माह पहले विश्लेषण किया और पाया हो सकता है वो व्यक्ति इस प्रातः यहाँ बैठा हो। ठीक है, वो जो ये भवन बना रहा है इसका ठेकेदार है, हमारे लिए भवन तय किया है मेन स्ट्रीट मेथोडिस्ट जहाँ का वो है, जहाँ के भाई लूम और वे पास्टर हैं। इसलिए तब हम पाते हैं कि ये इसी में है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये मेथोडिस्ट लोगों का 70% था। एक विश्लेषण में संत लुईस के सर्वेक्षण में दर्शाया गया कि मेथोडिस्टों का 70% सिगरेट पीते हैं और उनमें से 68% मादक पे पी रहे हैं मेथोडिस्ट। और आश्चर्यजनक बात ये थी जब इसका विश्लेषण पुरुषों और स्त्रियों के बीच में दिया गया, लगभग 50% पुरुषों के 70% ये स्त्रियां थीं। पुरुषों से अधिक स्त्रियां धूम्रपान और मदपान करती हैं, पुरुषों से 70% अधिक स्त्रियां। अब क्या हो यदि बाइबल की शिक्षा को लें, छोटे छोटे कपड़े पहनना, बाल कटवाना और इस प्रकार की चीजें। देखिए भक्ति कहा है स्त्रियां भक्ति और पवित्रता का धार्मिक दिखावा करती हैं। ताश के झुंड, हर बात गप मारने वाले, बात बनाने वाले, जो कि अपनी जुबान को वश रखने के योग्य नहीं है, अपनी जुबान से बातें कर रही हैं और गप मार रही हैं। और इधर उधर की लोग कैसे हैं, ताश के झुंड, गोल्फ खेल, वहाँ आधे आधे कपड़े पहने, छोटे और दिखने में गंदे कपड़े, उनके साथ स्त्रियाँ पीछे पीछे हैं। कोई आश्चर्य नहीं उस गंदी योजना को जो प्रचारक पर की गई, कैदी प्रचारक आज की प्रातः है। जी हाँ श्रीमान, मैं विश्वास नहीं करता कि वो व्यक्ति इसका दोषी है। इसने क्या किया ये भाई, मैं उसका याद नहीं कर सक रहा हूँ। हाँ, डॉन गिल्बर्ट, कैदी प्रचारक, जो वो व्यक्ति अंदर भाग कर गया और डॉन की हत्या कर दी यहाँ कुछ महीनों पीछे, और अब उसकी पत्नी को बालक होने वाला है। ठीक है, डॉन मर गया, अब वे उसका उस बालक में रुद्र आघात नहीं कर सकते। वो कहती है कि डॉन ने उसका बलात्कार किया और ये उसका बालक है। कैसा, मैं इसका विश्वास नहीं करता, जैसे कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कौए के कबूतर के पंख आ गए। नहीं श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ कि ये झूठ है। मैं विश्वास करता हूँ कि डॉन गिल्बर्ट परमेश्वर का जन था, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये शैतान की योजना है। इस प्रकार उनकी प्रार्थनाओं पर ये बात थोपने का प्रयत्न किया जा रहा है। वो मेथोडिस्ट का बूढ़ा बिशप इस बात को समझने के लिए काफी तेज है। यदि वो इस सब में से गुजरा होता तो वो केवल किसी और चीज के द्वारा प्रेरित हुआ होता। ये ठीक बात है, जैसे कि ये अलगाववाद की समस्या जो दक्षिण में है वही चीज है। मैं विश्वास करता हूँ मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ ये राष्ट्र स्वतंत्रता का पक्षधर है। मैं श्री कनेडी पर सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ नीचे भेजने के लिए दोष नहीं लगा रहा हूँ। यद्यपि मैं कोई नया व्यापारी नहीं हूँ, और मैं लोकतंत्रवादी नहीं हूँ, मैं गणतंत्रवादी नहीं हूँ, मैं एक मसीही हूँ। इसलिए मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैं ये विश्वास नहीं करता कि काले लोगों को अपना जन्म अधिकार बेचना चाहिए, यानी इस प्रकार की चीजें। ये गणतंत्रवादी दल था, अब्राहम लिंकन के लहू ने उन लोगों को स्वतंत्र किया क्योंकि वो भक्त मनुष्य था। मैं सोचता हूँ कम से कम उन्हें अपने दल के साथ बने रहना चाहिए यदि वे मत डालने जा रहे हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने स्कूल के कारण वो लड़का वहाँ नहीं था। वो लड़का एक नागरिक है, वो एक अमेरिकन है। ये स्वतंत्रता सबके लिए है, मनुष्य के रंग से उसकी विशिष्टता नहीं बदलनी चाहिए। हम सब परमेश्वर के एक मनुष्य से सारे लहू सारे राष्ट्र बने हैं, हम सब एक हैं। परंतु वो लड़का एक फौजी सिपाही था, वो अनुभवी है, वो उसके लिए लड़ा जो सत्य है। उसके पास भी विद्यालय जाने का अधिकार था, ये ठीक बात है, जाने के लिए उसके पास बहुत सारे विद्यालय थे। यही बात है, यदि आप इसके पीछे जाएं, यही आज के दिन का नामधारी मामलों का प्रतिनिधित्व है। ये इसको उत्साहित करता है, क्यों? वे उन काले लोगों के मतों को रिपब्लिकन से डेमोक्रेट की ओर खींच रहे हैं, और वे इसके द्वारा अपने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास ज्ञान हो, वास्तव में जैसे कि ये कलीसिया है, ये वर्तमान काल स्वयं को बेच रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि क्या घटित होने जा रहा है? यदि ये टेप हो गया हो तो मैं इसकी चिंता नहीं करता, ये यहाँ आ रहा है। ओह जी हाँ, क्या बात है। मेरी अपनी माँ कहा करती थी, शैतान को उसका कर्ज दे दो। केवल एक ही मनुष्य है जिसने केवल एक समझदारी का कार्य किया था, वो वहाँ कैसरो था। जी हाँ श्रीमान, वो वहाँ गया और पूंजीपतियों के पास सारे भंडार थे और सब चीजें। ये सोने के मानदंड पर है जैसा कि संयुक्त राज्य में है। वो क्या करेगा, उसने वे सारे अनुबंध पत्र खरीद लिए, किसी भी प्रकार से मुद्रा प्राप्त की। तब उसने क्या किया, उसने मुद्रा की बारीकी से नकल करके उसे बदल दिया, उन्हें वही वापस ले आया। ये राष्ट्र केवल यही कर सकता था। क्या आपने उस प्रातः लाइफ लाइन में सुना? क्यों आप जानते हैं, जैसे कि आप सोने पर अपने अनुबंध पत्र बेचे, अनुबंध पत्र पहले ही लिए जा चुके हैं, और ये वर्तमान सरकार अब किस आधार पर पैसा व्यय कर रही है, उस कर के पैसे पर जो अब से 40 वर्ष बाद इकट्ठा किया जाएगा। उसने ऐसा किया है। ये वॉशिंगटन डीसी के लाइफलाइन द्वारा प्रसारित हुआ संपूर्ण राष्ट्र में। वे कर के पैसे जो ये व्यय कर रहे हैं और विदेश को खरीदने का यत्न कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी है, वे इसे बाहर कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे? बिल्कुल यही वास्तव में यही करने जा रहे हैं। समझे, ये क्या है? अब यदि ये राष्ट्र विफल हो जाता है, केवल एक चीज है जो ये कर सकते हैं कि विफल हो, केवल एक चीज है जो ये कर सकते हैं कि दिवालिया हो जाएं। केवल यही समझदारी है कि अपनी मुद्रा बदल दें, परंतु वे इसे नहीं करेंगे। अपने इस वर्तमान शासन में रोमन कैथोलिक के पास संसार का सारा सोना है, और वे क्या करेंगे, इसे बेच दें। ये धनी और वगैरह वगैरह इस पृथ्वी के, जैसे कि बाइबल ने कहा, से पहले कि वे हानि उठाएं, वे क्या करेंगे? ब्राउन एंड विलियम्स तंबाकू कंपनी जो भी है, इसमें अधिकतर कैथोलिक हैं, और वे सारी बातें वे क्या करेंगे, वे इसे स्वीकार करेंगे और वे रोम से धन लेंगे और तब वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच देंगे। रोम उसकी सहायता करेगा, जी हाँ श्रीमान, वो इसे समर्थन देंगी और उनके पास अब काफी नीति है, उनके आसपास काफी है। देखिए श्री कैनेडी क्या कर रहे हैं, अपने कैबिनेट में ला रहे हैं। उस दिन जब आपने ये देख लिया तो फिर मत डालने की आवश्यकता नहीं है। मत डालने का क्या लाभ होगा, जबकि उन्होंने ये अखबार में देकर जनता के सामने सिद्ध कर दिया है और उन्होंने इस विषय में कुछ भी करने से इनकार कर दिया है। जब उन्होंने ये सिद्ध किया कि मशीनें बाहर विदेश में लगा दी गई हैं, कि उन्होंने श्री कैनेडी को झूठे मतों से चुना है, क्या बाइबल ने नहीं कहा कि वो धोखे के द्वारा अंदर आएगा? निश्चय ही एक झूठी स्थिति। अब मैं डेमोक्रेट दल के विरुद्ध नहीं, जैसे कि रिपब्लिकन दल के भी नहीं हूँ, परंतु मैं तो बाइबल के सत्य की व्याख्या कर रहा हूँ। मत देने का क्या लाभ होगा, वे जानते हैं कि कौन उसमें जा रहा है। आप में से कितनों को ये प्रसारण याद है, दो महिला खड़ी थी और एक ने कहा, मैं श्री कैनेडी को मत दूंगी। उन्होंने कहा क्यों? बोली, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो श्री निक्सन से अधिक तेज तरार है, वो अच्छा राष्ट्रपति बनेगा। तब उसने कहा, ये कैथोलिक महिला थी, आप किसे अपना मत देंगी? उसने कहा, मैं कैथोलिक हूँ, रोमन कैथोलिक, एक ईमानदार कैथोलिक। कहा कि मैं श्री निक्सन को वोट दूंगी। क्यों? कहा, क्योंकि मैं सोचती हूँ श्री निक्सन अच्छे राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि वो अधिक चीजों से अवगत हैं, वो कम्युनिस्टवाद से अधिक परिचित हैं। उस महिला ने झूठ बोला, मेरे पास वो है। वे क्या कहते हैं, हमारे विश्वास की सच्चाई, द फैक्ट ऑफ आवर फेथ, कैथोलिक की सबसे ऊंची पुस्तक खरीदी जा सकती है, और उसमें ये कहा है, यदि कैथोलिक के पास चुनावी टिकट है और वो प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध खड़ा है, यदि एक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मत देगा तो वे उसे कैथोलिक कलीसिया की संगति से निकाल देते हैं, ठीक है। यदि दो कैथोलिक एक ही कार्यस्थल के लिए मुकाबले पर हों, तो वे उस कैथोलिक को लेंगे जो अपनी मूल कलीसिया के लिए अधिक निष्ठावान है और उसे मत देंगे। देखिए ये कैसा धोखा देते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, खरीदने के लिए पैसे दे दो। क्यों? वे इसे तोड़ने का यत्न कर रहे हैं, और वे कर रहे हैं, और ये टूट गई है, और ये क्या है, ये सोने के स्तर पर है, और कैथोलिक कलीसिया इस पदानाक्रम ने संसार का सोना ले लिया है, 168 खरब। अब आप समझे, उसे स्वर्ण स्तर पर वापस पहुंचा दिया, और आप लोग केवल अपने घर और चीजें रखें, परंतु आप कैथोलिक कलीसिया से संबंधित हैं, ये राष्ट्र कैथोलिक कलीसिया से संबंधित है, सारे मामले को अपनी मुद्रा के द्वारा अपनी अधीनता में ले लिया है। क्या बाइबल इसके लिए नहीं बताती? यही वो चित्र है जो बाइबल हमारे लिए चित्रित करती है। भाई, मैं आज क्या कहने का यत्न कर रहा हूँ, वे कहेंगे ये एक अच्छी कलीसिया बना देगा, ये प्रोटेस्टेंट वाद को मिला देगा, शारीरिक आंखों को ये अच्छा दिखाई पड़ता है, परंतु इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है, और परमेश्वर को ये भाया कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा उनको जो खोए हुए हैं बचा ले। वो दिव्य कार्यस्थल जिसे उसने अपनी कलीसिया में अभिषिक्त किया है कि कलीसिया का इन आत्मिक गुणों पर निर्माण करे, और ऐसी किसी वस्तु पर नहीं जो इस पृथ्वी से संबंधित हो। पतरस ने कहा, और क्योंकि तुम संसार की सड़ाहट से बच निकले हो, धन की लालसा से होते हुए, और महान समय और आराम की लालसा से, और खाने और पीने की चाह से जो हमारे पास है, तुम उससे बच निकले हो, और अब तुम एक रहने के स्थान में बदल गए हो। उसने कहा, मैं कलीसिया को संबोधित कर रहा हूँ। अब आप समझे, क्या आपने ये पढ़ा, क्या आप समझे? जब हमने यहाँ पढ़ा था तो क्या आपने सुना था, दूसरे पत्रस में? जरा सुनिए कि वो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कितना सुंदर है जो यहाँ लिखा हुआ है, उसने इसे कैसे संबोधित किया है। ठीक है, अब उसे सुनिए जैसे कि वो बोलता है। ठीक है, पत्रस, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दिया है। कौन इस पृथ्वी और सब वस्तुओं का अधिकार होने जा रहा है? निश्चय ही भागी, ठीक है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़हाट से छूटकर, इसे सुनिए, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। धन की लालसा, बड़ी चीजों की लालसा, लोकप्रिय होने की लालसा, एक विश्वासी के लिए ये मृत वस्तुएं हैं। हम चिंता नहीं करते एक तंबू या झोपड़ी, मैं क्यों चिंता करूं? जीवित रहूं या मरूं, घटूं या डूबूं, यही एक चीज है जिसमें की मेरी रुचि है, परमेश्वर का राज्य। चाहे मैं अपने घर का भरण पोषण करूं, चाहे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, चाहे मैं जो भी हो उसका भरण पोषण करूं, परंतु मैं मसीह का समर्थन करूंगा, महिमा की आशा। ओ प्रभु, मुझे इसमें बनाए रखें। मसीह ही मेरा सिर है, जो कि मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, मेरी नेव पर, मेरे विश्वास पर, जो कि उस पर है। ओ प्रभु, मुझ में सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति को कार्य करने दे, ये मेरी प्रार्थना है। मैं चिंता नहीं करता जीऊं या मरूं, घटूं या डूबूं, नामधारी बिना नामधारी, मित्र या बिना मित्र के, उसे मुझमें कार्य करने दें। मसीह का सद्गुण, उसकी समझ बाहर की ओर प्रकट हो, ताकि मैं इन्हें सिखाने के योग्य हो सकूं, क्योंकि मसीह ने अपनी कलीसिया में है प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले, ये सब सिद्ध करने के लिए और सारे सद्गुणों को इसमें भरने के लिए है, क्योंकि ये सिद्धता परमेश्वर के पुत्र के आने के लिए है। इसमें का प्रत्येक पत्थर उसी का एक पदार्थ है, ये पदार्थ इसी का है, ये सारे के सारे गुण उसी से संबंधित हैं, और ये उनके द्वारा उसी में से उंडेले जा रहे हैं। आमीन। 12 बजे, ये सब कहाँ चले गए? आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? बाल को सुनो, आज प्रातः बहन कैडी ने कहा, भाई बिल, मैं नहीं जानती कि मैं आपको फिर से देख पाऊं या नहीं, ये मेरे लिए मरने के समान हो गया, समझे? वो सोचती हैं कि वो बूढ़ी हो रही हैं, और वो हैं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें और भाई किड को लंबा समय दें। मैं आपको बता दूं कि हम नहीं जानते कि कितने समय तक हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक आपके साथ हूँ। परमेश्वर मुझे संसार से बुला सकता है, वो मुझे दूसरी सेवा के क्षेत्र में बुला सकता है, वो आपको कहीं बुला सकता है, हम नहीं जानते, परंतु हम प्राप्त करें, हम इसे निकल ना जाने दें, हम इसे लें। ये यहाँ बाइबल में है, ये यहाँ नमूना और सब चीजें हैं, और यदि मेरे पास ये कहने को समय होता, आप इसे एक दिन में नहीं कर सकते, आप जानते हैं, परंतु सारी बातों को एक साथ बांध सकते हैं। देखिए, जब हमने वहाँ उस संदेश का अध्ययन किया, आपने देखा कि पवित्र आत्मा ने वहाँ दीवार पर क्या किया था, क्या आप नहीं जानते? तब आप में से वहाँ कितने लोग थे, समझे? निश्चय नीचे आकर उस चीज का प्रभु के दूत ने रेखा चित्र बनाया। देखिए, ये सत्य है, ये आपको छोड़ेगा नहीं। बालको, इसे पकड़े रहो, इसे पकड़े रहो, स्मरण रहे, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, धीरज बनाते जाओ। अब यहाँ मैं सोचता हूँ, मेरे पास कागज का टुकड़ा था, यदि मैंने इसे यहाँ प्रचार करते हुए कहीं गिरा दिया हो, ये यही है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसे देखना चाहें तो, और देखिए, यदि यहाँ कोई चीज हो सकी ताकि आप देख सकें, हो सकता है कि ये उससे जो वहाँ है अच्छा नमूना हो, ताकि आप उसकी नकल कर पाएं। मैं इसे बस यहाँ टांग दूंगा और आप इसे देख सकेंगे और इसे उतार लें। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे लेकर इसका अध्ययन करें और तुलना करें और तब इसका पालन करें। केवल इसका अध्ययन और तुलना न करें, परंतु जब आप करते हैं तो इसका अनुकरण करें। इसे अपने लिए निष्कपटता से लें। ये न कहें कि ठीक है, मैंने इसे सुनने में आनंद प्राप्त किया, मैंने भी प्राप्त किया, परंतु इसे सुनना और तब इसे ग्रहण करना, इसमें भिन्नता है, समझे? देखा, ये भिन्न है, समझे? परमेश्वर के कदमे बनने के लिए 7 योग्यताएं हैं, 7 कलीसियाई काल हैं, जो कि परमेश्वर की कलीसिया को इस योग्यता में लाया है, और इसे करने के लिए उसके पास 7 दूत थे। यहाँ सात 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 हैं। समझे, सात परमेश्वर का पूरक अंक है और तीन परमेश्वर का सिद्ध अंक है, इसलिए यहाँ तीन और तीन के साथ हैं। इतना गणितीय आत्मिक वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा, ये सारी चीजें मिलकर पूर्ण करती हैं। हम इसका अध्ययन करें, हम अपने विश्वास में ये चीजें मिलाएं, तब ताकि हम मसीह के कद तक आ सकें। आपस में एक दूसरे से भक्ति प्रेम और परमेश्वर के भय के द्वारा जुड़े हुए होने के कारण, एक दूसरे के लिए अपने हृदय में आदर भक्ति और गहन सम्मान, बहन और भाईचारा, अशिष्टता से कभी नहीं, कुछ नहीं, केवल पवित्र आत्मा की पवित्रताई का रहन सहन। समझे, एक दूसरे के साथ मसीही बनकर रहें, विश्वास के साथ चलें, परमेश्वर के सद्गुण अपने द्वारा प्रकट होने दें, और परमेश्वर की समझ, जब सही और गलत आता है, जब शैतान कुछ ऐसा प्रस्तुत करे जो कि बिल्कुल भी आत्मिक ना हो, उससे अलग रहें। ये ठीक बात है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उन प्रेरितों ने भी कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया। वे चारों ओर गए, हो सकता है जब तक वे प्रचार मंच पर आए वे थोड़ा बोलने वाले मनुष्य थे, वे अंदर आए और उन्होंने वो किया जो उन्हें करना था और चले गए। जी हाँ श्रीमान, उनके पास सामर्थ्य, उनके पास सद्गुण था, उनके पास मनुष्यों से वाद विवाद ना था। वे जानते थे कि वो कहाँ खड़े हैं, बस वे ये जानते थे कि वे उन्होंने किस पर विश्वास किया है। वे केवल आत्मा में बढ़ते रहे, केवल करते रहे, जैसा कि मैंने उस रात्रि में कहा, छोटा सा सिर का संकेत, परमेश्वर को केवल इतना ही करना था, फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने प्रश्न नहीं किया और अध्ययन नहीं किया और हाँ हूँ और परेशानी जैसे हम करते हैं, चाहे उन्हें ये या वो करना हो, वे आगे बढ़े और जैसे भी हो कर दिया। परमेश्वर की ओर से जरा सा संकेत और वो इसे कर देता जितनी जल्दी। क्यों? वे ये कैसे जान सकते थे कि ये संकेत परमेश्वर की ओर से है? और उनके पास ये सारे गुण थे, ये सारी योग्यताएं, और परमेश्वर का पहला संकेत इसके हर बिंदु के साथ तुलनात्मक था और उसके वचन के साथ। वे जान गए कि ये परमेश्वर का वचन था और वे आगे बढ़ गए। उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी। जब परमेश्वर बोला वे चले गए। हम बोलते हैं परमेश्वर हमसे बोलता है और हम कहेंगे ठीक है, हम आरंभ करेंगे, हम देखेंगे यदि हम ये जीवन जी सकते हैं। पहली बात आप जानते हैं, किसी ने आपको परेशान कर दिया, ठीक है, निश्चय ही ये शैतान है, आपको उसे देख लेना चाहिए। मुझे आज की प्रातः सभा से अलग करने का प्रयत्न कर रहा है, आपके साथ ये एक बार होना चाहिए। ओ अनुग्रह, मुझे हर बार लड़ना होगा। मैंने सभा की चर्चा की है, और यदि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और कोई मर रहा है और बचा हुआ नहीं है, 10 मिनट में 30 टेलीफोन की बुलाहटें होंगी यदि वे इतनी तेजी से करें कि मुझे अलग रखें। ओ भाई ब्रनम, आपको ये करना ही चाहिए, परंतु वहाँ एक प्राण सूली पर है। निश्चय ही उस रात्रि उसने मुझे एक स्थान पर बुलाया गया, एक नवी युवक। मैंने उससे वहाँ, आप उसे क्या कहते हैं, सुपर बाजार पर, कुछ वर्षों पहले की बात है, वो एक शराबी हो गया था। मैं लड़के को जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का, परंतु वो पापी था। और ऐसे ही उसकी माता ने कहा, मैं सोचता हूँ कि उसने एक दो बार डॉक्टर को बुलाया, पुकारा, और उन्होंने बिली करके बुलाया, और अंततः मुझे संदेश मिला, और भली ईमानदारी से मुझे संदेश मिला। मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष कभी नहीं हुआ कि उस लड़के को ले लूं। और जब मैं वहाँ पहुँचा, वो बेचारा मुझे भूल गया था, वो वहाँ अवचेतन अवस्था में पड़ा था और केवल चिल्लाता जा रहा था। उसका पिता उसे थपथपाने का यत्न कर रहा था और कह रहा था प्रिय, और वो व्यक्ति लगभग 50-51 वर्ष की आयु का था, और कह रहा था प्रिय ये, और शांत लेट जाओ, और वो उठने का यत्न कर रहा था, और उसका छोटा बूढ़ा हाथ उस बड़े के चारों ओर था। उस लड़के को इतना कैंसर था कि वो स्वयं कैंसर को छोड़ और कुछ ना था, उसके शरीर के सारे अंगों में कैंसर था, यहाँ तक कि उसका लहू प्रवाह भी कैंसर था, हर चीज। और वो वहाँ उठने का प्रयत्न कर रहा था और इस प्रकार से चल रहा था। मैंने उसको हाथ पर से पकड़ा, मैंने कहा वुडरो वुडरो, मैं भाई ब्रनम हूँ। उसके पिता ने कहा, क्या तुम नहीं जानते ये भाई बिल है, वुडरो ये भाई बिल है? और उसने कहा हाँ 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 हाँ, इस तरह से। और उसके पिता ने देखा और कहा, बिल तुम थोड़ी देर से आए हो। मैंने कहा बहुत अधिक देर से नहीं, ये यहाँ है, मैं संघर्ष में था। और तब वे दूसरे लड़के, कुछ और लड़के पापी वहाँ खड़े थे, उसके कुछ रिश्तेदार। मैंने कहा लड़को तुम देखते हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम भी इसी हालत में आ जाओगे, तुम्हें भी इसी हालत में आना है। समझे, हो सकता है कैंसर नहीं, तुम किसी और दशा में आ सकते हो, वहाँ राजमार्ग पर लहू से लथपथ मृत्यु में, या ऐसे ही कुछ, तुम्हें भी यही आना है। हमने उनसे बातें की, मैं आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या करने के लिए कहेगा, प्रतीक्षा में था। पहली बात आप जानते हैं, मैंने हल्का सा संकेत अनुभव किया कि अपना हाथ उस पर रखो। मैं आसपास टहला और बोला तुम सब अपने सिर झुका लो। उन सब ने अपने सिर झुकाए। दो या तीन नवयुवक वहाँ थे और मैंने अपना हाथ उस पर रखा। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, इस लड़के को ये जानने के लिए विवेक दे कि ये क्या करने जा रहा है, इससे पहले कि इसे इन बातों को भुगतना पड़े। वो मर रहा है, इस शैतान ने इसे घायल कर दिया है और ये जा रहा है और इसने मरने तक पी है और यहाँ तक इस दशा में है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पर अनुग्रहकारी हूँ। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो अगली प्रातः वह बैठा हुआ अपने पिता से बात कर रहा था। बस्टी रोजर, जब उन्होंने मुझे यहाँ अस्पताल में बहुत समय नहीं हुआ बुलाया, उस दिन मैं बाहर था मिलटाउन में जहाँ मैंने प्रचार किया था, उसके पश्चात जहाँ जॉर्जी कार्टर चंगा हुआ था, आप सबको याद है। और वहाँ जब भाई स्मिथ, एक मेथोडिस्ट प्रचारक, ने कहा था, यदि किसी ने कभी भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया तो हमारे यहाँ से चला जाए। और इसी तरह से वहाँ टॉटनफोर्ड अपनी सभाएं कर रहा था। ओ, मुझे आप हर चीज के लिए दोषी ठहराएं जो आप सोच सकते हैं। मैंने कभी भी एक शब्द नहीं कहा, जाने दिया। मेरे पास एक प्राधिकार था। प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, वहाँ एक मेमना कहीं जंगल में फंसा हुआ था। आप सबको दर्शन याद है, क्या आपको याद है? निश्चय ही, ठीक है। तब मैं वहाँ जंगल में उसे ढूंढने जा रहा था। मैं टॉटनफोर्ड के यहाँ गया, भाई राइट जानते हैं, हम गए। क्या करना है नहीं जानते थे। मैं 10 सेंट की एक साबुनदानी खरीद कर लाया। मैं वहाँ बाहर जा रहा था और एक सीढ़ी के पांवदान पर खड़े होकर प्रचार कर रहा था। उसने कहा वो वहाँ पहाड़ की चोटी पर जा रहा था कि कोई व्यापार करे। मैं उसके संग गया। वहाँ एक बड़ा बैप्टिस्ट गिरजा खाली पड़ा था। प्रभु ने मुझसे कहा वहाँ रुको। मैंने कहा भाई राइट, मुझे यहीं रहने दो। मैं रुक गया। वो ऊपर गए, वापस आ गए। मैं वहाँ गया और द्वार ना खुल सका। मैंने कहा प्रभु, यदि आप इसमें हैं, आप चाहते हैं कि इस आराधनालय में जाऊं तो मेरे लिए द्वार खोल दीजिए। मैं वहाँ बैठ गया और सोच रहा था। सुनाई पड़ा कि कोई चलता हुआ ऊपर आ रहा है और उसने कहा आप कैसे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। बोला तुम अंदर आराधनालय में जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा मेरे पास यहाँ चाबी है। सभा आरंभ की, पहले सप्ताह में लगभग कुछ नहीं। पहली रात जो मेरे पास सभा थी वो भाई राइट्स और उनका परिवार। सप्ताह के अंत में आप जानते हैं वे मैदान में कठिनाई से खड़े हो पाए। अब तक वो मेमना नहीं आया था। भाई हॉल उस समय वहाँ बचाए गए जो अब वहाँ पास्टर हैं। वे सारे के सारे, मैं नहीं ढूंढ सका कि वो मेमना कहाँ था। उस समय पश्चात वहाँ चर्च ऑफ क्राइस्ट जो पहाड़ के नीचे की ओर था, वो छोटी 9 वर्षीय लड़की 8 महीनों से हिल ना सकी थी, वहाँ पड़ी हुई थी। वो यही थी, आप सारी कथा जानते हैं। जी हाँ श्रीमान। उस दोपहर पश्चात जब बस्टी रोजर, एक बड़ा अनुभवी, वहाँ खड़ा हुआ था, मैं वहाँ गया और वहाँ भाई स्मिथ की सभा मुझ पर हंसने और मेरा उपहास उड़ाने हेतु खड़ी थी, यीशु के नाम में बपतिस्मा देने का कारण। मैं टॉटनफोर्ड के गदले पानी में गया जहाँ उनके पास वहाँ किनारे पर जितनी जोर से चिल्ला सकते थे चिल्ला रहे थे। 2 डीकन मेरे साथ थे। मैंने कहा इस दोपहर बाद मैं वहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ खड़ा था। मैंने कहा मैंने यहाँ बाइबल में से पढ़ा जहाँ पत्रस ने कहा अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मैं घूमा और मैंने पुस्तक एक डीकन को दे दी। वहाँ गया और मैंने कहा जो कोई भी अपने पापों से पछताए यहाँ आए। वहाँ पानी में उतर गया। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि स्वर्गदूत हर शाख पर बैठे हुए हैं, ताक रहे हैं। ओ प्रभु, उस समय मैंने उसकी सारी सभा में से 2 या 3 को बपतिस्मा दिया। वे स्त्रियां वहां अच्छे रेशमी वेशभूषा में पानी में आईं और अपनी पूरी आवाज से चिल्लाईं। मैंने उसकी सारी सभा को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। आप जानते हैं कि मेरे पास उसका चित्र है। यही था। ये क्या था? अपने सद्गुण पर बढ़ाते जाओ, समझे? रहने दो, परमेश्वर जानता है इसे कैसे करना है। परमेश्वर जानता है कि इन बातों को कैसे पूरा करना है। इन्हें कहने दीजिए जो वो कहना चाहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस बढ़ते जाइए। बस्टी रोजर वहाँ खड़े हुए हैं। जब उसने ये देखा उसने कहा तो मैं इसका पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। और वो पानी में उतर आया अपने अच्छे कपड़े पहने हुए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। लगभग 3 या 4 वर्ष पहले उन्होंने मुझे यहाँ न्यू एल्बनी अस्पताल में बुलाया था। वो वहाँ कैंसर से मर रहा था, बस उसे खा लिया था। डॉक्टरों ने अगली प्रातः तक जीवित रहने के लिए उसे छोड़ दिया था। कहा अब वो मर रहा है। उसने कहा एकदम आ जाओ। मैं वहाँ कमरे में गया। जब मैं वहाँ प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ उसने कहा बिली, वहाँ सामने कोने में मेघधनुष गोलाई में दिखाई पड़ रहा है। मैं देखने के लिए मुड़ा। मैंने कहा बस्टी, ये एक वाचा है, तुम नहीं मरोगे, लहू की वाचा तुम्हें बचाती है। मैंने अपने हाथ उस पर रखा और कहा प्रभु परमेश्वर, सामने ये दर्शन सिद्ध करता है कि आप यहाँ पर हैं। आपकी वाचा ये है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके ऊपर अपने हाथ रखे और वो चंगा हो गया, उसे घर भेज दिया। और लगभग चार वर्ष हुए वहाँ नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था और हर चीज चल रही थी। और जहाँ कैंसर गले में खाने की नली के चारों ओर था और उसे कठोर बना दिया था, वहाँ एक मोटी गांठ थी। वो डॉक्टर, चिकित्सालय के अनुभवी, उसे बताया कि उन्होंने कोबाल्ट की दवा दी है, वो उसे फैला सकता है ताकि अधिक भोजन एक समय में जा सके। खाना खाना उसके लिए कठिन था, उसे धीरे धीरे खाना पड़ता था। वो इसे वहाँ करवाने के लिए गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो वहाँ है। और जब उन्होंने उसकी शल्य चिकित्सा की तो पाया उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही हैं और उसे एक आघात पहुंचा और उसके एक तरफ इस प्रकार से लकवा मार गया और वो केवल एक कार्य कर सकता था कि वो आधा चिल्ला सकता था और उसके पास इस प्रकार से पेंसिल थी और ओ ओ और अपने अच्छे वाले हाथ से इस तरह से हिलाते हुए लिखने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी बाई ओर आघात हुआ था और अपने हाथ को हिलाते हुए यीशु बचाता है 1900 और कुछ वे नहीं समझ सके। इसलिए अब उसकी पत्नी ने कहा, भाई ब्रणम मैं नहीं जानती इससे इनका क्या अर्थ है। मैंने कहा, श्रीमती रोजर्स इनका अर्थ है ये 1900 और कुछ में बचाए गए और तब यीशु नाम में बपतिस्मा लिया था, यही है वो चुका रहा है, वो मरने से नहीं डरता। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर उसका जीवन बचा ले, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि उसका जीवन बचा ले। उसके ऊपर हाथ रख के आघात उसे छोड़कर चला गया, मांसपेशियों का ऐंठना थम गया। और वो बिस्तर में बैठ गया और अब वो खड़ा हो गया, गवाही दे रहा है। अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाते जाएं, अपने सद्गुण पर समझ, अपनी समझ पर संयम, अपने संयम पर धीरज, अपने धीरज पर भक्ति, अपनी भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, अपने भाईचारे की प्रीति पवित्र आत्मा और मसीह आएगा, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा कलीसिया में इन गुणों को प्रकट करता है। ओ प्रभु, अब 12:15 हो गए हैं। मैं ये कैसे हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। मैं अपने पूर्ण हृदय से इस प्रातः उससे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसकी सहायता और उसके अनुग्रह के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उसे रोज बिना रुके खोजूंगा जब तक कि मैं प्रत्येक इन मांगों का अनुभव ना कर लूं कि ये मेरे इस छोटे से कद से बह रही है, जब तक मैं जीवित मसीह को ना प्रकट करूं, क्योंकि वो मुझ जैसे के लिए पाप बना ताकि मैं उसकी भांति परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। उसने मेरा स्थान ले लिया, अब मुझे उसका स्थान लेने दें, क्योंकि इसी उद्देश्य से वो मरा। कितने परमेश्वर के अनुग्रह से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। अब अपने सिर झुकाए हुए और अपने हाथ उठाए हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रभु ये कलीसिया ये प्रतिज्ञा करती है, यीशु मसीह का पूरा कद।